आइए हम प्रार्थना के लिए कुछ क्षण के लिए खड़े रहेंगे। प्रिय परमेश्वर, हम आज रात सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए जो हमारा उद्धार करता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हम आपको उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो इसका विश्वास करते हैं। हम बहुत ही आनंदित हैं कि हमारे पास एक परमेश्वर है, न ही बस एक काल्पनिक परमेश्वर है, एक काल्पनिक मूर्ति, एक काल्पनिक आत्मा। इसके बारे में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। एक सच्चा और जीवित परमेश्वर जो हमारे साथ और हम में रहता है और हमारे द्वारा कार्य करता है। न ही परमेश्वर की एक मूरत बना रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के जीवित स्वरूप हैं। पवित्र आत्मा एक मूर्ति के जरिए से नहीं बोल रहा है, लेकिन एक छुड़ाए हुए बर्तन के जरिए से बोल रहा है। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। हम आपको इसके लिए कैसे धन्यवाद दें? वो महान अग्नि का स्तंभ हमारे पीछे पीछे आता है, मेरा मतलब हम इसके पीछे पीछे जाते हैं और उसी आत्मा के सारे महान प्रकटीकरणों के लिए धन्यवाद देते हैं। उसी काम को कर रहा है जो उसने हमेशा किया है जब वो धरती पर आया। यह हमें क्या ही दिलासा देता है। हम आज रात्रि एकत्र हुए हैं प्रभु, किसी और उद्देश्य के लिए नहीं, केवल यह जानने के लिए कि कैसे और किस तरह से सीखें आपकी सहायता के द्वारा कि बेहतर मसीही बने और इस घड़ी के लिए जो नजदीक आ रही है आपके बेहतर योग्य लोग बने। क्या आप हमारी सहायता नहीं करेंगे प्रभु? हमें आपकी आवश्यकता है। यीशु के नाम में आमीन। आप बैठ सकते हैं। लगभग 30 या 40 प्रश्नों के साथ मैं नहीं जानता कि मैं उन्हें कभी किस तरह से लूं। मैंने इस दोपहर को बहुत कोशिश की यह देखने के लिए कि क्या मैं उन्हें यहाँ तक साधारण कर सकूं, लेकिन मैं इसे नहीं कर सका। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे अच्छा प्रयास करूंगा जो मैं कर सकता हूं, क्योंकि वे अच्छे प्रश्न हैं जो मसीही लोगों के हृदय से आ रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से वह सब कुछ करना चाहता हूं जो मैं जानता हूं कि उन्हें कैसे उत्तर देना है, बस समझदारी से, जैसे कि मैं जानता हूं कि उनका कैसे उत्तर देना है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि किस तरह से उसने आज सुबह सहायता की इन प्रश्नों को समझने के लिए, हमारी सहायता करने में और उन उत्तरों के लिए जो उसने हमें दिए। अब मैंने अभी उन सभी को यहाँ मिला दिया है। मैं समझता हूँ 150 और भी हैं, और मैं समझता हूँ हमारे पास आज सुबह लगभग 20 हैं। और इसलिए अब इससे पहले कि हम आरंभ करें, मैं बस यह कहना चाहूँगा कि यदि कोई इस लेख को देखना चाहता है, एक कलीसिया नाचती झूमती है जब ड्रम बजता है। प्रेस्बिटेरियन सेवक यहाँ रॉक एंड रोल नाचने झूमने में अपनी सभा के लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। धार्मिक उत्सव के लिए एक कार्यक्रम करते हैं। मुझे बस एक मिनट के लिए देखने दें। युवा सदस्य जैज संगीत पर झूमते हैं। शौकिया खेल क्रूज पर चढ़ाए जाने के बारे में बताता है। आधुनिक प्रांतीय भाषा IDIOM रॉक एंड रोल में वो पास्टर यहाँ पर सारे किशोरों की अगुवाई कर रहा है और मसीह के जोश में से होते हुए जा रहा है। क्रूज पर चढ़ाया जाना रॉक एंड रोल और जैज संगीत में बजाया जाता है। अच्छा, यह मैरीलैंड में है। अब क्या यह ऐसा ही कुछ नहीं है? और फिर यहाँ पर तस्वीर है उनकी। मैं आपको आज सुबह उन बीटल्स के बारे में बता रहा था, बीटल्स की वापसी, और वहाँ पर लेख है। आपको अब इसे पत्रिका में से पढ़ना चाहिए और सारी भिन्न भिन्न चीजों को, जैसे कि ये थे एक नए धर्म की स्थापना की थी। अब उनके प्रबंधक, मेरे पास यहाँ अखबार में एक टिप्पणी है। आपके पास समय नहीं है, यदि कोई इन्हें पढ़ना चाहता है या तो मैं उन्हें सूचना बोर्ड पर डाल सकता हूँ, तब आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और मैं आपको केवल यह दिखाना चाहता हूँ कि हम जिस घड़ी में रह रहे हैं वह अचंभित करने वाली है। आप हो सकता है इसे नहीं समझें, लेकिन लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें क्या हैं। मैंने भाई कैप्स से पूछा है, उनके पास अच्छी शिक्षा है और वह मुझसे बेहतर पढ़ सकते हैं। मैंने उन्हें बीटल्स के प्रबंधक से इस लेख को पढ़ने के लिए कहा है। क्या आप इसे कर सकते हैं भाई कैप्स? इस समय बीटल्स अपने ही बारे में सोचते हैं और कोई उत्तर नहीं निकालते हैं। यह अविश्वसनीय है, पूरी तरह से अविश्वसनीय है। बीटल्स के प्रेस अधिकारी डेरेक टेलर कहते हैं, यहाँ पर ये चार लड़के हैं जो लिवरपूल से हैं। वे असभ्य हैं, वे भ्रष्ट हैं, वे अश्लील हैं, और उन्होंने संसार को अपने हाथ में ले लिया है। यह ऐसा है जैसे कि उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की हो। वे पूरी तरह से मसीह विरोधी हैं। मेरा मतलब है मैं भी मसीह विरोधी हूं, लेकिन वे इतनी मसीह विरोधी हैं कि उन्होंने मुझे अचंभित कर दिया है, जो कि एक आसान काम नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ आशक्त हूं। क्या हर एक जन नहीं है? मैं उनकी ईमानदारी के प्रति आशक्त हूं। और वे लोग जो उन्हें सबसे अधिक पसंद करते हैं, ये वे लोग हैं जिन्हें सबसे अधिक नाराजगी होना चाहिए। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में जब कभी भी हम किसी हवाई अड्डे पर पहुंचते, तो ये ऐसा था जैसे कि वहाँ डी गॉल उतरा हो, या इससे भी बेहतर मसीहा। मार्ग लंबी पंक्ति में लगे हुए थे, अपाहिज उनके बैसाखियों को फेंक देते, बीमार लोग कार की ओर दौड़ पड़ते, जैसे कि यदि लड़कों में से किसी एक लड़के का स्पर्श कर लेगा, उन्हें फिर से चंगा कर देगा। बूढ़ी स्त्रियां अपने पोते पोतियों के साथ खड़ी हुई देख रही थी, और जब हम वहां से होकर गुजरते, मैं उनके चेहरों की ओर देख सकता था। यह ऐसा था जैसे कोई उद्धारकर्ता आ गया हो, और ये सारे लोग आनंदित थे और राहत को महसूस कर रहे थे, जैसे कि चीजें अब किसी तरह से बेहतर होने जा रही हों। टेलर रुक गया और अपने मुंह में एक सिगरेट को रखा। बीटल्स के लिए केवल एक ही चीज बाकी है, उसने कहा, एक चंगाई के दौरे पर जाना है। क्या ऐसा नहीं है जो उसने कहा? उस दिन बहुत से मेरे पास आकर और कहेंगे, प्रभु क्या मैंने नहीं समझे? अब क्या आप नहीं देख सकते हैं कि आप चंगाई के अभियानों में अपने भरोसे को नहीं रख सकते हैं? आप अपने भरोसे को इस प्रकार के किसी भी चिन्ह पर नहीं रख सकते। केवल एक चीज जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, वो है यहोवा यो कहता है, जो बाइबल में से है। अब कलीसिया ठीक यही है जहाँ मैंने आपको रखने की कोशिश की है, मेरे बच्चों। और यदि मुझे कुछ भी होता है और परमेश्वर मुझे इस धरती पर से उठा लेता है, आप कभी भी चूकना मत। इसे अपने पूरे हृदय से याद रखना, उस वचन के साथ बने रहो। आप उस वचन को ना छोड़ें। कुछ भी इसके विपरीत में है, इसे छोड़ दें। कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या है, तब आप जान जाते हैं कि यह सही है। देखा, अब एक चंगाई का अभियान, पाप से भरा मनुष्य जिसने यहाँ तक कि अपने खुद के प्रबंधकों को भी उनकी अश्लीलता और गंदगी और नीचता से झकझोर दिया, और लोगों ने अपनी बैसाखियों को फेंक दिया, और इन लड़कों को देखकर चंगे हो गए। यह बहुत ही गंदा और बुरा और मसीह विरोधी है। आप देखते हैं, यह शैतान एक मजाक उड़ाने के अभियान पर है। देखा, वह कुछ भी करता है जो मसीह कर सकता है, लेकिन वो वचन की पुष्टि नहीं कर सकता है। समझे, वह यहाँ से इसमें से कुछ भाग को लेगा, और यहाँ इसके भाग को लेगा, लेकिन वो इसका सारा का सारा नहीं ले सकता है। देखा, वह इसका सारा का सारा नहीं ले सकता है। इसलिए आप देखते हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि बाइबल ने कहा कि यह लगभग चुने हुए को मूर्ख बना देगा, यदि यह संभव होता था, मसीह विरोधी आत्मा। अब यहाँ तक कि यहाँ उनके अपने प्रेस के प्रबंधक, प्रेस के एजेंट, वह उन्हीं के लोग हैं, उन पर विश्वास करते हैं, और कहा कि वो उसी चीज से ग्रस्त हैं, क्योंकि उन्होंने उसे जीत लिया है। वे दुष्ट चीजें, वे। अब क्या आप नहीं देखते, महिलाओं, मैं आपको इस छोटे छोटे कपड़े के बारे में क्यों बताने की कोशिश करता हूँ? बाल काटना, छोटे छोटे बाल रखना और इत्यादि, यह एक आत्मा है, यह एक आत्मा है। यहाँ पर यह ठीक हमारी प्रमुख पत्रिकाओं में है, और कलीसिया में हर एक चीज जो दिखाई जाती है, रॉक एंड रोल और बेकार की चीजें, क्यों? यह बिल्कुल शैतान के लिए एक ढांचा है, और वे अब भी कलीसिया और संप्रदाय हैं। वापस वचन की ओर मुड़े बच्चों, जितनी तेजी से आप जानते हैं, और आप इसे छोड़ने का साहस न करें, आप ठीक उस वचन के साथ बने रहें। देखो कैसे वह मसीह विरोधी आत्मा यह अन्य जुबान में बोल सकता है, चिन्ह और अद्भुत कार्यों को दिखा सकता है, यह बीमारों को चंगा कर सकता है, यह इन सारी चीजों को कर सकता है। देखा, वे लोग सोच रहे हैं कि वे परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, कि वे लड़के परमेश्वर के भेजे हुए हैं, क्योंकि कलीसिया ने वचन को छोड़ दिया है। वे लड़के कलीसिया से संबंध रखते हैं। एल्विस प्रेसली एक पेंटिकॉस्टल है, पैट बून चर्च ऑफ क्राइस्ट से है। उन लोगों को देखो, पेंटिकॉस्टल, चर्च ऑफ क्राइस्ट, और वे सारे जो इस प्रकार के हैं, उनके साथ उन पर दुष्ट आत्माएं हैं। रेड पॉली, जिनकी एक बहुत अच्छी आवाज है, चर्च ऑफ क्राइस्ट से हैं, धार्मिक गीतों को गाते हैं जैसे कोई भी उन्हें नहीं गा सकता है, और दूसरी आवाज में रॉक एंड रोल गाते हैं। उनके फलों के द्वारा आप उन्हें जानते हैं। देखो वे किस कलीसियाओं से संबंध रखते हैं। एल्विस प्रेसली असेंबली ऑफ गॉड का सदस्य है, आप वहाँ पर हैं। उनमें से हर एक जन यही तो चाहता था, और शैतान उन्हें यह दे देता है। क्या आप नहीं देखते मित्रों कैसे उस वचन को ना छोड़ें? देखो ये एक आत्मा है जो आप पर आती है, और मैं इन महिलाओं को बताता हूँ, जब वे अपने आप को इन वस्त्रों में कामुक दिखने वाली बनाती हैं, कि परमेश्वर आपको वह विचार करने के लिए उत्तर देने को लगाएगा। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, जो आप लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, एक भविष्यवक्ता हूँ, तो सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ। समझे, हो सकता है कि आप इसे समझने में सक्षम ना हो, और यदि आप नहीं समझ सकते हैं तो आप बस वही करें जो मैं आपको करने के लिए बताता हूँ। परमेश्वर उसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराएगा जो मैं कहता हूँ। देखा, आप ध्यान से सुने और याद रखें कि वे चीजें आत्मा है। आमतौर पर हो सकता है वो व्यक्ति, आपको याद होगा मैंने प्रचार किया था, परमेश्वर खाल से ढका हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ। देखा देखा, परमेश्वर जो खाल को ओढ़े हुए है। अब बस याद रखें, हम में से कुछ लोगों को इन चीजों को बताने के लिए, इन क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। देखा, यह पूर्व ज्ञान है, यह परमेश्वर बोल रहा है, दिखा रहा है। जब आप किसी भी चीज का न्याय शरीर के द्वारा करते हैं, क्यों वे निर्दोष होते हैं? यहाँ देखें, भले लोग ईमानदार आपसे एक भी झूठ नहीं बोलेंगे और ना ही कुछ भी करेंगे, और सारी चीजें शैतानी हैं। धार्मिक यहाँ तक कि चंगाई का अभियान भी आरंभ करते हैं। देखा, बिल्कुल ठीक, मसीह विरोधी। देखा, और वहाँ प्रेस्बिटेरियन और वो सारे हैं। क्या आप उन संप्रदाय को देखते हैं, वे किस तरह से करते हैं? ठीक उसी चीज में है। क्यों यहाँ लंदन इंग्लैंड में अभी हाल ही में उनके पास मसीह का नाटक करने के लिए एक रॉक एंड रोल की टीम थी, और यहूदा और वो सब, और उन्होंने मसीह को ओ डैडी कहा, और उन सारे शब्दों को बोलते जो वे पागल बच्चे बोलते हैं। देखा, किशोर अवस्था के बच्चों ने संसार पर अधिकार कर लिया है। अब आप जानते हैं कि बाइबल भविष्यवाणी करती है कि अकृतज्ञ, अपवित्र, बिना स्वाभाविक लगाव के, सत्य को तोड़ने वाले, झूठे, दोष लगाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। देखा, किशोर अवस्था के बच्चे संसार पर अधिकार कर रहे हैं, और इसने ऐसा किया है। मैं एक दिन एक स्थान पर गया, वे इन पुराने गंदे रिकॉर्ड की संगीत सुनने वाली मशीन में से एक गीत को बजा रहे थे। वो सारी बेहुदा चीजें, मैं यहाँ तक अपने परिवार को भी नहीं लेकर जाना चाहता था। मैंने उस महिला से कहा, उन रिकॉर्ड का कितना दाम है? एक रिकॉर्ड का 10 सेंट। एक घंटे में ये कितने गीत को बजाएगी? उसने मुझे बताया। मैंने कहा, ये लो पैसा, इसे बंद कर दो। खैर, उसने कहा, मैं यह नहीं कर सकती, वे बच्चे यहाँ इसे चलाने के लिए आते हैं। तब मैं वहाँ कोई पैसा खर्च नहीं कर सकता था, मैं कहीं और चला गया। देखा, तो ये बेहुदा चीजें आपको परेशान कर देती है। आपको वहाँ जाकर और पागलपन की बातों को सुनने के बाद दिमाग को शांत करने के लिए औषधि को लेना होगा। यह बस एक मसीही को परेशान कर देता है। यदि आप इस प्रकार की बेहुदा चीजों को पसंद करते हैं, तो आप जानते हैं कि आपके साथ क्या गलत है। आपको बचाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आप में है वो वचन को छोड़ किसी और चीज को खा रहा है। ये खा रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि यीशु कुछ ऐसा काम कर रहा है। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्यवक्ताओं में से एक ऐसे काम को कर रहा है? क्या आप नहीं देखते मित्रों, सारी चीजें पूरी तरह से शैतान है, और बाइबल ने कहा कि वह किस तरह से धर्म के रूप में आएगा और बिल्कुल ठीक मसीह की तरह ही काम को करेगा। देखा, लेकिन एकमात्र तरीका है जिससे आप कभी इसे बता सकते हैं, जो इस कलीसिया के साथ जुड़ना नहीं है या उस कलीसिया से जुड़ना, यह तो वचन के साथ बने रहना होता है, वो वचन है। अब प्रभु आप में से प्रत्येक को आशीष दे। हम अब सीधे प्रश्नों पर जाएंगे, और अब लगभग एक घंटे और 15 मिनट तक मैं इन सारे प्रश्नों में से होकर नहीं जा पाऊंगा। वहाँ बस उन प्रश्नों का ढेर लगा हुआ है। मैं सोचता हूँ कि वे अच्छे प्रश्न हैं, वे बहुत ही अच्छे हैं। मैं बस आगे बढ़कर और एक को यहाँ से और वहाँ से ले लूँगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ। और अब इसका उत्तर, मैंने सोचा आज रात मैं यहाँ आऊंगा, कोई तो उन्हें पढ़े, कहे हाँ या ना, हाँ या ना, पर यह बस लोगों के लिए उचित नहीं होगा। उन्होंने उन प्रश्नों को पूछा है कि उन्हें उनका उत्तर चाहिए, और मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ले लूंगा जो मैं ले सकता हूँ, और जो मैं नहीं ले सकता मैं अगली बार उसे ले लूंगा। और अब मैं लगभग अगले रविवार को लूंगा, मैं नहीं जानता, मैं आपको बताता हूँ। यदि आप अभी और बुधवार के बीच कभी तो बिल्ली को मिलने, हो सकता है कि हमें जाना पड़े। अब यहाँ एक बात है, मैं इंटरव्यू में बहुत ही पीछे रहता हूँ। बिल्ली ने मुझे इंटरव्यू लेने वालों का ढेर दिखाया जो बहुत अधिक थे, जो की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से कुछ तो महीनों से रुके हुए हैं। तो ठीक है, जब मैं आया हूँ मुझे उनमें से कुछ को लेना है, कुछ स्वभाव को लेना है, सब कुछ करना है जो मैं कर सकता हूँ, जिससे मैं इसे संतुलित कर सकूँ। मैं इस सप्ताह प्रार्थना करने जा रहा हूँ, जबकि मैं जा रहा हूँ और प्रभु से मांगूंगा, वह मुझसे जो करने को कहेगा, इन्हें समाप्त करूँ या उन इंटरव्यू को करूँ। यदि मैं उन इंटरव्यू को करता हूँ तो मुझे बस जल्दी ही रविवार को घर आकर और कहीं तो सारे इंटरव्यू को करते हुए और दिन भर सारे इंटरव्यू को जारी रखूंगा। और यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं, इसलिए मुझे इंटरव्यू को तब तक के लिए रोकना होगा जब तक मैं फिर से वापस नहीं आ जाता। यदि मैं नहीं करता तो मैं उत्तर दूंगा। बिली आपको एक कार्ड भेजेगा और मैं आपको बताता हूँ, ये अच्छा है, ये प्यारे बच्चे आपको ये बताने के लिए कि वे एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, वो प्रेम जो उनके पास एक दूसरे के प्रति है। एक जन दूसरे को बताएगा और दूसरा दूसरे एक को बताएगा। बिली बस एक विभाग में फोन करता है, लगभग 150 मील के दायरे में, और उनमें से बाकी के लोग दूसरे लोगों को बता देते हैं। वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वे कुछ भी चूकना नहीं चाहते, वे हर मिनट पर यहाँ पर होना चाहते हैं कि देखें कि क्या हो रहा है, क्योंकि यदि प्रभु कुछ तो देता है तो उसे पाने के लिए वे यहाँ होना चाहते हैं। मैं उनकी सराहना करता हूँ। अब याद रखना प्रिय मित्रों, आज सुबह मैंने कुछ प्रश्नों पर एक कथन दिया है और मैंने इनमें से कुछ पर ध्यान दिया। जी हाँ, अभी भी आज सुबह को मैं उठा जो लोगों के बारे में अधिक है जो एरिजोना की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। देखा, मैंने सोचा कि मैं बेहतर होगा कि इसे साफ कर दूँ, जिससे कि आप समझ जाएं। अब यह मत सोचना कि मैं लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वे कहाँ रह सकते हैं और वे क्या कर सकते हैं। और अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ, मेरे प्रिय भाई, वहाँ पर वे ईमानदार लोग हैं जो वहाँ पर स्थानांतरित होना चाहते हैं। तो ठीक है, कोई भी जो स्थानांतरित होना चाहता है, मैं निश्चय ही खुश होऊंगा। जब तक मैं वहाँ पर हूँ, जब तक मैं वहाँ पर होता हूँ, मैं यहाँ लगभग 10 गुना होता हूँ जितना मैं वहाँ पर होता हूँ। मेरे पास अभी और क्रिसमस के समय के बीच मेरे पास वहाँ होने के लिए लगभग 4 दिन होंगे। उसके तुरंत बाद मैं विदेश के लिए निकल जाऊंगा। मैं यहाँ आराधनालय में रहूँगा, हो सकता है 2 या 3 सप्ताह इससे पहले कि मैं विदेश में एक बेदारी में जाऊँ, जैसा कि मैं हमेशा इस वसंत के समय में करता हूँ। और फिर वहाँ से मेरे पास सारे एरिजोना में केवल एक ही सभा होगी जो जनवरी में फिनिक्स में होती है, 2 रात क्रिश्चियन बिजनेसमैन के साथ। देखा, मैं नहीं, यदि बाहर वहाँ के लोग, क्या आप उस टेप का बटन दबा सकते हैं? अब जैसा कि हम आज रात इन प्रश्नों पर आरंभ कर रहे हैं, मैं यहाँ एक को लूंगा और क्या आप उनका आनंद ले रहे हैं? कहें आमीन। मैं सोचता हूँ कि इस समय यह हमारे लिए लाभदायक है। और ओह, मैं विश्वास करता हूँ कुछ ही समय में आज सुबह को देखते हुए यहाँ आने से पहले कुछ लेखों और बाइबल में कुछ स्थानों पर मैंने सोचा, ओह ये क्या ही अद्भुत बात होगी जब हम प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या ही अद्भुत बात होगी कि पुराने नियम के उन सारे चरित्रों में से होते हुए फिर से ले लिया जाए, अय्यूब में से होते हुए और वहाँ से होते हुए, और उन पर सभाओं की श्रृंखला को चलाएं। क्या यह अद्भुत नहीं होगा? बस आपको यह दिखाने के लिए कि ठीक ठीक किस तरह से इस दिन का नमूना है, सारे वचन एक साथ जुड़ते हैं और उन प्राचीन समय के विनाशों के बारे में, और वे आज के साथ किस तरह से प्रतिछाया करते हैं, किस तरह से पुराने नियम की हर एक चीज प्रभु यीशु के आगमन की बात करती है। अब पहला प्रश्न जो मैंने यहाँ से निकाला है, भाई ब्रैनम, क्या एक मसीही के लिए ये गलत है कि अपने बालों को घुंघराले करने की पिन से घुमाए? साथ ही महिला की आस्तीन कितनी लंबी होनी चाहिए? धन्यवाद, एक बहन। अब यही उस महिला के लिए बहुत कुछ मायने रखता है। अब हम में से कुछ भाइयों के लिए हम सोच सकते हैं, ओह ना समझ महिला, लेकिन यह उसके लिए ना समझी नहीं है, वो जानना चाहती है। अब बालों को उसमें लगाने के बारे में यह क्या कहते हैं, बालों के लटों को गूंधने वाली पिन या कुछ तो और, मुझे क्षमा करें, मैंने नहीं, यह मुझे क्षमा करें, घुंघराले करने की पिन, मुझे क्षमा करें, कसने वाली पिन लटों को बनाती है। यही है जो लड़कियां वर्षों पहले पहना करती थी, आपको याद है, एक प्रकार से क्या यह सही नहीं है? वे उन्हें लटों को गूंधने वाली कहती हैं, बस एक प्रकार से घुंघराले बाल नीचे लटकते हैं। नहीं, घुंघराले बाल करने वाली पिन, मुझे क्षमा करें मित्रों, उसे कितनी लंबी आस्तीन पहननी चाहिए? मैं नहीं सोचता कि यह इसके विषय में कुछ है, मैं नहीं जानता, समझे, जिसका मैं बाइबल के साथ समर्थन नहीं कर सकता। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अब मैं बस आपको यह मेरे लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका समर्थन करने के लिए कोई वचन नहीं है। मेरे पास महिलाओं के लिए उनके बालों के बारे में केवल एक ही बात बताने के लिए है कि इसे ना काटें। वे इसे कैसे रखना चाहती हैं, यह उन पर निर्भर करता है। और घुंघराले बाल करने की पिन के बारे में वास्तव में मैं नहीं जानता कि वे क्या हैं, मगर ये चीजें कपड़ों को टांगने की पिन की तरह दिखाई देती हैं, जो कि वे अपने बालों में लटकाए रहती हैं। केवल यही चीज है जो मैं जानता हूँ। और लंबी आस्तीन, मैं सोचता हूँ एक मसीह होने के नाते परमेश्वर आपको बताएगा कि उन चीजों के बारे में क्या करना है। आप समझे, मैं विश्वास करता हूँ एक मसीही व्यक्ति के रूप में आप जानते होंगे कि इसके विषय में कैसे करना है। मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर किसी निश्चित लंबाई को काटता है या जो कुछ भी है। जब तक आप सभ्य हैं और सामान्य योग्य और साफ दिखते हैं, मैं सोचता हूं कि यही अच्छी बात है। क्या आप नहीं सोचते? देखा, अब बस यही मेरा विचार है। अब यह मैं बोल रहा हूं, देखो, क्योंकि मैं वचन के साथ और कुछ भी समर्थन नहीं कर सकता। मैं विश्वास करता हूं कि आज सुबह बालों को रंगने के बारे में सवाल आया। आप जानते हैं, किसी रंग से बालों को रंगना। अब मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास वचन नहीं है यह कहने के लिए कि कोई अपने बालों को ना रंगे। अब यह आप महिलाएं, आप अच्छा दिखना पसंद करती हैं और आपको अच्छा दिखना चाहिए। और भाई ब्रैनम, आप बच्चों के विरोध में नहीं हैं, आप मेरे बच्चे हो, मैं आपसे प्रेम करता हूं और मैं आप पर जोर से चिल्लाना नहीं चाहता। मैं ऐसा बेकार में ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो केवल आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब देखो, मैं बस पूछूंगा, मुझे उस प्रश्न के उत्तर में यह कहना है, अब क्या आप तैयार हैं? और आपके लिए जो टेप पर है, यहाँ है ये बहनों, यदि इसमें कोई सवाल है तो ऐसा ना करें। लेकिन यदि आप परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हैं और ऐसा करने के लिए अगुवाई होती है, जब तक ये वचन के साथ विरोध नहीं करता है और एक प्रश्न के साथ हस्तक्षेप नहीं करता है, आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि यह प्रभु की इच्छा है, तो आगे बढ़कर और इसे करें। समझे, क्योंकि नहीं कहने के लिए कोई वचन नहीं है। देखा, इसके विषय में मैं नहीं, बाइबल ऐसा कुछ भी नहीं कहता है। मैं यशाया 5 को जानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही है, यह स्त्रियों के विषय में बताता है वे किस तरह से परिवर्तनीय वस्त्र को पहनेंगे और इस तरह की हर एक चीज। लेकिन यह घमंड और बेकार की चीजें थी प्रदर्शन करते हुए। यदि आप इसे घमंड के लिए करते हैं तो यह गलत है। देखा, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को जांचें। यदि इसके लिए कोई वचन नहीं है और जिस तरह से आत्मा आपकी अगुवाई करता है, तो आप आगे बढ़कर और इसे करें। लेकिन अब जब ये बात आती है कि क्या आपके बाल लंबे होने चाहिए या छोटे बाल होने चाहिए, तो आपके लंबे बाल होने चाहिए, यही बाइबल है। यहाँ पर एक प्रश्न है, मैं ठीक अभी इसका उत्तर दे सकता हूँ। यह यहाँ पर है, मैंने इसे आज सुबह या कभी तो देखा था। कहा, तुम हमेशा ही महिलाओं के विषय में चिल्लाते रहते हो कि किस तरह उन्हें अपने बालों को नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप पुरुषों के बारे में कभी कुछ नहीं कहते। यदि मैं एक पुरुष को यहाँ लंबे बालों के साथ आते हुए देखता हूँ जो उसकी पीठ तक एक महिला की तरह लटकते हैं, तो मैं कहता हूँ, श्रीमान, आप नाई की दुकान पे क्यों नहीं जाते, आप एक महिला की तरह दिख रहे हो। देखा, लेकिन पुरुष आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। देखा, ना ही पुरुषों के समान, अब ना ही पुरुषों की अचूकता के रूप में, वे वैसे ही दोषी होते हैं जैसे स्त्री होती है। और वैसे भी एक पुरुष जो अपनी पत्नी को ऐसा करने देता है, वह इसके लिए दुगना दोषी होता है, क्योंकि वही वो एक होना चाहिए जिसके पास घर में ऐसा कहने का अधिकार होता है। और वो मनुष्य जो यहाँ तक अपने घर पर भी प्रभुता नहीं रख सकता, वह इसे परमेश्वर के भवन में कैसे कर सकता है? देखा, मैं हमारी महिलाओं के झुंड के लिए बहुत ही धन्यवादित हूँ जो हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। मैं इसे आदर और प्रेम के साथ कहता हूँ। और अब परमेश्वर जानता है यह सच्चाई है। मेरा वहाँ दक्षिण में एक प्रचारक मित्र हुआ करता था, जिसके पास सबसे पवित्रता से दिखने वाली कलीसिया थी जो अब तक मैंने देखी है। जहाँ स्त्रियाँ आती हैं, सबसे सुंदर स्त्रियाँ जो मैंने कभी देखी, वो वहाँ बैठी थी, संत, धार्मिक, लंबे बालों के साथ। और मैंने हमेशा ही उस कलीसिया में जाना पसंद किया है, और प्रभु यीशु ने मुझे आज यहाँ एक कलीसिया दी है जो सैकड़ों मील तक अधिक चमकदार है। मेरी स्त्रियाँ, मैं आप पर बुरा होने के लिए नहीं डांटता हूँ, मैं तो बस आपके लिए बहुत ही खुश हूँ। मैं बस नहीं चाहता कि शैतान कहीं पर भी पैर रखे। देखा, मैं चाहता हूँ कि आप आगे की ओर बढ़ें, ना कि पीछे की ओर। कभी भी कोई भी मनुष्य आपको किसी सम्मोहन के द्वारा भरमाने न पाए या ऐसा ही कुछ, तो और या ऐसा ही कुछ कहते हुए, ओ तो ठीक है, ऐसा नहीं। समझे, इसी प्रकार से शैतान ने हवा के लिए वचन का अनुवाद किया। देखा, आप केवल विश्वास करें जो वचन कहता है। तो ठीक है, बहुत ही जरूरी है भाई ब्रैनम, ये जानते हुए कि समय समाप्त हो रहा है और अनंतता आ रही है, विवाह की योजना बनाने वाले जोड़े के लिए आपकी क्या सलाह होगी? सीधे आगे बढ़कर और विवाह करें, समझे? ठीक वैसे ही आगे बढ़े जैसे मान लो आप यहाँ धरती पर 100 वर्ष और जीने जा रहे थे, बस सीधा आगे बढ़े, अपने हृदय को मसीह पर रखें, ना कि अपने हृदय को संसार की इन बातों पर रखें, लेकिन मसीह पर। देखा, सीधे आगे बढ़ो, विवाह कर ले बच्चों, परमेश्वर आपको आपके विवाह में आशीष दे। प्रिय भाई ब्रैनम, मैंने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया है। वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे। क्या इसका अर्थ बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा का? यह इसका अर्थ यह है कि मुझे दान को ग्रहण करना चाहिए। निश्चित मुझे बपतिस्मे के साथ एक निश्चित अनुभव को प्राप्त करना चाहिए। मैं उस आत्मा से भर जाने के लिए व्याकुल हूँ। कृपया लंबे लेख के लिए क्षमा करना, क्योंकि मैं आपसे यह प्रश्न लंबे समय से पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद। और उस व्यक्ति के नाम के हस्ताक्षर हैं, वे शहर से बाहर के लोग हैं। अब यह एक अच्छा प्रश्न है। अब पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा एक निश्चित अनुभव है जिसे एक व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। अब मुझे इसे किसी प्रकार से कुछ मिनट के लिए स्पष्ट करने दें, समझे? अब बहुत से लोगों के पास विचार है, मेरा विश्वास है कि यह घुमा हुआ है, और हो सकता है ठीक यहाँ की कलीसिया के लिए और कलीसिया के लिए जो सुन रही है, वहाँ एक प्रश्न हो सकता है। अब जब मैं इस बात पर विश्वास नहीं करने की बात को कहता हूँ कि अन्य जुबान में बोलना ये पवित्र आत्मा का आरंभिक प्रमाण है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की सहायता से मैं इसे बाइबल में साबित कर सकता हूँ कि यह गलत है। देखा, क्योंकि अन्य भाषा में बोलना पवित्र आत्मा का एक दान है। कितने लोग ये जानते हैं? दैविक चंगाई पवित्र आत्मा का एक दान है, और जो यहाँ बीटल्स इसे कर रहे हैं। देखा, शैतान उन दानों में से किसी की भी नकल कर सकता है। जादू करने वाले, ओझा अन्य जुबान में बोल सकते हैं और इसका अनुवाद कर सकते हैं। जंगल के देशों में बहुत सी बार एक ओझा अन्य जुबान में बोलता है, मनुष्य की खोपड़ी से लोह पीता है और अज्ञात जुबानों का अनुवाद करता है। वहाँ एरिजोना में जब उनके पास फसल के दाने के नाच का पुराने उत्सव का नाच होता है, इंडियन लोग इन बड़े बड़े सांपों को उनके चारों ओर लपेट लेते हैं, जब वे परमेश्वर से प्रार्थना करने का यत्न कर रहे होते हैं कि उनकी फसल के लिए वर्षा भेजे। वे इसे मकई की फसल का नृत्य कहते हैं। वे मकई के डंठल को लेते हैं, इसे अपने चारों ओर रखते हैं और एक छोटा सा समूह बनाते हैं और वे नाचते हैं, और ओझा उसके सिर पर सींग को लगाकर बाहर आता है, भैंस के सींग को, और वे अपने चारों ओर उन बड़े बड़े सांपों को लपेट कर नाचते हैं, और जादूगर और बहुत से चीलम पीने वाले और चीजें उस स्थान के चारों ओर। वे उस समय पर एक श्वेत व्यक्ति को अपने आसपास नहीं आने देते हैं, लेकिन मैंने उन्हें दूरबीन से देखा है, और उनके इंडियन मित्र हैं जो उनके नाच को देखने के लिए गए हैं। यही वे लोग हैं जो मसीही नहीं होते हैं निश्चय ही, और वे इस मकई के फसल के नाच में इन सांपों को पकड़े हुए नाचते हैं, और जादूगर बाहर आता है और अपने आप को चाकू से काटता है और बाकी की हर एक चीज करता है, और अंत में वे आत्मा में आ जाते हैं और अन्य जुबान में बोलते हैं और इसका अनुवाद करते हैं। अब से लेकर 3 या 4 घंटे के अंदर सीधे आपको ले जा सकता हूँ जहाँ एक बिचवाई करने वाला व्यक्ति एक पेंसिल को मेज पर रखता है और बेसुधी में चला जाता है और सभी प्रकार की चीजों को करता है और अपने हाथों को हिलाता है, और वो पेंसिल ऊपर उठती है और अज्ञात भाषाओं में लिखती है, और ओझा खड़ा होकर और आपको बताएगा कि यह क्या बता रहा है। अब यह पवित्र आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है। देखा, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, आप उस आत्मा के फल पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का पहला फल प्रेम है, और मसीही विज्ञान किसी से भी बढ़कर प्रेम का प्रयोग करता है जिसे मैं जानता हूँ, और वे यहाँ तक यीशु मसीह को दिव्य होने का भी इंकार करते हैं। समझे, पवित्र आत्मा का केवल एक ही प्रमाण है जिसे मैं जानता हूँ, और यह इस घड़ी के प्रतिज्ञा किए हुए वचन में एक सच्चा विश्वास होता है। अब वे यहूदी आए, उनके पास चेलों से भी अधिक धर्म निष्ठता थी, वे पवित्र वचनों में उन चेलों की तुलना में बेहतर प्रशिक्षित मनुष्य थे, क्योंकि वे तो मछुआरे, चुंगी लेने वाले और आदि आदि थे, और वे जो भी कर रहे थे उनके पास उस बात में वास्तविक विश्वास और सच्चा विश्वास था। अब ध्यान से सुनना, इससे चूकना मत। देखा, जब ये आत्मा के फल होने की बात आती है, दयालु और विनम्रता, मैं सोचता हूँ कि वहाँ उन याजकों में से एक भी वहाँ ऐसा नहीं था, सिवाय यीशु मसीह से बढ़कर इसमें कौन हो सकता था। वो मंदिर में गया, उस मोटी सी रस्सी को समेटा, क्रोध से उनकी ओर देखा और उनकी मेजों को पलट दिया और उन्हें उस स्थान से निकालकर बाहर कर दिया। क्या यह सही है? बाइबल ने कहा कि उसने उनकी ओर क्रोध की दृष्टि से देखा। बाइबल ने ये कहा, यह बिल्कुल सही है। तो देखो, वे याजक लोग सज्जन, दीन, समझदार पुरुष थे। जब ये आत्मा के फलों की बात आती है तो वे यीशु से कहीं अधिक आत्मा के फलों को दिखा सकते थे। जब यह धर्म ज्ञान की बात आती है तो वे नहीं जानते थे कौन सा विद्यालय है जिसमें से वह बाहर आया है। यह मनुष्य कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, उसके पास कौन सी संगति में जाने का कार्ड है, वह किस संस्था से संबंध रखता है, हम नहीं जानते कि वह कहाँ से आया है। वह पूरी तरह से एक तिरस्कृत किया गया व्यक्ति था जिसने एक अवैध जन्म से जन्म लिया था। क्यों? हम उसे कुछ ही मिनटों में यहाँ पर ला सकते हैं और आपको नियमों के द्वारा दिखा सकते हैं। उनके पास वो करने का अधिकार था जो उन्होंने किया जब यह उस विषय पर आया था। क्यों? क्योंकि वे यह देखने में असफल रहे कि वो उस घड़ी का प्रतिज्ञा किया हुआ वचन था। केवल एक ही तरीके से उन्होंने इसे पहचाना, जब यीशु ने वचन का प्रदर्शन किया उन्हें ये बताने की उस योग्यता के द्वारा कि उनके हृदय में क्या था, वे क्या कर रहे थे। वह परमेश्वर के वचन के अनुसार एक भविष्यवक्ता था। जो उसने कहा वह पूरा हुआ, हर एक शब्द शब्द दर शब्द पूरा हुआ। वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, दास परमेश्वर भविष्यवक्ता नहीं, ऐसा वहाँ पर पहले से था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, और यह परमेश्वर भविष्यवक्ता है, ना ही परमेश्वर का भविष्यवक्ता। यह तो मलाकी, यर्मिया और यशाया और एलिया और आदि आदि थे, लेकिन यह परमेश्वर भविष्यवक्ता था, ना कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता। अब आप इसे समझ गए? सारे भविष्यवक्ता जिन्होंने उसके जीवन को भागों में चित्रित किया, उनकी भूमिका को निभाया, लेकिन उसमें सारे भविष्यवक्ताओं की परिपूर्णता थी। भविष्यवक्ता प्रभु का वचन उनके पास आया, उन भविष्यवक्ताओं के पास, लेकिन यह वचन और भविष्यवक्ता था वही व्यक्ति। देखा, अब जब एक मनुष्य मसीह को उस रीति से ग्रहण करता है जिसमें वो है, आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते, जैसे कि समझे। अब उनमें से कुछ कहते हैं, तो ठीक है मैं एक लूथरन हूँ, तो ठीक है इसके विरोध में कुछ भी नहीं है, लेकिन उकाब उस पर भोज नहीं करता है। देखा, ये उतना तक ही था जितना ये था, यह उस दिन का ताजा भोजन था। मैं एक वेसलियन हूँ, यह ठीक बात है, लेकिन आप बीते समय में जी रहे हैं। देखा, अब उन लोगों ने कहा, क्यों? हमारे पास हमारा पिता अब्राहम है। उस भविष्यवक्ता ने कहा, परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान को उत्पन्न कर सकता है। देखा, हम इससे संबंध रखते हैं, हम उससे संबंध रखते हैं, इसका कुछ भी लेना देना नहीं था। उसने कहा, तुम सर्प के वंश, तुम्हें क्रोध से भागने की चेतावनी किसने दी? अब यह मत कहना हमारे पास हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। देखा, इसलिए एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित धर्म ज्ञानी होना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं था। नम्र और सज्जन होने का इससे कोई लेना देना नहीं था। कौन सी चीज ने उसे अलग बनाया? वह देहधारी हुआ वचन था, ना कि मूसा के दिन के लिए वचन। मूसा उस दिन का वचन था, ना ही नूह के दिनों के लिए वचन। नूह उस दिन के लिए वचन था, ना ही उस दिन एलिया के दिन के लिए वचन था। एलिया उसके दिन के लिए वो वचन था, लेकिन वो वर्तमान काल का वचन था और वे पहले के समय में जी रहे थे। वही चीज दोहराई जाती है, यही तो पवित्र आत्मा का प्रमाण है। जब परमेश्वर आप पर प्रकट करता है और आप इसे यहोवा यो कहता है देखते हैं और इसे स्वीकार करते हैं, ना कि आप क्या हैं, आप क्या थे या इसके बारे में कुछ भी नहीं है, यह तो वो है जो परमेश्वर ने अब आपके लिए किया है, वहाँ वो प्रमाण है। यीशु ने कहा, वो हमें पवित्र आत्मा का प्रमाण देता है। यूहन्ना 14, उसने कहा, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत सी बातें हैं, मेरे पास इसे करने का समय नहीं है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है वो आपको बताएगा, तुम्हें उन बातों को याद दिलाएगा जिसके विषय में मैंने तुम्हें बताया था, और आने वाली बातों को भी दिखाएगा। क्या आप नहीं देखते? वहाँ वो प्रमाण है, यह आगे बता रहा है, और यह लिखित वचन का दिव्य अनुवाद होना है। अब क्या यह एक भविष्यवक्ता का प्रमाण नहीं है? एक नबी जो बाइबल में एक ऐसा मनुष्य होता था जो आगे की बातों को बता सकता था, और यह बिल्कुल ठीक ठीक होता, न ही किसी ने उस पर हाथ रखा। यह तो एक दान है। एक भविष्यवक्ता पहले से ठहराया हुआ होता है और भविष्यवक्ता होने के लिए जन्मा है। देखा, सारे जीवन भर यह एक भविष्यवक्ता था। यही एक कार्य स्थान है, यही है जहाँ लोग, यहाँ पर बहुत से प्रश्न हैं। तो ठीक है, क्या दुल्हन, क्या यह कलीसिया? और देखा, आप विभाजित नहीं कर सकते कि वे क्या हैं। दुल्हन परमेश्वर की चुनी हुई होती है, कलीसिया इसमें से होकर जाती है। यही वे हैं जो यह कहते हैं, जो कोई चाहे वो आए, लेकिन दुल्हन परमेश्वर की चुनी हुई होती है। वहाँ परमेश्वर के चुने हुए पांच कार्य स्थान है, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया में प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं, शिक्षकों, पास्टरों, सुसमाचार प्रचार करने वालों को रखा है। परमेश्वर ने ऐसा किया। मनुष्य के पास डीकन और आदि आदि और सब कुछ है, लेकिन आप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया में कलीसिया को सिद्ध करने के लिए इन्हें रखा है। इसे अलग नहीं कर सकते। अब पवित्र आत्मा जब यह आता है, यह आपके लिए एक गवाह होता है। देखा कि यह वचन सही है, वचन जो आज के लिए है, ना ही लूथर के लिए वचन, वो वचन ना ही मूसा के लिए। हम गवाही देते हैं कि यह सत्य है, परंतु यह दूसरा दिन है। अब क्या हो यदि यीशु आकर और कहे, अब जैसे मूसा तुम सबको मिस्र से बाहर लेकर आया है, मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाने को आया हूँ। क्या हो यदि उसने कहा, आओ हम काम पर जाकर और एक नाव को बनाएं, मैं प्रभु परमेश्वर हूँ, मैं अब संसार को पानी में डालने जा रहा हूँ, मैं सारे संसार को डुबा दूंगा। क्यों? वो बाहर हो गया था। देखो, वचन ने कभी नहीं कहा कि वो इस तरह से आएगा। देखा, वो मसीहा नहीं होता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना भी जहाज बनाया होता या जो कुछ भी उसने किया होता था, वो अब भी नहीं, वो मसीहा के अनुकूल नहीं होता। हालेलुया, आप वहाँ है, यह तो योग्यता है। जी हाँ श्रीमान, पहला कुरिन्थियों 13 यह कहता है, जब वो जो सिद्ध है वो आता है, जो कुछ अधूरा है वो मिट जाएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें, एक बच्चे की तरह ऊपर और नीचे कूदना, अन्य जुबान में बात करने की कोशिश करना, और ये सारी दूसरी चीजें, जब वो जो सिद्ध है, और आज हमारे पास परमेश्वर की सहायता के द्वारा दिव्य प्रमाण के साथ वचन का सिद्ध अनुवाद होता है, तब जो कुछ अधूरा होता है वो मिट जाता है। जब मैं एक बालक था, मैं एक बालक के समान बोलता था, मैं एक बालक के समान समझता था, लेकिन जब मैं सयाना बन जाता हूँ तो मैं बचकानी बातों को छोड़ देता हूँ। आमीन, मैं प्रचार करने जाता हूँ और तब इन बातों को नहीं लेता हूँ। भाई ब्रैनम, क्या मैंने इसे समाप्त किया? क्या मैंने बपतिस्मे के बारे में बताया, उस पवित्र? जी हाँ, यह इसके बारे में ही था। क्या ऐसा नहीं था? तो ठीक है, मुझे क्षमा करें। यदि मैं इसे नहीं लेता हूँ तो बस मुझे क्षमा करें। ये क्या ही अद्भुत प्रश्न है। आप पूरी रात बस एक ही प्रश्न पर बने रह सकते हैं भाई, और फिर यहाँ तक इसे छुएंगे भी नहीं। मैं परमेश्वर के सेवक के रूप में आपकी सराहना करता हूँ, विश्वास करता हूँ, और मैं सत्य के संदेश पर विश्वास करता हूँ। मेरी पत्नी मुझे नहीं सुनती है, कुछ भी कहती है इस संदेश के बारे में, कुछ भी कहती है, और किसी भी टेप को नहीं सुनती। मैं अपने काम पर भी तकलीफ में हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी विश्वास करे और मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। भाई ब्रैनम, मैं परमेश्वर का मित्र बनना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा में पाया जाना चाहता हूँ। मैं उसका दास बनना चाहता हूँ। और उस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया है। समाप्त। एक मिनट रुकना। जब मैं छोटा था, मैंने सबको बताया था कि मैं एक प्रचारक बनना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर मुझसे क्या करवाना चाहता है। मैं प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, प्रभु में आपका। अब एक अच्छा प्रश्न है, और यह मनुष्य ईमानदार है, उसकी पत्नी, उसकी जीवन साथी जो उसका एक भाग है, क्या मैं इसमें कुछ और जोड़ सकता हूँ? मेरे भाइयों, मैं इसे प्रभु के नाम में कहता हूँ, इन दिनों में से एक दिन प्रभु ने चाहा तो मैं सोचता हूँ कि मैं बस आगे जाकर और उस पर टेप बनाऊंगा विवाह और तलाक, समझे, इसे ठीक यहाँ आराधनालय में लाऊंगा। यदि यह अलग होता है तो उसे बस अलग होना है, लेकिन हम यह साबित करने जा रहे हैं कि यह प्रभु का वचन है। देखो मेरे भाइयों, इसे सुनना, क्या आप जानते हैं कि बहुत सी बार इस धरती पर आपको गलत जीवन साथी मिल जाता है, बुरी या नीली या बुरी आंखों के कुछ सुंदर जोड़े अपने सौंदर्य से मोहित करके एक ऐसे स्थान पर ले जाती हैं जो आपको नहीं सुनना चाहिए। बहुत से पुरुष इसे समझ रहे हैं। एक पुरुष जो विवाह कर रहा होता है उसे पहले प्रार्थना पूर्वक जाना चाहिए। आपको बाहर की सुंदर होने से एक महिला को नहीं चुनना चाहिए, लेकिन अंदर से सुंदर होना है, वो एक जो आपके बच्चों के लिए एक माँ बने। मैं जानता हूँ कि एक सेवक के लिए पुलपिट पर यह कहना खराब बात दिखाई देती है, लेकिन जब मैं पश्चिम में गाय पशु के खरीदारों के साथ साथ जाया करता था, हम प्रजनक पशु को खरीदते और वे एक पशुओं के झुंड को चराना आरंभ करते, और मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा कि जबकि मैंने उन नीलामी करने वालों पर और वे खरीदने वाले जिन चीजों को वे कर रहे थे उन पर ध्यान दिया, मैं अक्सर एक बूढ़े व्यक्ति के साथ जाया करता था जो यहाँ मेरे साथ कलीसिया में आता था, और उसकी मैंने मसीह की ओर अगुवाई की थी। आरंभ से ही वो एक पूरी तरह से अविश्वासी था। श्रीमान यवरेज, आप में से बहुत से लोगों को वे याद होंगे जो कोलोराडो से बाहर एक पशुपालक थे। हम जाते और वे आकर एक गाय के, मैंने देखा कि एक छोटा सा प्रजनक बछड़ा एक दिन $11,000 में बिका, बस एक छोटा सा बछड़ा, उसका अब तक कभी भी प्रजनक नहीं हुआ था। और मैंने कहा, और जेफ ने कहा, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं इसे उस बछड़े में लगा देता। और मैंने सोचा, अब वो एक पशुपालक है, वो अपने काम को समझता है। मैंने कहा, जेफ, अब आप क्यों, उस पशु की क्या योग्यता है? वो एक हियरफोर्ड पशु है, वो कुछ समय पहले $300 में बेचा गया था, जो मुझे एक बड़े बछड़े और इत्यादि की तरह दिखाई देता था। उसने कहा, देखो बिल्ली, वहाँ एक बात है जो तुम पशु को खरीदने में नहीं समझोगे। कहा, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें अपने प्रचार के मार्ग पर बने रहना चाहिए, लेकिन कहा, तुम पशुओं के विषय में नहीं समझते हो। उसने कहा, अब वहाँ उस बछड़े को देखो। हम वहाँ नीचे चल कर गए। कहा, उसकी आँखों में उस जंगली तरह से घूरने को देखो। मैंने कहा, हाँ। कहा, उसके बच्चे और उसके पोते और उसके पर पोते 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 पोतियाँ भी वैसे ही जंगली तरह से घूरने वाले होंगे। और कहा, वे अपने आप को दरिद्र कर देंगे, वे कभी भी अपने बछड़ों की माँ नहीं बनेंगे। और कहा, तुम उन्हें कभी भी मोटा नहीं कर सकते, वे कभी भी गाय के मांस नहीं बनाएंगे। उसने कहा, यहाँ एक छोटे से बछड़े को देखो जो बेचा गया है, देखो वह कितनी कोमल दिखाई देती है, उसके चेहरे पर उस शांति से भरी दृष्टि को देखो, उस नम्र दृष्टि को देखो, उसकी आंखों में कोई घूरना नहीं है। कहा, वह अपने बछड़े की वास्तविक माँ बनेगी, और उसके बछड़े का बछड़ा और बछड़े का बछड़ा निरंतर इसी तरह से बना रहेगा। और कहा, वे सारी माताएं बनेंगी यदि वे उस बछड़े के लिए सही प्रकार के प्रजनक बैल को ले सकते हैं, समझे, जो उनके बच्चों को बनाएगा। लेकिन चेहरे पर वह घूरता हुआ भाव हमेशा ही एक खराब किस्म के पशुओं के झुंड को बनाता है, यदि कोई व्यक्ति पशु खरीदने का प्रयास कर रहा है। मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान, धन्यवाद। और यही बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। आप उनमें से एक रंगे हुए चेहरे और घूरते हुए भाव की आंखों को लें, किसी प्रकार के जानवर की तरह दिखाई देती है। एक मनुष्य होकर खुद का रूप बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, वो कभी भी कुछ भी नहीं बना पाएंगी। वो हर समय घूमती फिरेंगी। और मसीहत बाहर की सुंदरता नहीं होती है, यह तो अंदर की ओर होती है, शांति की, गंभीर, अपने आप को एक शांतिपूर्व गंभीर आत्मा में सुंदर बनाना, जो कि प्रभु के सामने एक बड़ी कीमत है। यही है जो हम महिलाओं पर और पुरुष पर देखना चाहते हैं, और जो कोई भी है। अब भाई ब्रैनम, प्रश्न, क्या एक मसीही स्त्री को साधारण से आभूषण पहनना चाहिए, जैसे गले का हार या मोती? तो ठीक है बहन, मैं जानता हूँ कि यह आपके लिए बहुत मायने रखता है, और यह आपके लिए मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि आपके भरोसे को बनाए रखने के लिए मैं आपको सच्चाई को बताता हूँ। अब याद रखें, बाइबल ने कहा जब तुम सस्ते सवरते हो, कीमती गहनों और मोतियों से श्रृंगार न करो और सब प्रकार के गहनों को पहनना, लेकिन इसे शांति की सुंदरता होने दो और शांत और नम्र आत्मा, जिसे मैंने अभी अभी उल्लेख किया है, जो कि प्रभु के सामने एक बड़ी कीमत रखता है। अब मेरा इससे कोई मतलब नहीं है बहन कि यदि आपके पास एक पिन, अब यह मैं बोल रहा हूँ ना ही प्रभु, यदि आपके पास एक पिन है जिसे आप लगाना चाहती हैं, या एक छोटा सा गले का हार जो आपके पति ने आपको दिया है, या हो सकता है आपके कुछ ऐसा जो आपने पहना था, अब मेरे लिए मैं नहीं सोचता कि यह बुरा है, अब यह मैं ही बोल रहा हूँ, अब याद रखना, मैं अपने आप को स्पष्ट करता हूँ, यह मेरा विचार है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसके लिए यही दृष्टिकोण है, आप इसे इसी तरह से करते हैं, देखा, इसके पीछे यही उद्देश्य है, और जब आप देखते हैं यह चीज आप पर हावी हो रही है, तब उस चीज को छोड़ दें, लेकिन मैं सोचता हूँ यदि आपने अपने विवाह की अंगूठी पहनी है, अब मैं आप नाजरीन लोगों को जानता हूँ, ऐसा हुआ करता था कि एक महिला जिसने विवाह की अंगूठी पहनी हुई है, आप उसे बपतिस्मा भी नहीं देते हैं, देखा, मैं विश्वास नहीं करता ये इतना आवश्यक है, बाइबल में उन्होंने विवाह की अंगूठियाँ पहनी थी, केवल यह एक पट्टी होती थी जिसे वे कहते थे उनके सिर के चारों ओर लगी होती, उनमें 9 नग सिक्के लगे होते थे, लेकिन मैं ये सिर्फ दिखाने के लिए कि वे विवाहित थी। अब मैं सोचता हूँ कि यह ठीक है, यदि महिलाएं तैयार होना चाहती हैं और खुद को सभ्य साफ सुथरी महिला के समान दिखाना चाहती हैं, क्यों? मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप उस चीज को थोड़ा अभिमान करने में पहनने जा रहे हैं, तो आप गलत हैं। यह आपका रवैया है। क्या आप महिलाओं को यहाँ याद होगा, ज्यादा समय नहीं हुआ उनके पास जिसे वे कलंकित स्कर्ट कहते थे, मैं सोचता हूँ कि वे फिर से बाहर आ रहे हैं, या वे और भी बदतर हो गए हैं। जी हाँ, वे बजाय कलंकित के अब लज्जाजनक हो गए हैं, लेकिन उनके पास एक नाटक हुआ करता था, अधिक समय नहीं हुआ उनके पास लड़कियाँ थी, युवा महिलाएं, और निश्चय ही बूढ़े लोग भी इसे करते होंगे, क्योंकि वे सब युवा होना चाहते हैं। मेरा अर्थ आप बहनों से नहीं है, मेरा मतलब संसार की महिलाओं से है, और वे उनके स्कर्ट को काट कर छोटा करते हैं, हर बार लगभग 1 फुट छोटा, उसके बाद किसी प्रकार के नीचे के वस्त्र को पहनते हैं सुंदर दिखाई देने के लिए, और जब वे एक कदम को उठाते तो यह नीचे पहने हुए वस्त्र को लेस के साथ दिखाता है, और झालर और जो कुछ भी इस पर होता था, जो आप जानते हैं। वहाँ एक लड़की मेरे पास आई जो एक शराबी लड़की थी, जिसने अभी अभी पवित्र आत्मा को पाया था, वह असेंबली ऑफ गॉड से ताल्लुक रखती थी, और यह फोर्ट वेन इंडियाना में था जहाँ पर मेरा विवाह हुआ था, और वह मेरे पास आई एक भली छोटी महिला, और उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है बहन, वो क्या है? उसने कहा, क्या आप सोचते हैं कि एक लड़की के लिए, मसीही लड़की के लिए, यह गलत है कि वो कलंकित स्कर्ट को पहने? मैंने कहा, बहन, यह एक चीज है जिसे मैं समझ नहीं सकता, एक कलंकित स्कर्ट क्या है? और उसने मुझे बताया कि यह क्या था। मैं उसने कहा, यह स्कर्ट के नीचे के वस्त्र को दिखाता है। मैंने कहा, एक महिला में ऐसा क्या है जो उसे किसी पुरुष को अपने नीचे के कपड़े दिखाने पर मजबूर कर देती है? क्या हो, एक मसीही लड़की का क्या काम जो इस तरह की चीज को करती है? क्या आप एक मसीही के लिए ऐसी कल्पना कर सकती हैं? अब देखो, एक पुरुष जब शरीर की बात आती है तो उसके लिए इतना कुछ नहीं होता है, और वो यदि वो आधा नंगा भी चला गया तो यह इसमें कोई बदनामी नहीं होगी, ना ही पुरुष के लिए विचार को रखते हुए, लेकिन वे आप जानते हैं कि किस प्रकार की महिला एक पुरुष से लुभाई जाएगी जो अपनी कमीज उतारे हुए हो, जो छोटी निकर पहने हुए हो, या जो कुछ भी उसके पास होता है, वो बड़ा पुराना बलवान सा दिखने वाला पुरुष, वह बेडंगा और दुर्बल सा दिखता है। मैं भयानक है, इन पुरुषों को यहाँ देखिए, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि यह एक महिला को इस तरह की चीज को देखने पर उल्टी करने को लगाएगा यदि उसके पास, लेकिन अब आप एक महिला को लें और उसे इस तरह से रख दें, यह एक अलग ही भवन होता है, आप समझे? तो ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक एक गले के हार की बात है, या अब यदि आप अपने आप को ऐसे लाद रहे हैं जैसे आप अपने ऊपर एक चुंबक लेकर 10 सेंट की दुकान से गुजरे थे, मैं सोचता हूँ कि क्षमा करें, मेरे कहने का अर्थ इस तरह से नहीं था, लेकिन यह गलत है। यदि किसी चीज ने मुझे पहली बार मेरे मुंह को फेरा, मुझे अमेरिका के प्रति लज्जित किया था। एक दिन मैं स्विट्जरलैंड में था, और भाई ऑर्गन ब्राइट और मैंने बहुत दूर लुसाने के पास एक अच्छा स्थान देखा जहां हमें एक बड़ा बढ़िया कबाब मिल सकता है, लगभग इतना बड़ा, लगभग 3/4 पाउंड का वजन। मैं सोचता हूं अमेरिकी पैसे के हिसाब से लगभग 30 सेंट का था। ओ, हम राजाओं की तरह रह रहे थे। हर दिन हम वहां पर जाते और वे सब वहां शराब पीते थे। आप जानते हैं उनके यहां का पानी अच्छा नहीं होता है और मैं उस शराब को नहीं पीता हूं, इसलिए मैंने अपने लिए एक छोटी सुराही ली एक दवा की दुकान से जिसमें शुद्ध किया हुआ जल था। और मैं जहां भी जाता मैं उस सुराही को लेकर जाता। मुझे लगता है कि हर किसी ने सोचा होगा वो लड़का अपने खुद का ब्रांड या पसंद की शराब लेकर घूमता है, तो यह मेरे हाथ में होता था। हम वहां नीचे उस स्थान पर गए जहां वे सारे इस कबाब को बेचते थे और एक दिन मिस अमेरिका गाड़ी से आई। वो लगभग एक 28 मॉडल चेवी कार में आई। गोद में एक बाल कतरा हुआ कुत्ता बैठा था और उसने उसे वहां लाया और उसके पास पर्याप्त, उन दो महिलाओं के पास 10 सेंट दुकान के खरीदे हुए गहने थे, बहुत ही बड़ी लंबी लंबी चीजें और कान की बालियां और नीचे लटक रही थी और चेहरा रंगा हुआ और वे दोनों 50 वर्ष की थी, मेरी उम्र की थी। और आप सोचेंगे कि वे 15 वर्ष का होना चाहती थी, लेकिन वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वे पीछे की ओर देखने वाले दर्पण से देखते हुए जीवन की राह पर चलने की कोशिश कर रही हैं, पीछे की ओर देख रही हैं कि वे क्या हुआ करती थी। अब मसीही लोग ऐसा नहीं करते। एक मसीही वो होने की कोशिश नहीं करता जो वो हुआ करता था। वो ये नहीं देखता है कि वो कहाँ पर रहा है, वो देखता है कि वो कहाँ जा रहा है। देखा इस बात पर ध्यान न दें कि आप कब क्या थे। आपने इसे जी लिया है, आप इस पर कभी भी नहीं लौटेंगे, जो कि बीत चुका है। और कोई भी मनुष्य जो जीवन के मार्ग पर होता है पीछे की ओर देखने वाले दर्पण में से देखता है वो नष्ट हो जाएगा। और वैसे ही आप इस मसीही मार्ग पर होंगे, पीछे की ओर मत देखो कि आप क्या थे, देखो कि आप क्या होने जा रहे हो। पौलुस ने कहा, उन पिछली बातों को भूलकर मैं उस ऊंची बुलावट के निशाने की ओर बढ़ता जाता हूँ। अब लेकिन यह आपको लज्जित कर देता है, वे इस छोटे से पुराने बदबूदार कुत्ते को वहाँ ले आई और इसे मेज पर बैठा दिया। अब यह किसी को भी उल्टी करने को लगाएगा और वहाँ उस कुत्ते के साथ मूर्खता कर रही है। इसे ठीक वहाँ पर अपने हाथों से बैठा रही थी और फिर उन्हीं हाथों से खाना खाएंगे। और वेटर वहाँ पर आया और कुछ तो बड़बड़ा कर बोला। डॉक्टर गोगेन बुहल मेरे साथ थे, वो हंसने लगे और अपने सिर को घुमा लिया। मैंने कहा, क्या कहा? कहा, वेटर ने कहा, इसे नीचे उतारें। उन्होंने कहा, नहीं, यह एक अमेरिकन है, उसे वही रहने दो। दूसरे शब्दों में वह कुछ भी बेहतर नहीं जानती। देखा, जब मैं रोम में संत एंजेलो पर आता हूँ, अब इस पर सोचना, रोम इटली वेटिकन में उनके पास संत एंजेलो में एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, अमेरिकी महिलाओं के लिए इस कब्रों के तहखाने में प्रवेश करने से पहले कृपया मरे हुओं के सम्मान के लिए कपड़े पहन लें। कैथोलिक कलीसिया। देखा, प्रश्न, भाई ब्रैनम, दुल्हन कहाँ पर होगी जब धरती फटने लगती है और जल जाती है? क्या यह उस स्थान में होगी जैसे इज़राइल की संतान गोशेन में थी जब वहाँ विपत्तियाँ आई? क्या दुल्हन धरती पर होगी जब यह घटित होगा? यदि हाँ तो कहाँ पर? और क्या रैप्चर के समय सारी दुल्हन एक ही स्थान पर होगी? दुल्हन जब धरती फटने लगती है, रैप्चर के समय पर मरे हुओं का जाग जाना होगा और जीवितों का एक साथ एकत्र होना होगा, क्योंकि जीवितों के साथ रैप्चर जगह लेने को होगा। अब लेकिन दुल्हन, अब देखो, उनमें से एक सहशताब्दी से पहले यहाँ पर एक रैप्चर होना है और सहशताब्दी के बाद और सफेद सिंहासन के न्याय के बाद जब धरती जलती है तो वह वापस यहीं आ जाती है। देखा, वे संत पूरी धरती पर डेरा डालेंगे जब शैतान प्रिय नगर के आसपास आने लगता है और परमेश्वर आकाश से आग और गंधक की वर्षा करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। तो ठीक है, अब यह वचन है। साथ ही भाई ब्रैनम, मैं विश्वास करता हूँ कि एक स्त्री को अपने पति के अधीन होना चाहिए, लेकिन यदि एक मसीही महिला का एक पापी पति है तो यहाँ तक आपकी एक भी सभा में नहीं आता, आपकी एक सभा में नहीं आता है और ना ही, और वो चाहता है कि उसकी पत्नी उन चीजों को करे, अपने बाल कटवाए, छोटे कपड़े पहने और अनुचित स्थानों में जाए। क्या इस स्त्री को इसी प्रकार से इस पुरुष के अधीन होना चाहिए? कृपया इसे और स्पष्ट रूप से समझाएं, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है। नहीं बहन, आप ऐसे व्यक्ति के अधीन नहीं होते हैं, बिल्कुल ही नहीं। इस कारण से आप सब कुछ छोड़ दें और परमेश्वर से जुड़े रहें। अब वो चीज, यदि आप चाहते हैं, वो पुरुष आपके साथ रहना चाहता है और आप एक मसीही बने रहना, लेकिन यदि वह आपको छोटे कपड़े पहनने को लगाएगा, आपके बाल कटवाता है और ये सारे अन्य काम करवाता है और अनुचित स्थानों में जाने को कहता है, आप पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। आप इस प्रकार के व्यक्ति से बंधी हुई नहीं है, लेकिन जब तक बाइबल कहती है, जब तक वो खुश रहती है और वो एक साथ रहने से खुश हैं, आपको ये याद है उन्हें? और अब ये मैंने वचनों को नहीं रखा है क्योंकि मैंने उन्हें ले लिया था, आप समझे, कुछ मिनट पहले। मैं अभी एक वचन को लेता हूँ और फिर मेरे पास समय नहीं है, लेकिन पौलुस ने कहा कि जब तक वे अविश्वासी पति के पास एक अविश्वासी, मेरा मतलब विश्वास करने वाली पत्नी या इत्यादि है, विश्वास करने वाली पत्नी विश्वास करने वाले पति के साथ रहे, जब तक कि परमेश्वर के विरोध में अब तक कुछ ना हो। यदि वो उसके साथ रहने के लिए प्रसन्न है, आगे बढ़ो। प्रिय, यदि तुम कलीसिया जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसमें विश्वास नहीं करता, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम आगे बढ़ो, यह ठीक बात है। लेकिन जब वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तो अब वहाँ एक भिन्न बात है, तब आप इसके लिए बाध्य नहीं है, आप परमेश्वर के लिए हर चीज को अलग करें। भाई ब्रैनम, क्या ऐसा है? आइए देखें, एक व्यक्ति के लिए जिसके पास एक जीवित तलाकशुदा साथी है, जिसने सेवकाई के लिए संदेश पर आने से पहले फिर से विवाह किया है, तो ठीक है। पहले तीमुथियुस 3:2 में, यदि आप इसे लिखना चाहते हैं, और तीतुस 1:6, मैंने इस एक वचन को लिखा है, मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रश्न के लिए इसे पढ़ें, समझे। यदि एक मनुष्य एक बिशप या एक प्रचारक के पद की इच्छा को रखता है, कलीसिया में किसी और पद की, उसके पास केवल एक ही पत्नी होनी चाहिए, यह सही है, एक सेवक को। अब यह पहला तीमुथियुस 3:2 है और तीतुस 1:6 तक, अब तीतुस 1:6, जी हाँ, तो ठीक है। अब ध्यान दें कि बाइबल ने कहा कि वो मनुष्य जो परमेश्वर के भवन में सेवक है, उसकी एक पत्नी होगी। अब प्रिय भाई ब्रैनम, लगभग 10 वर्ष पहले परमेश्वर ने मुझसे भेंट की और चंगा किया, जो कि प्रेम का उपहार है, या उसने प्रकट किया कि प्रेम का उपहार क्या था, और उसी तरह से मेरी प्रार्थना है कि मैं वापस आऊंगी। क्या मैं मरने से पहले इसे पाऊंगी? क्या मेरे पति वचन को सुनेंगे और मुझे क्या करना है? यह प्रश्न से कहीं अधिक है। अब उसने कहा, अब यह यहाँ क्या है, या जिसने, उसने कहा मेरा पति, इसलिए मैं समझता हूँ यह वो स्त्री होना चाहिए जिसने यह लिखा है। अब उसने अपना पहला प्रेम खो दिया, देखा, वह आत्मा में ठंडी हो गई। अब बहन, हो सकता है क्योंकि आप अब भी कलीसिया में आती हैं और वही करती हैं जो सही है, आपने अपने उद्धार को नहीं खोया है, लेकिन आपने अपने उद्धार के आनंद को खो दिया है। दाऊद ने एक बार प्रभु को पुकारा, प्रभु मुझे मेरे उद्धार का आनंद लौटा दे। आप अब भी एक मसीही हैं, लेकिन मैं, आप जो करना चाहती हैं बहन, हर एक चीज से आजाद हो जाती हैं, जिसे आप जानती हैं कि कैसे, और परमेश्वर को ढूंढें और प्रार्थना करें, क्या मेरा पति वचन को सुनेगा और मुझे क्या करना है? जैसा कि मैंने आज सुबह कहा, बस नमकीन बने, तुम पृथ्वी के नमक हो। आपका पति आपके पवित्र जीवन को देखेगा, और पति जो कि एक अविश्वासी है, विश्वास करने वाली पत्नी के द्वारा प्रभु के लिए पवित्र किया जाएगा। केवल प्रभु को ढूंढे, नम्र बने रहें और हर समय प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर को स्तुति देते हुए और अपने पति के प्रति दयालु बने रहकर, जब तक वह आपके साथ इस तरह से रहने की इच्छा रखता है। रविवार की सभाओं के लिए, यदि एक महिला गलत करती है उसके साथ, अब एक मिनट रुकना, बेहतर होगा कि मैं इसे पहले अपने आप से पढ़ लूं। आप समझे, एक विवाहित पुरुष के साथ गलत करती है, पश्चाताप करती है और इसे सही करती है, क्या उन्हें आवश्यकता है कि इसमें पत्नी और पुरुष शामिल करें? भले ही यह पत्नी कुछ भी न जानती हो, तो ठीक है, यह ठीक है। यदि एक स्त्री एक विवाहित पुरुष के साथ गलत करती है, पश्चाताप करती है और वचनों के अनुसार अपने पति के साथ इसे ठीक कर लेती है, क्या उस स्त्री को शामिल पुरुष की पत्नी के पास जाने की आवश्यकता है, भले ही उस पुरुष की पत्नी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो? या क्या यह उस पुरुष का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को पहले बताए? या क्या उस स्त्री को ठेस पहुंचाने की आवश्यकता है? हम इस नुकसान की पूर्ति के साथ कितनी दूर जा सकते हैं जबकि यह खत्म हो चुका है और समाप्त हुआ है और जबकि मित्रता शामिल है? तो मेरी प्रिय बहन, वहाँ केवल एक ही चीज है जो आपने की है, जो कि सही है। आप शामिल थे, मुझे लगता है, या कोई तो जिसे आप जानती हैं गलत कार्य में शामिल था कि आप दूसरी स्त्री के साथ रहे और एक सामाजिक क्रिया को किया, और जब आपने किया वहाँ आप अपने अनुग्रह से गिर गए। तब आपने पश्चाताप किया और आप तब तक पश्चाताप नहीं कर सकते जब तक आप उस पुरुष के पास वापस नहीं जाते और इसे ठीक नहीं कर लेते। आपको अपने पति को लेकर और उस पुरुष के पास जाना होगा जो आपने किया था, और यही वो चीज थी जो आपको करना चाहिए था। यही वचन है, आपको यही करना चाहिए था। ज्यादा समय नहीं हुआ, एक महिला ठीक यहाँ लुइसविले से मेरे पास आई कि वह एक युवा महिला के रूप में वो एक पुरुष के साथ भाग गई थी, और फिर वो जान गई कि वह गलत कर रही थी, और उसने उस शहर को छोड़ दिया और दूर दूसरे शहर में चली गई और अपना नाम बदल लिया, कुछ लोगों के साथ रहने लगी, और यह पुरुष उसके पीछे पीछे आ गया। और जब वो वहाँ पहुँचा, उसे बताया कि उस पर उसकी संपत्ति थी, उसे अभी भी उसके लिए एक सामान्य पत्नी बनकर रहना होगा, अन्यथा वो बता देगा। और जब वो वहाँ पर थी, उसने एक अच्छे मसीही पुरुष से विवाह किया था और कहा कि यदि उसने नहीं किया तो वह सारी चीज का भांडा फोड़ देगा। उसे धमकाने लगा, इसलिए उसे दोनों पुरुषों के साथ रहना था जो उसने गलत किया, बजाय इसके कि आरंभ में अपने रंग दिखाए। और उसकी एक बच्ची थी, और अब लड़की लगभग 18 वर्ष की है और नहीं जानती कि उनमें से कौन वास्तव में उसका पिता है। अब वो रजोनिवृत्ति में आती है और यह उसके साथ पाया गया है। अब वो क्या कर सकती है? मैंने कहा, वहाँ केवल एक ही। उसने कहा, यदि मैं अपने पति को बताऊंगी तो वह मुझे छोड़ देगा, और यदि मैं मेरी बेटी यह जान जाती है तो वह आत्महत्या कर लेगी। और मैंने कहा, यदि आप इस बात को अपने हृदय में रखे रहती हैं तो आप नरक में जाएंगी। अब अपने आप को उसके अनुकूल करें। वहाँ केवल एक ही चीज को करना है, वो है अपनी पटिया को साफ करें। यह बिल्कुल सही है, ईमानदार बने। आप जानते हैं, बहुत सी बार दर्शनों में लोग किस तरह से आते हैं, स्त्रियां और पुरुष, पवित्र आत्मा उन चीजों को खदोड़ता है जो उन्होंने जीवन में की है, और आपने इसके बारे में सुना है और आपने इसे देखा है, आप जानते हैं, समझे, और उन्हें उन चीजों को बताता है जो उन्हें इसे करना है। वे कहते हैं, ठीक है, मैंने इसे पहले ही प्रभु के साथ ठीक कर लिया है, लेकिन आप इसके कर्जदार हैं कि अपने पति या अपनी पत्नी के लिए कि जाकर उन्हें बताएं। यह सही है, आपको इसे अंगीकार करना चाहिए। अब यह व्यक्ति, यदि यही वो एक है जो दोषी है, उसने ऐसा किया है, तो वह अपने पति के पास जाती है। अब आपने अपने आप को साफ कर लिया है बहन, क्योंकि बीच आपने अपने पति के विरुद्ध व्यभिचार किया है। आप अपने पति के पास गई और अपने आप को अपने पति के लिए साफ किया, उसके बाद आप उस पुरुष और पति के पास गई और वहाँ अपने आप को साफ किया। आप साफ हैं। यदि आपका पति अब भी आपके साथ रहना चाहता है तो यह उस पर निर्भर करता है, उसे अब ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि वह आपके साथ रहना चाहता है और वो आपको क्षमा करता है, तो फिर आप ऐसी महिला बने कि फिर कभी भी इस तरह की चीज के लिए दोषी ना हो। लेकिन यदि वो आपको क्षमा नहीं करता है तो यह उसका खुद का मामला है, वह आपको दूर कर सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन अब वो पुरुष जिसके साथ आपका संबंध था, अब उसे ही अपनी पत्नी के पास जाना होगा और अपनी पत्नी को लेकर और आपके पास वापस आना है। आपने अपनी तरफ से काम को किया है, अब यह उसका समय है कि अपने भूमिका को करे, समझे। दूसरा पक्ष, इस स्त्री का पुरुष के साथ संबंध था और उसने अपने पति को लिया, इसे अंगीकार किया और उस पुरुष के पास जाकर और इसे अंगीकार किया और इसे ठीक किया। अब अगला व्यक्ति भी एक विवाहित पुरुष था, अब उसे अपनी पत्नी के पास जाना है और पत्नी को लेकर और इस पत्नी के पास वापस आना है, तब यह ठीक बात होती है। देखा मेरा क्या मतलब है, तब यह बात बनती है। लेकिन इसके बाहर आप फिर भी दोषी होंगे और वहाँ आपके हृदय में आप दोषी होंगे। ज्यादा समय नहीं हुआ, मेरे पास एक महिला आई थी जो पहले विश्व युद्ध के बाद से थी, और उसने कहा, ओ भाई ब्रैनम, उसने मनोचिकित्सकों और हर चीज पर सैकड़ों डॉलर खर्च कर दिए थे। मैं वहाँ बैठा हुआ था, उसे उस कमरे में देख रहा था। मेडा ने उसे वहाँ ऊपर लाया। वो वहाँ बैठी हुई थी, अपने हाथों से रुमाल को इस तरह से मरोड़ रही थी। कहा, मुझे लगता है कि संसार फटने जा रहा है, और मैं इस तरह से, मैं बस वहाँ पर बैठा रहा। मैंने कहा, अब इस विषय में कुछ तो है आपके जीवन में, कहीं पर कुछ तो है। नहीं, मैं संडे स्कूल की शिक्षिका हूँ। मैंने कहा, तो ठीक है। वहाँ थोड़ी देर तक बैठा रहा और देखता रहा। मैंने कहा, मैं एक छोटी हरी कार को देखता हूँ, और आप एक सुनहरे बाल वाले व्यक्ति के साथ हैं, और एक ट्रेन लगभग कार को टक्कर मार देती है। उसने कहा, आप किसी को यह मत बताना। मैंने कहा, आपके पति उस समय पर सेना में थे। वो रोने लगी, उछल पड़ी। आप यह किसी से मत कहना। देखा, यह उसके अवचेतन मन में था। उसने कहा, मैंने इसे बहुत पहले परमेश्वर के सामने अंगीकार किया है। मैंने कहा, लेकिन एक मिनट रुकना, आपने कभी भी परमेश्वर के विरोध में गलत नहीं किया। आपने अपने विवाह की शपथ के विरुद्ध गलत किया है। आपको अपने पति के पास वापस जाना होगा, और पहले इसे ठीक करना होगा। उसने कहा, वो मुझे छोड़ देगा। मैंने कहा, जो भी है, परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, सो अब आप किसे छोड़ना चाहती हैं? मैंने कहा, उसके पास जाओ। और उसने कहा, ओ, मैं, वो ऐसा करेगा, और मेरे दो बच्चे हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ, मनोचिकित्सक ने इस बात को आप में से कभी भी बाहर नहीं निकाला, लेकिन पवित्र आत्मा ने प्रकट किया है, और मैंने आपको अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उसने कहा, ये बिल्कुल सही है। कहा, ठीक है, मैं उसे नहीं बता सकती। मैंने कहा, ठीक है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं दूसरे कमरे में चला गया, और वो वहाँ वापस आ गई। मेडा ने कहा, वो आपको फिर से वहाँ पर चाहती है। मैं वहाँ गया और मैंने कहा, आप क्या चाहती हैं? और उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं अपने पति को यह नहीं बता सकती। मैंने कहा, आपका पति एक काले बाल वाला व्यक्ति है। जी हाँ, मैंने कहा, उसके पास भी आपके लिए अंगीकार करने के लिए वही बात है। उसने कहा, ओह, मेरा पति नहीं। मैंने कहा, अच्छा होगा कि आप जाकर और उसे यहाँ पर ले आओ। मैंने कहा, क्या आप एक फलाना महिला को जानती हैं जो गुलाबी रंग की पोशाक पहनती है, जो एक किसी प्रकार की ऑटोमोबाइल कंपनी के कार्यालय में काम करती है? उसने कहा, निश्चय ही। मैंने कहा, क्या वे उसे एक फलाना नाम से नहीं बुलाते हैं? जी हाँ। मैंने कहा, दो सप्ताह पहले वे एक बीच के पेड़ के नीचे बैठे थे, एक छोटी भूरे रंग की शेवरले कार में बैठे हुए थे, लाइसेंस नंबर फलाना और फलाना के साथ, और वे उसी गलत कार्य में थे। उसने कहा, मेरा पति नहीं। मैंने कहा, तो ठीक है, आप जाकर उसे लेकर और यहाँ आओ। वो चली गई। कुछ मिनट में यहाँ वे वापस आए। उसने कहा, ये सत्य है। मैंने कहा, आप समझे? अब जाकर परमेश्वर को बताओ। लेकिन पहले जब आप वेदी पर आते हैं और याद करते हैं कि वहाँ पर होना चाहिए, तो पहले जाकर और इसे ठीक करें। और जब तक ये दूसरा पक्ष अपनी पत्नी को नहीं बताने का दोषी होता है, इस पत्नी ने खुद को साफ किया है। अब यह उसके और उसके पति पर निर्भर करता है, लेकिन इस दूसरे पुरुष और उसकी पत्नी को इसमें साफ होना होगा। और आप नहीं कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। ये आपको तब तक परेशान करेगा जब तक आप जीवित रहते हैं, जब तक आप इसे साफ नहीं करते। इसे करने का केवल एक ही तरीका है, इसे अंगीकार करें। यदि यह आपकी खाल को उतार देता है, तो कुछ भी हो, इसे करें, सच्चाई को बताएं, तब आपने इसे ठीक कर लिया है। आमीन। मैं टेप पर बहुत से यह कहते हुए सुन सकता हूँ, यह गलत है, लेकिन आप बस इसे एक बार कोशिश करें और देखें कि क्या ऐसा नहीं है। तो ठीक है, रविवार की सुबह के लिए प्रश्न, क्षमा करें, यह इस समय है, लेकिन पवित्र आत्मा को पाने के समय में या पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में क्या कोई अंतर है? क्या एक व्यक्ति अन्य भाषा में बोलता है? यदि हमेशा नहीं, तो कौन से प्रकटीकरण से जाना जाता है? तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ एक बच्चे को जन्म दे रही है और वो इसे नहीं जानती है? उसे यह जानने के लिए बेसुध होना होगा। ना ही आप इसे जाने बिना पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। आपके अंदर कुछ तो बात जगह लेती है, समझे? वहाँ कुछ तो है जो आपको बदल देता है। आपकी सारी पद्धति, आपकी सारी आत्मिक पद्धति फिर से नई हो जाती है, और आप मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं, जैसा कि बाइबल इसे बताती है। मसीह में एक नई सृष्टि, आप इसे जानते हैं। अब आप कहते हैं भाई ब्रैनम, तब आप विश्वास नहीं करते कि मनुष्य को अन्य जुबान में बोलना चाहिए पवित्र आत्मा को पाने के लिए, ना ही यह साबित करने के लिए कि उसके पास पवित्र आत्मा है। मैं तो यह चाहूंगा कि मेरी कलीसिया का हर एक सदस्य अन्य जुबान में बोले। मैं चाहूंगा कि वे ऐसा करें। और यदि मैं विश्वास करता हूँ, यदि आप परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर आपको इसे प्रदान करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो अन्य भाषाएं बोलते हैं और जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, और ऐसा कोई भी सेवक नहीं है जो अपने और अपनी कलीसिया के प्रति सच्चा हो। लेकिन अपनी कलीसिया को भी यही बताए, शैतान इसकी नकल कर सकता है। पौलुस ने कहा, यदि मैं मनुष्यों और सर्वदूतों की बोलियां बोलूं, भले ही मैं अपनी देह को बलिदान की नाई जलाने के लिए दे दूं, भले ही मैं वचन के सारे भेदों को समझता हूं, चाहे मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दूं और ये सारी चीजें करूं, और मेरे पास दैविक प्रेम नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे विश्वास है कि मैं पहाड़ों और इत्यादि को हटा सकता हूं, मैं अब भी कुछ भी नहीं हूं। तब उसने कहा, जो कुछ अधूरा है वो समाप्त हो जाएगा, जब वो जो सिद्ध है आता है, या जब वह जो सिद्ध है प्रकट हो जाता है। अब मेरे पास इस पर एक प्रश्न है। मैं आशा करता हूं कि आज रात्रि मैं इस विषय को ले पाऊंगा कि क्या हुआ जब मोहरे खुल गई, और मैं सोचता हूं कि हो सकता है ये आपके लिए इस प्रश्न पर सही उत्तर मिल जाए। प्रश्न, भाई ब्रैनम, हम क्या करें? मेरे ऊपर कुछ तो बात आकर बैठ गई है जिसमें से मैं निकल नहीं सकता। पिछली शरद ऋतु में मैंने सपना देखा कि मैं सफेद रेत में खो गया था, अंधकार होता जा रहा था, मैं अपना मार्ग नहीं ढूंढ पाया। यह स्वप्न मेरे साथ पिछले शरद ऋतु के समय से बना हुआ है। अब मैं एक अंधकार में टटोलने वाले के समान हूँ। मेरा पुत्र E.R.V. इरविन और पत्नी मेरे सपने में सम्मिलित थे, अब वे भी अंधकार में है।
हम निराशा में हैं।
मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको दिखाएगा कि हमारे हृदय में अब क्या है। श्रीमती ओ, तो ठीक है, यदि हम गलत या पाप में स्थानों पर हैं, तो हमें बताएं, हम सही होना चाहते हैं। मैं उस महिला को नहीं जानता, लेकिन मैं बस यह महसूस करता हूं कि यदि आप यहां हैं, महिला, यहां आपकी परेशानी है, आपने अपने साथ कुछ ऐसा होने दिया है जिससे आप परेशान हो गए हैं, क्योंकि सफेद रेत में होना पवित्रता और धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है, और आप बस शैतान को अपने ऊपर कुछ डालने दे रहे हैं। आपके सपने ने साबित किया कि वहां कुछ भी गलत नहीं है, आप केवल परेशान हैं, और ऐसा करने के द्वारा और यह सोचकर आप अपने परिवार के बाकी लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसा करना बंद करें, परमेश्वर के दिए गए आपके अधिकारों का दावा करें। आपका सपना अनुवाद के द्वारा साबित करता है कि आप सफेद रेत में हैं, सब कुछ ठीक है, यह आप ही हैं। आप अपने आप में परेशान हैं, और आप परिवार के एक सदस्य को परेशान होने दे रहे हैं। यह परेशानी अगले सदस्य के पास जाती है, और अगले सदस्य के पास जाती है, और पहली चीज जो आप सब कोलाहल मचा रहे हैं, और यह आगे बढ़ती जा रही है, और परिवार का एक सदस्य किसी बात को लेकर परेशान हो जाता है, तो यह दूसरे को परेशान कर देता है, और यह दूसरे को, और वो दूसरे को। पहली बात आप जानते हैं कि पूरा परिवार परेशान होता है, यह शैतान है। तब यदि परिवार का एक सदस्य आनंद करता है, तो बाकी के लोग भी इसके साथ आनंद करते हैं। इसलिए परिवार का हर एक जन ऐसा करने का यत्न करता है। कोशिश करें, आप में से हर एक संतान अपने पिता की, माँ की सहायता करें। माँ, आप, पिता, आप बच्चों की सहायता करने की कोशिश करें। उस उदासी की, अविश्वास की आत्मा को अपने आसपास न आने दें। आप मसीही लोग हैं, आप परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं, आप धरती के नमक हैं, आपके पास परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है। और बाइबल ने कहा, यदि कोई स्तुति हो, यदि वहाँ कोई सद्गुण हो, तो इन बातों पर सोचें, गलत चीज के बारे में ना सोचें। और बहन, मैं सोचता हूँ कि यही आपकी परेशानी है। प्रिय बहन, मैं उस बात पर लंबे समय तक बना रह सकता था, लेकिन जो मैंने वायदा किया था उसके अनुसार बस 20 मिनट, और मैं इनमें से बहुतों के प्रश्न को लेना चाहता हूँ। यदि ऐसा नहीं होता है, तो इसे वापस मेज पर रख दें और मैं इसे फिर से ले लूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ब्रैनम वो मनुष्य का पुत्र है। मैंने सोचा कि अग्नि का स्तंभ वो मनुष्य का पुत्र था। क्या मैं गलत हूँ? तो यह एक अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। लेकिन मैं वो मनुष्य का पुत्र नहीं हूँ, लेकिन एक मनुष्य का पुत्र हूँ। वहाँ पर काफी अंतर है। यीशु मसीह वो मनुष्य का पुत्र था, वो परमेश्वर का पुत्र, वो मनुष्य का पुत्र, वो दाऊद का पुत्र था। अब वो कारण जो सवाल शायद पूछा गया था इस व्यक्ति से या कहा गया था, क्योंकि लोग मुझे एक नबी के समान मानते हैं, जो मैंने कभी भी नहीं। मेरे पास यहाँ पर एक प्रश्न है जो बस उस बात पर मेरी आलोचना कर रहा है, देखा। लेकिन मैं आप जब इन प्रश्नों को पढ़ता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं चीजों का उत्तर इस तरह से क्यों देता हूँ। जब तक मैं निश्चित रूप से कुछ करने के लिए अगुवाई महसूस नहीं करता, समझे, तब मैं वही कहूँगा कि मुझे जो कहना चाहिए, परंतु वो घड़ी अभी तक नहीं आई है। इसलिए मैं वो मनुष्य का अभिषेकित पुत्र नहीं हूँ। मैं उसका भविष्यवक्ता होने का दावा नहीं करता। बहुत सी बार मैंने इसे कहा है, जबकि मैंने नहीं सोचा कि मैंने इसे कहा है। बाद में इस बात को मैं खुद टेप पर सुनता हूँ, लेकिन मैं इसे कभी कभी कहता हूँ, क्योंकि यदि आप इसे शब्दावली में बताना चाहते हैं, तो एक भविष्यवक्ता अंग्रेजी शब्दावली में सरल रीति से एक प्रचारक होता है। कोई भी ये जानता है, शब्दकोश में देखें, समझे। एक भविष्यवक्ता अंग्रेजी शब्दकोश के अंदर एक प्रचारक होता है, लेकिन इब्रानी या यूनानी के अंदर एक भविष्यवक्ता एक नबी है, जो चीजों को पहले से देखता है और चीजों को पहले से बताता है। लेकिन अंग्रेजी अनुवाद के अंदर एक भविष्यवक्ता एक नबी होता है। इसलिए मैं अपने आप को आपके भाई के अलावा कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आपका भाई हूँ और आप बस मुझे भाई बिल या भाई ब्रैनम के समान माने, या जो कुछ भी आप इसके बारे में कहना चाहते हैं, यह अच्छा है, यह बढ़िया है। आप जो भी विश्वास करते हैं उसे अपने तक ही सीमित रखें, आप समझे। और अब वो दूसरा प्रश्न क्या था? मैं इसमें इतना तनाव युक्त हो गया, मैं भूल गया कि चीजें क्या थी। उनमें से एक था, क्या मैं वो मनुष्य का पुत्र था? और यहाँ पर है, मैं सोचता हूँ, वो मनुष्य का पुत्र या अग्नि का स्तंभ वो मनुष्य का पुत्र था? नहीं, अग्नि का स्तंभ वो अभिषेक है। अग्नि का स्तंभ, अब यह थोड़ा गहरा हो सकता है, जब तक कि यह आप में से कोई धर्म ज्ञानी न हो। डॉक्टर वाइल शायद भाई यहाँ पर हैं, और इनमें से कुछ सेवक यहाँ अरकनसास से हैं, और मेरे आसपास के अच्छे मित्र वे शायद जानते होंगे। अब वो अग्नि का स्तंभ वो लोगोस है, जो परमेश्वर में से निकला। वो लोगोस जो कि वास्तव में परमेश्वर की परिपूर्णता का गुण है। जब परमेश्वर एक आकार के अंदर रूप लेता है, जहाँ इसे देखा जा सकता है, यह उस महान आत्मा का अभिषेक था जो आगे चला गया, अपने स्तर से नीचे आते हुए नीचे आ रहा है। परमेश्वर वो पिता लोगोस जो इज़राइल के ऊपर था, कि वो पवित्र था, पाप को सहन नहीं कर सकता था, वहाँ ठीक अदन में लहू के बलिदान को होना था, तब वह लोगोस देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और जहाँ ये लोगोस मनुष्य के देह में रहता था, जो कि बलिदान था। जब मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था, और उसके बाद परमेश्वर मनुष्य के स्वरूप में मनुष्य को छुड़ाने के लिए नीचे उतर आया, जिसने मनुष्य और परमेश्वर को एक साथ लाया, आकाश और धरती ने एक दूसरे को गले लगाया और चूमा। परमेश्वर और मनुष्य ने एक दूसरे को पितृत्व और पुत्रत्व के रूप में गले लगाया, जब लोगोस देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यीशु ने कहा, मैं परमेश्वर से आया हूँ और मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। क्या यह सही है? उसकी मृत्यु, दफनाए जाने, पुनरुत्थान और स्वर्ग रोहण के बाद, जब देह को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठने के लिए ऊपर उठाया गया था। अब मेरा मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ है, परमेश्वर तो एक आत्मा है, लेकिन दाहिने हाथ पर का अर्थ है परमेश्वर की सामर्थ और अधिकार में, कि उस नाम में जो कुछ भी स्वर्ग में है उसका नाम इसके नाम पर रखा गया है और इसके अधीन है। धरती पर हर एक चीज का नाम इसके नाम पर रखा गया है और इसके अधीन है। एक नाम जो सब नामों से ऊपर है, यीशु मसीह। अब ये लोगोस जो उसमें था, जो कि परमेश्वर का आत्मा था, वो अभिषेक लहू के पवित्रीकरण के अनुग्रह में से होते हुए बहुत से पुत्रों को परमेश्वर के पास लाया गया, जो इसी लोगोस से अभिषिक्त है। अब पेंटिकॉस्ट के दिन पर यह नीचे उतर आया, वो अग्नि का स्तंभ, और इस तरह से भाग में बढ़ गया, और उनमें से हरेक के ऊपर आग की जीभें आ ठहरी, ना ही उनकी जीभें, लेकिन उनमें से हरेक पर आग की जीभें आ ठहरी थी। एक चुना हुआ झुंड इस अग्नि स्तंभ के द्वारा पहचाना गया, दिखा रहा था कि परमेश्वर ने खुद को मनुष्य में विभाजित कर दिया था। क्या आप इसे समझ गए? परमेश्वर वो लोगों स्वयं को मनुष्य में विभाजित कर रहा है। परमेश्वर ना ही एक व्यक्ति में, वह अपनी कलीसिया में विश्वव्यापी है। यही कारण है कि यीशु ने कहा, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, बढ़कर। अब मैं जानता हूँ कि किंग जेम्स कहता है और बढ़कर, लेकिन वहाँ सही अनुवाद है, इससे भी अधिक तुम करोगे। परमेश्वर बोतल बंद था और एक मनुष्य यीशु मसीह में सीमित था, लेकिन अब वह बोतल बंद है और जीवित परमेश्वर की सारी विश्वव्यापी कलीसिया में सीमित है। ठीक अभी जबकि परमेश्वर यहाँ हमारे साथ हमारे हृदय में बोल रहा है, वो अफ्रीका में है, वो एशिया में है, वो यूरोप में है, वो इंग्लैंड में है, जहाँ कहीं भी विश्वासी लोग एकत्र होते हैं वहाँ वो उनके बीच में होता है। अब उसकी मृत्यु, दफनाए जाने और स्वर्गरोहण और पवित्र आत्मा के आगमन के बाद पौलुस अपने रास्ते पर था, जो कि शाउल था, दशमिश की ओर जा रहा था। वो आग के स्तंभ उस लोगोस के द्वारा नीचे गिरा दिया गया था, और उस यहूदी ने उस अग्नि स्तंभ को कभी भी प्रभु नहीं कहा होगा, जब तक वह नहीं जान गया कि यह वही लोगोस था जिसका उसके लोगों ने जंगल में से होते हुए अनुकरण किया था। देखा, अब वो मनुष्य का पुत्र नहीं था, यह वो लोगोस था। अब हम इसे आदर और प्रेम और श्रद्धा के साथ कहते हैं। देखा, जैसे यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, और यह भी कि अंत के दिनों में, जैसा कि यह लूत के समय से पहले था, या लूत के समय में सदोम में था, ऐसा ही उस दिन में होगा जब मनुष्य का पुत्र अपने आप को फिर से प्रकट करता है, अपने आप को जाहिर करते हुए। अब इन अंतिम दिनों में लोगोस जो यीशु पर था, जो कि वो वहाँ से वापस फिर से अग्नि का स्तंभ बन गया है, और धरती पर नीचे उतर आया है। मैं कुछ कहने जा रहा था, लेकिन मैं टेप को देखता हूँ। वे इसका विश्वास नहीं करेंगे, यदि आप उन्हें यह बताएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग इसका विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन इसके लिए नीचे आ गया है, जैसे एक छानबीन करने वाला न्याय हो रहा होता है। और अब यह महान अग्नि स्तंभ, जो यहाँ तक पूरी तरह से वैज्ञानिक कैमरों के द्वारा भी पहचाना गया है, जो आज यहाँ धरती पर है, वहाँ पर इसकी तस्वीर टंगी हुई है। मैं विश्वास करता हूँ कि यह अब भी वहाँ पर है। क्या यह सही नहीं है? क्या यह वहाँ है? हमारे पास जो सबसे अच्छा है, उसके द्वारा वैज्ञानिक रूप से साबित किया गया है। जॉर्ज जे लेसी एफबीआई के उंगलियों के निशान और दस्तावेजों के लिए प्रमुख हैं, कहा, मैं इसे स्वयं मनोविज्ञान कहता हूँ, आदरणीय ब्रनम, लेकिन कहा, प्रकाश लेंस पर पड़ता है। इसे मैंने अल्ट्रा किरण के प्रकाश के नीचे रखा और 4 या 5 दिनों के लिए यहाँ एक जांच की थी, और प्रकाश लेंस पर पड़ा था, और यह लेंस मनोविज्ञान चीज को नहीं लेगा, अब यही पहचान को देता है। तब इसके कार्यों को देखें, यह हमारे बीच उसी यीशु को साबित करता है, जो एक समय फिलिस्तीन में रहा था, वही आत्मा उस पर था, जो एक देह में से होते हुए ऊपर आया है, यहाँ तक कि यह फिर से सिरत्व में वापस आया है, जो कि वह जल्द ही देह को दावा करने के लिए आ रहा है। आमीन, सिर देह में आ रहा है। आपने इसे समझा? यह परमेश्वर का पुत्र होगा, वो मनुष्य का पुत्र, वो दाऊद का पुत्र, वो मैं हूँ, शारोन का गुलाब, सोसन का फूल, भोर का तारा है। मैं वो नहीं हूँ, मैं तो उसका सेवक हूँ। और अग्नि का खंभा, ये वो नहीं है, ये आत्मा के रूप में है। देखा, जो मनुष्य के पुत्र पर था, और अब मनुष्य के पुत्रों का अभिषेक करने के लिए आया है, ताकि एक सेवकाई को वापस लाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कहा यह होगा, जिससे कि सिर और बाकी का शरीर एक साथ जुड़ सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हनोक ने पिरामिड बनाया था और हम उस पिरामिड में पाते हैं, उन्होंने इस पर कभी भी चोटी का पत्थर नहीं लगाया। क्यों? चोटी का पत्थर अभी आना बाकी है। 7 सीढ़ियां जो पिरामिड में हैं, हम किसी दिन इसमें से होकर जाएंगे। और मैं आपको केवल यह दिखाना चाहता हूं कि यह वास्तव में वचन के साथ कैसे सिद्ध रूप में है। और अब यदि आप अपने अमेरिकी डॉलर के नोट पर ध्यान दें, वो महान चोटी का पत्थर, एक आंख बताती है महान मोहर, यह आएगा। और उन पत्थरों पर ध्यान दें, क्या यहाँ कोई है जो मिस्र के पिरामिडों पर कभी गया है? तो ठीक है, यदि आप ध्यान देंगे, जी हाँ, यहाँ वहाँ हाथ उठा हुआ है जो वहाँ पीछे है, तो ठीक है, वे पत्थर वहाँ इतने सिद्ध रूप से रखे हुए हैं। और वो चोटी जहाँ इसके सबसे ऊपरी भाग में गुबंद की तरह होता है, जब वो पत्थर आता है तो यह एक महान हीरे की तरह होगा जो बिल्कुल इसके साथ फिट या सही से बैठेगा। अब वो पत्थर वहाँ सतह की बुनियाद पर फिट या सही से नहीं बैठता है, ना ही ये दूसरी बुनियाद पर फिट बैठेगा, ना ही तीसरी बुनियाद पर, या केवल ऊपर की बुनियाद पर फिट बैठेगा जब पूरा भवन पत्थर से फिट बैठ जाएगा। और यीशु नहीं आ सकता जब तक कलीसिया, विश्वासियों की देह और सेवकाई जो उसने एक बार छोड़ दिया था, तब वैसी ही होगी जैसी ये तब थी। और फिर ये लाता है, वे हमारे बिना सिद्ध नहीं बन सकते। पौलुस ने कहा इब्रानियों 11 में, हमारे बिना भी सिद्ध नहीं हो सकते। उनके पास अवश्य ही यह सेवकाई होनी चाहिए ताकि लूथरन, वेस्ली और उन सभी को जो उनके युगों में से होते हुए आए हैं, उन्हें जिलाए। जब यह आता है, जब वो भाग जहाँ उकाब इकट्ठा होते हैं, बस जैसे कि जहाँ लोत है वहाँ उकाब इकट्ठा हो जाएंगे। प्रश्न थे, ओह यह बिल्कुल सही है। मैं आशा करता हूँ कि इसने प्रश्न का उत्तर दिया है। भाई ब्रैनम, क्या शैतान अन्य भाषा या भविष्यवाणी के दान का उपयोग उस व्यक्ति में कर सकता है जिसके पास पवित्र आत्मा है? यह एक अच्छा प्रश्न है, क्या नहीं है? जी हाँ श्रीमान, यदि इसे बहुत ही नजदीक से देखा जाना चाहिए। यदि आप पहला कुरिन्थियों 14:29 में ध्यान देंगे, आप जो इसे लिखना चाहते हैं, समझे, वो व्यक्ति जिसने इसे लिखा है उनके नाम पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया है, उन्होंने बस लिखा है परमेश्वर आपको आशीष दे, समझे। पहला कुरिन्थियों 14:29 में हम पाते हैं कि कलीसिया में किसी भी दान को पहले जांचा जाना है, समझे। आपको देखना होगा क्योंकि दुष्ट आत्माएं अंदर चली आती हैं, क्योंकि याद रखना, बारिश धर्मी और अधर्मी दोनों पर गिरती है। वही वर्षा जो गेहूं को पकने के लिए भेजी गई थी, जंगली घास को भी पकाती है, वही पानी। कितने लोग ये जानते हैं? अब इससे आपके लिए सर्प का वंश स्पष्ट हो जाना चाहिए, तब यह पुत्र कैसे आया। मैं इसमें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इससे पहले कि मेरा समय समाप्त हो जाए, लेकिन मैं इसे नहीं कर सकता। सो कैसे वो पुत्र सर्प वंश के विषय में था? देखा, परमेश्वर के पास एक व्यवस्था है। अब इस पर जीवन की आत्मा की इस व्यवस्था में आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि शैतान अंदर आ जाता है। और पौलुस, जब किसी पर किसी चीज को प्रकट किया जाता था, इससे पहले कि इसे कलीसिया के सामने बताया जा सके, इसमें कम से कम 2 या 3 जांच करने वाले होने चाहिए। अब यहाँ भी मैं इस बात को बाहर ला सकता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं नहीं सोचता कि मेरा भाई आज रात यहाँ पर है, लेकिन किसी ने किसी का आराधनालय को छोड़ने पर मजाक उड़ाया और जो भाई जूनियर जैक्सन के पास कलीसिया के लिए चला गया, कहा वे मरे हुए पक्षियों के बीच में चले गए हैं। क्या आपको इस तरह की टिप्पणी करने में शर्म नहीं आती? आप जो कोई भी हैं, यदि आप या मसीह में मेरे बच्चे हैं, तो मुझे आपसे लज्जा आती है। इस तरह की बात ना करें। जूनियर जैक्सन मेरा भाई है, डॉन रुडेल मेरा भाई है, तो ठीक है। इसका कारण, क्योंकि जब मैं यहाँ कलीसिया को किसी एक व्यवस्था में व्यवस्थित करता हूँ, जब मैं वापस आता हूँ यह देखने के लिए कि क्या मुझे वे दान के प्रकटीकरण मिल सकते हैं, उनमें से आधे इससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब आप बोलना आरंभ करते हैं या प्रचार करना या कुछ, तो यह ऐसे स्थान पर आ रहा था कि आप मुश्किल से प्रचार कर सकते हैं, जब तक कि कोई तो अन्य जुबान में नहीं बोलता है, कोई अनुवाद करता है, कोई अनुवाद को देता है, और इसका आधा भी कभी पूरा नहीं हुआ। अब मैं अन्य जुबान में बोलने में विश्वास करता हूँ, मैं अनुवाद करने में विश्वास करता हूँ, लेकिन ये सीधे सीधे कलीसिया के लिए कुछ तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु जल्द ही आ रहा है या कुछ, तो जो कि ठीक है, लेकिन व्यर्थ दोहराव का उपयोग ना करें। यीशु ने कहा जैसे मूर्ति पूजा करते हैं। यह कुछ तो होना चाहिए, जाकर फलाना और फलाना भाई को बताओ कि उसने एक फलाना काम को किया है, और लेने के लिए इसलिए जाकर भाई बहन फलाना और फलाना को बताओ, जब उसने उस दिन वहाँ पर एक किसी काम को किया, उसने अपने पति की व्यवस्था का उल्लंघन किया, उसने अपने पति की विवाह की प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया। जब तक वो इसे ठीक नहीं कर लेती, पवित्र आत्मा उसे काट कर निकाल देगा। वहाँ आपके पास यहोवा यो कहता है, होता है। फिर उस पाप को अंदर ले आते हैं। यही है जब हमारे पास एक कलीसिया थी, जैसे कि यह तब था जब हनन्याह और सफीरा अंदर आ गए थे, तब हमारे पास एक कलीसिया थी जो मजबूत खड़ी थी। आप कहते हैं भाई ब्रैनम, एक व्यक्ति, मैंने उसे यह बताया, उसने कहा, खैर आप हमें उस स्थान पर बहुत अधिक रखते हो। मैंने कहा, क्या मैं वहाँ उन अजनबी लोगों के लिए नहीं हूँ जिन्हें मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे अपने परमेश्वर में विश्वास और भरोसा है जिसने मुझे ऐसा करने के लिए भेजा है, और यह कभी भी एक बार भी गलत नहीं हुआ है, या ये कभी भी गलत नहीं होगा जब तक ये परमेश्वर है। यह सही बात है, ना ही अन्य जुबान में बोलना और इस तरह की चीजों को। मैं विश्वास करता हूँ कि वे अन्य जुबान में बोलना और लोग जिनके पास वे दान हैं, यदि वे वास्तव में सच्चे मसीही हैं और इसमें रुचि को रखते हैं, तो वे आपस में एक साथ मिलेंगे, क्योंकि और उनके अन्य जुबान और अनुवाद को करें और देखें कि वे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। उनके पास उनकी खुद की एक सेवकाई होती है, लेकिन यह यहाँ श्रोतागण के बीच में नहीं होती है, जहाँ पर उन पापियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, और आदि आदि। बाइबल ने कहा, वे कहेंगे कि तुम अनपढ़ हो। कभी कभी वे इसके साथ इतने अनादर पूर्व होते हैं और इत्यादि। ना ही हमारे झुंड के पास था, लेकिन मैंने उन्हें थोड़ी देर आगे जाने दिया। मैंने कहा, इसे देखो। अब मैंने भाइयों को बताया, यहाँ पर गवाह लोग हैं जो इसे जानते हैं। मैंने कहा, इसे ऐसे ही छोड़ दो, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि यह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। यदि यह ताड़ना को सहन नहीं कर सकता है, तो यह एक नाजायज बालक है। ठीक यही है जो बाइबल ने कहा। और जब ताड़ना आई तो क्या हुआ? क्या मैंने आपको यह बहुत पहले बताया था? समझे, यहाँ पास्टर से पूछो। उसने कहा, इसके और उसके बारे में क्या? मैंने कहा, बस इसे ऐसे ही छोड़ दो, वे छोटे बालक हैं, हम इसका न्याय नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, जब यह वास्तव में वचन पर स्पष्ट व्याख्या करने की बात आती है। अब भाई जूनियर जैक्सन को इससे असहमत होने का अधिकार था। वह चाहता है उसकी कलीसिया सभी लोग अन्य जुबान के साथ बोलना और श्रोतागण में बोलना चाहते हैं। यही भाई जूनियर जैक्सन की परेशानी है, यह उस पर निर्भर करता है। लेकिन जूनियर जैक्सन इस संदेश को उतना ही विश्वास करता है जितना हम में से कोई भी करता है। वो हम में से एक है, और यह वहाँ पर जाना मरे हुए पक्षी नहीं होता है। जूनियर जैक्सन परमेश्वर का जन है, जिसे मैं अपने पूरे हृदय से प्रेम करता हूँ, और वो आज रात यहाँ नहीं है, इसलिए मैं वास्तव में इसे उस तरह से बोल सकता हूँ जिस तरह से मैं चाहता हूँ। और डॉन रुडेल, मैं नहीं सोचता कि आज रात डॉन यहाँ पर है, क्योंकि उनके पास उनकी खुद की कलीसिया है। लेकिन यदि मैंने देखा है कि हर एक व्यक्ति जो इस आराधनालय में आता है, बाहर जाकर और डॉन डुडेल के पास जाता है, या भाई के टी पार्नेल के पास, या भाई इनमें से किसी भी भाई के पास जाता है जो यहाँ पर हमारे भाई लोग हैं और राज्य के नागरिक जन हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं नहीं जानता कि क्या करना है। मैं कहूँगा, प्रभु इसे फिर से भर दे, इसे उंडेल देना और एक और जन को भर देना। मैं इसे पसंद करूंगा, मैं उन लड़कों को देखना पसंद करूंगा, वे मेरे ही बच्चे हैं। अब जेटी या उनमें से किसी भी बाकी को विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैं करता हूं। उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मैंने आज सुबह आपको बताया है। मैं यहाँ तक अपनी पत्नी से भी सहमत नहीं होता हूँ, या वो मुझसे सहमत नहीं होती है। क्या हो यदि मैं मेज पर जाऊं और जूनियर को एप्पल पाई मिलती है और मुझे चेरी पाई मिलती है? भाई, हम दोनों ही पाई को खा रहे हैं, हम इस बात से सहमत होंगे। लेकिन और हम दोनों एक ही सुसमाचार को प्रचार करते हैं, उसकी कलीसिया का अनुशासन। आप जानते हैं, पतरस और पौलुस के बीच मतभेद थे, ना ही उनके सिद्धांतों में, लेकिन जिस तरह से पतरस अपने आप में व्यवहार कर रहा था, उनके पास इसमें थोड़ा कुछ अंतर था, लेकिन इसने उन्हें कभी भी अलग नहीं किया। वे भाई भाई थे। क्यों? निश्चय ही हमारे बीच मतभेद होंगे, मतभेद नहीं, मैं असेंबली ऑफ गॉड से असहमत हूँ, मैं उनके सिद्धांतों से असहमत हूँ, लेकिन वहाँ बहुत से असेंबली ऑफ गॉड के लोग हैं जो बहुमूल्य भाई हैं, मैं उनके सिद्धांत से असहमत हूँ, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो बहुमूल्य लोग हैं। मैं सहमत, मैं बैप्टिस्ट से असहमत हूँ, प्रेस्बिटेरियन और उनके सिद्धांतों से, लेकिन वहाँ पर सच्चे मसीही जन हैं। आज दोपहर बाद किसी तरह से मैंने एक टेलीग्राम को उठाया, मैं इससे चुप गया। एक भाई, एक बैप्टिस्ट प्रचारक ने कहा कि वह लंबे समय से प्रयास कर रहा था कि एक ऐसे स्थान पर आए या एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ मनुष्य एक दूसरे का सम्मान करने के बजाय वहाँ परमेश्वर का सम्मान करे। और एक बहुमूल्य भाई जो इस कलीसिया में आता है कहा, मैं आपको ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा। वो यहाँ आने की इच्छा को कर रहा था, वो एक बैप्टिस्ट है। आप देखिए, वे हर कहीं बिखरे हुए हैं। मैं उनके सिद्धांत से सहमत नहीं होऊंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से प्रेम करता हूँ, इसलिए भाइयों के बारे में ऐसा न कहें। अब यहाँ पर इन दानों को ध्यान से देखना होगा, दान नहीं, इसे देखना होगा। शैतान किसी भी दान की नकल कर सकता है। इन बीटल्स को देखें जो अब दिव्य चंगाई की नकल करने जा रहे हैं, गंदे, घिनौने, सड़े हुए, नरक से जन्मे, देखा तो ठीक है। क्या दानियल आग की भट्टी में चौथा व्यक्ति था क्योंकि वो उस युग में भविष्यवक्ता था? नहीं, यह यीशु था, वो चौथा मनुष्य था, परमेश्वर के पुत्र के समान। मैं नहीं सोचता कि यह भविष्यवक्ता था क्योंकि वो सिंहों की मांद में था, लेकिन मैं विश्वास नहीं करूंगा कि आग की भट्टी में दानियल था। मैं शायद ही नहीं, अब आप सही हो सकते हैं, लेकिन तब मेरा विचार बस यही है। भाई ब्रैनम उत्पत्ति 6 और पद 12 में परमेश्वर ने कहा कि सारे प्राणियों ने उसके चाल चलन को भ्रष्ट कर दिया था। क्या यह तलाक और विवाह का उल्लेख करता है? यदि ऐसा है तो क्या यीशु के पास उसी बात का उल्लेख नहीं था जब उसने कहा कि जैसा कि यह नूह के दिनों में था, जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा तो ऐसा ही होगा? मत्ती 24 पद 38 और 39 में, भाई ब्रैनम क्या सहशताब्दी के दौरान कोई भी बालक जन्म लेंगे? हजार वर्ष सहशताब्दी में जो यहाँ धरती पर मसीह का 1000 वर्ष का राज्य होगा, या वहाँ धरती पर कोई चिन्ह होगा, कोई पाप होगा? मुझे क्षमा करें, उस समय के दौरान धरती पर, और क्या उस समय के दौरान धरती पर लोग शारीरिक देह में होंगे? मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से उनमें से होकर जाऊं। अब उत्पत्ति के 6वें अध्याय 12वें पद में परमेश्वर ने कहा कि सारे शरीर भ्रष्ट हो गए थे। जी हाँ, यह विवाह, तलाक और बाकी की हर एक चीज थी। बाइबल ने कहा जैसा कि नूह के दिनों में था, उन्होंने कैसे विवाह किया और उनमें विवाह होते थे और इसी तरह से आदि आदि। यह अंत समय के चिन्हों में से एक चिन्ह है, उन चिन्हों में से केवल एक चिन्ह। अब यदि यही है जो सारा संसार कर रहा था, तो मैं इसे अंत समय का प्रमाण नहीं कह सकता। इससे अधिक मैं अन्य भाषाओं में बोलने को पवित्र आत्मा का प्रमाण नहीं कह सकता। यह सच है कि वहाँ एक समय आना है जब विवाह और तलाक बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे यह नूह के दिनों में था, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सी बातें होती हैं। यह तो चिन्हों में से केवल एक ही चिन्ह है, और अन्य जुबान में बोलना पवित्र आत्मा के चिन्हों में से एक चिन्ह है, लेकिन यह पवित्र आत्मा का एक अचूक चिन्ह नहीं है। केवल स्त्रियों और पुरुषों के विवाह करने और तलाक लेने और फिर से विवाह करने से अधिक नहीं है। केवल यही वो चिन्ह नहीं होगा। यदि वहाँ केवल वही एक था, तो मैं इसे ऐसा नहीं कह सकता। देखा, अन्य चीजों को अन्य जुबान बोलने के साथ जाना और किसी भी अन्य ज्ञान के साथ जाना जिससे कि इसे परमेश्वर बनाए। अब क्या हजार वर्ष के सहशताब्दी राज्य के दौरान बालक जन्म लेंगे? यही प्रश्न मेरे मन में है, जो मैंने आपको एक दिन बताया था। मैं नहीं जानता, यह पूरी तरह से ऐसा दिखाई देता है जैसे यह हो सकता है, या पूरी तरह से ऐसा दिखता है जैसे यह नहीं हो सकता है। मैं आपके साथ उतना ही ईमानदार रहूंगा जितना मैं जानता हूँ कि किस तरह से रहना है। मैं इस समय तक इस बात को नहीं जानता। यदि परमेश्वर कभी इसे प्रकट करता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन रुके रहना, इसे परमेश्वर की ओर से आना है। आप मेरे बच्चे हो, मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं नहीं जानता कि वहाँ ऐसा होगा या वहाँ पर नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता। या उस समय के दौरान धरती पर पाप होगा? नहीं, पृथ्वी पर कोई पाप नहीं होगा, शैतान बंधा हुआ है। और क्या उस समय के दौरान धरती पर लोग शारीरिक देह में होंगे? जी हाँ श्रीमान, हमारे पास ठीक यहाँ धरती पर हमारी महिमावंत देह होंगी, खाते हुए, पीते हुए, घर को बनाते हुए और वैसे ही 1000 वर्षों के लिए जी रहे होंगे जैसे हम अभी कर रहे हैं। यह एक दूल्हा और दुल्हन का हनीमून है। भाई ब्रैनम, मत्ती 12:32 में यीशु का क्या अर्थ था जहां पर यीशु ने कहा, जो कोई भी पवित्र आत्मा के विरोध में एक शब्द भी बोलता है उसे क्षमा नहीं किया जाएगा, न ही इस संसार में न ही आने वाले संसार में। कृपया मेरे लिए वचन के इन पदों को समझाएं, धन्यवाद। और इसमें व्यक्ति का नाम लिखा है, वो एक सेवक है, तो ठीक है। भाई मैं, आप एक धर्म ज्ञानी हैं, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु ने कहा, जो कोई भी पवित्र आत्मा के विरोध में बोलता है उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में इसे बाकी के वचन के साथ समर्थन के लिए, मनुष्य के सब प्रकार के पाप क्षमा किए जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा करना मनुष्य के लिए क्षमा नहीं किया जाएगा। पवित्र आत्मा की निंदा करना इसका मजाक उड़ाना है, इसके बारे में बात करना, उपहास करना, कुछ इसी तरह से करना, यही है जब आप सही और गलत के बीच की रेखा को पार करते हैं। और यदि आप पवित्र आत्मा को देखते हैं, उदाहरण के लिए क्या हो यदि पवित्र आत्मा यहाँ नीचे उतर कर आता है और विचारों को परखता है जैसे यह करता है, और क्या हो यदि यह पवित्र आत्मा होता है और आपने विश्वास नहीं किया कि यह पवित्र आत्मा था, तो आपने बाहर जाकर और इसका मजाक उड़ाया और इसके बारे में बात की। मैं परवाह नहीं करता कि आप जो भी करते हैं आप खत्म हो चुके हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते। यह ठीक वहाँ पर साबित होता है कि आप परमेश्वर के नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का बीज जिस मनुष्य में बना रहता है और वो पाप नहीं कर सकता है। और पाप क्या है? अविश्वास। जब वो वचन को प्रकट होते हुए देखता है तो वो इसका विश्वास करेगा। और वो केवल, देखो वहाँ केवल एक ही पाप है, केवल एक ही पाप, कितने यह जानते हैं, जो कि अविश्वास करना है। यह सही बात है, वे विचार करना कोई पाप नहीं है, सिगरेट पीना, झूठ बोलना, कसम लेना, ये पाप नहीं है, यह तो अविश्वास के गुण हैं। आप इसे करते हैं क्योंकि आप एक विश्वासी नहीं हैं। यह सही है, इसलिए देखिए केवल एक ही पाप है और वो है अविश्वास। वह जो विश्वास नहीं करता वह पहले से ही दोषी ठहराया जा चुका है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है या कुछ भी नहीं करता, वह आरंभ से ही दोषी है, तो ठीक है। भाई ब्रैनम, क्या यह एक अविवाहित युवा के लिए गलत है? नहीं लिखा है क्या कि वो उनके बाल को कटवाए? मैं सोचता हूँ कि यह एक महिला है। जी हाँ, जी हाँ, यह गलत है कि कोई भी महिला अपने बाल कटवाए। यह बस एक छोटा सा प्रश्न है, क्या आपको नींद आ रही है? तो ठीक है, हम अब जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी करेंगे। मैं उस सर्प के बीज को बहुत ही जोरों से लेने की कोशिश कर रहा था। हमारे पुत्र के लिए प्रार्थना करें। यह एक प्रार्थना की विनती है, मैंने बस ऐसे ही उठाकर और पढ़ा बस। भाई ब्रैनम, क्या महिलाओं को सार्वजनिक व्यवसाय में काम करने की अनुमति है जबकि उनके पास एक स्वस्थ पति और बच्चे होते हैं? मैं यह प्रश्न किसी और के लिए पूछ रहा हूँ, तो मैं इसके बारे में नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे बस यही एहसास होता है। मुझे ये कहने दो, मैं विश्वास करता हूँ, यदि मैं एक महिला होता था और मैं जानता था कि मेरा पति स्वस्थ है और उसके पास एक अच्छी नौकरी है, वो काम कर रहा है, और मैं सोचता हूँ कि घर पर रहना मेरे लिए एक बहुत ही आनंद की बात होगी, मेरे बच्चों की देखभाल करता और उनका पालन पोषण करता और प्रभु से प्रेम करता, और यदि मेरे पास कुछ समय बचता मेरे कपड़े धोने से और उन चीजों से जो मैं करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों को सिखाता कि कैसे प्रभु की सेवा करें। अब यदि आपको कोई कर्जा चुकाना है या ऐसा ही कुछ भी है जिसे आप अपने पति को भुगतान करने में मदद करने की कोशिश कर रही हैं, या ऐसा कुछ तो जो आपको करना है, तो मैं सोचता हूँ कि इसमें कोई बात नहीं है यदि आप उसकी सहायता करने की कोशिश करती हैं और आप एक महिला रहती हैं, और मैं सोचता हूँ कि यह कठिन है। कोई भी पुरुष जिसके पास अच्छी समझ होती है वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी जनसमूह में बीच में जाए जहाँ पर अश्लील गंदे पुरुषों और इस तरह की चीजों का एक समूह होता है, लेकिन यदि स्त्री को उसमें जाना है तो मैं सोचता हूँ कि उसे उसके पति को पता होना चाहिए कि वो एक सच्ची मसीही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, एक विश्वास योग्य स्त्री। लेकिन अब जैसा कि यह कहते हैं कि उसे काम नहीं करना चाहिए, मैं नहीं जानता, देखिए इसका समर्थन करने के लिए कोई वचन नहीं है, मैं बस उस राय को दे रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यदि एक महिला काम करना चाहती है और वो काम करना चाहती है। अब मैं निश्चित रूप से इन कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं के विरोध में हूँ, जहाँ ये सारे व्यवसायी पुरुष वे आगे बढ़कर उन्हें गंदे चुटकुले सुनाते हैं और एक अच्छी साफ सुथरी महिला वहाँ पर बैठी होती है और ये सारी गंदी बातें इस तरह से यहाँ वहाँ बताई जाती हैं। मैं इसके विरोध में हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपको इस तरह की चीजों के बीच से बाहर आना चाहिए। लेकिन अब यदि एक स्त्री खुद को एक सच्ची महिला की नाई नियंत्रित रख सकती है और अपने पति की सहायता करने के लिए कुछ तो करने का यत्न करती है ताकि बच्चों के लिए कपड़ों को खरीद सके जिससे कि वे स्कूल जाएं या कुछ बिल का भुगतान करें या ऐसा ही कुछ, और वो तब तक काम करना चाहती है जब तक यह पूरा नहीं हो जाता। अब यह प्रभु नहीं है क्योंकि मेरे पास इसके लिए कोई वचन नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यह मेरा विचार होगा, लेकिन अन्यथा मैं बस नहीं सोचूंगा क्योंकि वो बस काम करना चाहती है जिससे कि बस यहाँ वहाँ जा सके और उसके पास या खर्चा करने के लिए अधिक पैसा हो। इधर उधर भागती फिरे और शराब खाने की ओर भागती फिरे या शराब पिए धूम्रपान करे और ऐसे ही करती रहे। मैं नहीं सोचता कि उसे ये करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि उसे घर पर ही रहना चाहिए, एक महिला होने की कोशिश करनी चाहिए और अपने घर की देखभाल करना चाहिए। यदि यीशु एक सेकंड में नहीं, यदि यीशु, यदि आप दूसरे विवाह में हैं, यहाँ दोनों पक्ष तलाकशुदा हैं, तो यह IEPEN पश्चाताप करते हैं, इसका पश्चाताप करना ही काफी है या आपको समाप्त करना है, या क्या आपको अपने विवाह के संबंध को समाप्त करना चाहिए ठीक होने के लिए? यदि आप दूसरे विवाह में हैं, जहां दोनों पक्ष तलाकशुदा हैं, मैं सोचता हूं मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। देखा, जी हाँ, इसका उत्तर पहले ही दे दिया गया है। जहां दोनों पक्ष हैं, मैं चाहता हूं कि हमें इन चीजों में से होकर न जाना पड़े। लोगों, मेरे मित्र ठीक यहां पर बैठे हुए हैं, बाहर इस श्रोतागण में, यहां जो मैं जानता हूं, यह कहने के लिए मुझे लगभग मार डालता है, लेकिन मुझे यह कहना ही है। देखा, और संसार एक ऐसी भ्रष्ट स्थिति में है। कुछ बेचारी छोटी महिलाएं गलती कर देती हैं और किसी शराबी से विवाह कर लेती हैं और वे उस ओर मुड़ जाते हैं, या कोई बेचारा पुरुष किसी सड़क छाप से विवाह कर लेता है और ये नहीं जानता, और फिर जब तक वे जीवित हैं उस स्त्री या पुरुष से बंधे रहते हैं। यह एक भयानक बात है। विवाह एक पवित्र चीज है। बहुत सी बार पापी बच्चे दौड़कर आते हैं और उन चीजों को करते हैं और फिर वे सोचने लगते हैं कि ये सब क्या है। मैं विश्वास करता हूँ, यदि प्रभु मुझे अनुमति देगा कि मैं इस विवाह और तलाक की व्याख्या करूँ जिस तरह से इसे होना चाहिए, मैं विश्वास करता हूँ कि यह बहुत कुछ साफ कर देगा। यह सब हम देखते हैं, हम अपना घर क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? धन्यवाद। हम PS हमने प्रार्थना की है और उपवास किया है और इसे बेचने के लिए फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला, तो ठीक है। अब भाई या बहन, उन्होंने अपने नाम का हस्ताक्षर नहीं किया है, लेकिन यह जो कोई भी है, अब यदि आप अपनी संपत्ति को बेचने की कोशिश कर रहे हैं और आपने वही किया है जो आप इसे बेचना चाहते हैं और शायद कुछ और खरीदने के लिए या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, मैं नहीं जानता। यदि आपका उद्देश्य सही है, आप एक घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आपके बच्चे हैं या ऐसा ही कुछ है, तो आप उन्हें एक बेहतर घर या कोई चीज को देना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि यह सब क्या है, लेकिन मैं यह कहूँगा, यदि आप इसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं और उपवास कर रहे हैं और इसे बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इसे प्रभु को सौंप दें और इसके बारे में भूल जाएं। देखा, क्योंकि यह हो सकता है कि परमेश्वर आप हो सकता है कहीं तो और चले जाएं, और यह हो सकता है कि यह सही नहीं हो, समझे? यदि आप एक मसीही हैं और प्रभु में भरोसा करते हैं, क्योंकि आप निश्चित रूप से मसीही हैं, नहीं तो आप उपवास और प्रार्थना नहीं कर रहे होते। देखा, इसलिए मैं इसे केवल प्रभु को सौंप दूंगा, कहते हुए, अब प्रभु, जब आपका समय हमारे लिए इसे बेचने का हो, तो आप एक खरीदार को भेजें। तब यह प्रभु के लिए सौंप दिया गया है। अपने हाथों को इस पर से हटा दें और आगे बढ़ें। मैं विश्वास करता हूं कि यह काम करेगा। मैं यहां एक प्रकार से जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है। भाई ब्रैनम, क्या एक स्त्री के लिए अपने बालों को घुंघराले करना गलत है? मैं इस प्रश्न में से होकर गया हूँ, निश्चय ही मैं ऐसा नहीं सोचता। बस इतना है, बालों को लंबा बनाए रखें, समझे? मैं नहीं, मैं जानता हूँ कि आप, मेरा मतलब यह नहीं है कि आप लड़कियों के साथ मजाकिया बने, देखा, यही ईमानदारी है। आप जानना चाहती हैं और आप मुझसे पूछ रही हैं, आपको मुझ पर भरोसा है, या तो आप मुझसे यह नहीं पूछ रही होती। अब मुझे आप पर भरोसा है बहन, जो मैं आपको बताऊंगा, मैं विश्वास करता हूं कि आप करेंगी। मैं वचन के साथ इसका समर्थन नहीं कर सकता। यदि आप चाहती हैं, यदि आपके पास सुंदर घुंघराले बाल नहीं हैं और आप एक महिला हैं, आप अपने पति के लिए सुंदर दिखना चाहती हैं, अपने प्रेमी के लिए या ऐसा ही कुछ, तो मैं आपको आपके बालों को घुंघराले करने के बारे में नहीं बता सकता, या वे इसे क्या कहते हैं, इसे रंगना या कुछ और। मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना है, यह आप पर निर्भर करता है। आप समझे, आप बस प्रभु से पूछें कि क्या करना है, वो आपको ये बताएगा, क्योंकि मैं वचन के द्वारा चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखा, कृपया पहला कुरिन्थियों 13:8-12 की व्याख्या करें। अब जबकि सिद्ध वचन कलीसिया के लिए वापस लौटाया गया है, क्या ये वचन के पद पूरे हुए हैं? अब मैं सोचता हूँ कि मैं बस इसमें से होकर गया हूँ, क्या मैंने नहीं बताया है? और जब वो जो सिद्ध है वो आता है, जो कुछ अधूरा है वो पूरा हो जाएगा। पौलुस ने कहा, यदि मैं मनुष्य और दूतों की भाषा में बोलूं और मैं इन सारी चीजों को करता हूँ यहाँ, लेकिन जब वो जो सिद्ध है वो आता है, अब क्या परमेश्वर के अलावा कुछ भी और सिद्ध है? नहीं श्रीमान, क्या परमेश्वर सिद्ध है? आदि में और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, वचन अब भी परमेश्वर है। देखा, तो ठीक है, जब वो जो सिद्ध है वो आता है, वो जो कुछ अधूरा है वो पूरा हो जाता है। भाई ब्रैनम, क्या ऊपर से सपाट तरीके से बालों को कटवाना ये गलत है? मैं समझता हूँ कि यह एक पुरुष है, मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही है। तो ठीक है, अब कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं। निश्चय ही, एक समय मैं बस में कहीं जा रहा था, जब मैं यहाँ राज्य के खेल का वार्डन था, यहाँ ऊपर जा रहा था, मैं वहाँ बैठा हुआ था और एक व्यक्ति इस तरह से बात कर रहा था। वो एक वेल्डिंग करने वालों की टोपी को पहने हुए था और मैं बस उससे बात कर रहा था, और वो सिगरेट पीते हुए आगे जा रहा था। एक वेल्डिंग करने वाले के चश्मे को इस तरह से ऊपर की ओर लगाए हुए था, जो ठीक यहाँ सेलसबर्ग के आसपास था, और मैं वहाँ बैठा हुआ उस व्यक्ति से बातें कर रहा था। उसने वहाँ कुछ तो कहा और हम बस हंस पड़े। मैंने उसके पैर पर मारा, मैंने कहा, लड़के, ये वास्तव में केक को लेता है, क्या ऐसा नहीं है? और मैं वहाँ इस तरह से बैठा हुआ था, और सीधे कोई एक महिला जो वहाँ बैठी हुई थी, उसने कहा, कहो रूथ, क्या तुम पूरी तरह से, वो बहुत बड़े हट्टे कट्टे एक पुरुष की तरह थी, वहाँ बैठकर सिगरेट पी रही थी और उसकी नाक से धुआं निकाल रही थी। मैंने सोचा था कि यह एक पुरुष है, एसिटिलिन की टॉर्च को पटकती और कुछ तो ऐसा करती, किसी के सिर पर मार रही थी और गिर गिर कर, जिसे आप कहते हैं, और हंसने लगती। मैं भी हंसा था और उसके दाहिने पैर पर थप्पड़ मारा था, यह सोचकर कि वो एक पुरुष है। मैं अंतर नहीं जान पाया, आप उनके फर्क को नहीं बता सकते। और बाइबल ने कहा, कोई भी स्त्री जो पुरुष से संबंधित वस्त्र पहनती है, यह एक घृणित बात है, वहाँ हम हैं। नहीं भाई, यदि आप ऊपर सपाट बालों को कटवाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, आप बस रुके रहें जब तक आप मेरी उम्र के लगभग ना हो जाएं, आपके पास ऐसे बाल होंगे। इसलिए ये ठीक बात है, मेरा मतलब इस तरह से नहीं था मित्र। आपके हृदय को आशीषित करे, यदि आप विश्वास करते हैं कि भाई ब्रैनम आपको सत्य बताते हैं। मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर पुरुष के बारे में कुछ भी कहता है, उसका ढाकना उतना ही लंबा होता है जितना कि वो अपने बालों को काटता है। यदि वो अपने बालों को एक महिला की तरह लंबा होने देता है, तो बाइबल कहती है कि ऐसा करना एक पुरुष के लिए लज्जा की बात है। लेकिन अब यदि आप, जब तक आपके बाल हैं और आप एक छोटे से लड़के हैं, और मैं जानता हूं कि मैंने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, और तुम आवारा लड़कों जो उस ऊपर से सपाट बाल कटवाते हो और इस तरह से सब और इस तरह की चीजें करते हो, लेकिन मैं बस यही कहता हूं, समझे? और मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर परवाह करता है कि एक पुरुष अपने बालों को कैसे काटता है, जब तक वो इसे काटता है, क्योंकि उसका सिर परमेश्वर है, परंतु स्त्री का सिर पुरुष है, इसलिए उसे अवश्य ही, और यदि वह अपने बाल काटती है तो वो अपने सिर का अपमान करती है, तब एक अपमानजनक स्त्री को तलाक दे देना चाहिए और उससे अलग हो जाना चाहिए, यह सही है। इसलिए यदि कोई स्त्री अपने बाल काटती है, उसके पास, उसके पति के पास पूरी तरह से बाइबल का अधिकार है कि उसे गलत जीवन की वजह से अलग कर दे, जो एक अपमानजनक व्यक्ति है। कितने लोग जानते हैं कि ये सत्य है, यही है जो बाइबल ने कहा, क्योंकि वो अपने सिर का अपमान करती है, किसी भी अपमानजनक स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए। भाई ब्रैनम, जब यशाया ने सियोन की पुत्रियों से बात की, या बात की मेरा मतलब, मुझे लगता है कि उनका मतलब उसके विषय में बात की, सियोन की बेटियों के बाल गूंथने के बारे में, घुंघराले बाल और बजाय एक अच्छी तरह से सवरे हुए बाल, गंजापन बजाय एक, क्या यह आज पर लागू होगा या पुरानी बाइबल की कोई बात लागू नहीं होती है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। पुरानी बाइबल की बात हमेशा ही लागू होती है और हरेक वचन जो परमेश्वर कहता है लागू में होता है। जी हाँ श्रीमान, केवल एक चीज जो यह नई बाइबल पुरानी बाइबल से करती है, यह बस अधिकता में होता है। यीशु ने कहा, तुमने उन्हें कहते सुना है, तू व्यभिचार न करना, आपको इस क्रिया में होना था, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई भी कुदृष्टि से स्त्री को देखता है, वह अपने हृदय में पहले ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका। ये क्या ही महान असाधारण बातें हैं। अब मुझे बंद करना है मित्रों, यह थोड़ी देर होती जा रही है। अब यह एक प्रश्न बहुत ही लंबा है, आइए देखते हैं कि क्या मैं कुछ और ले सकता हूँ। आइए देखते हैं, भाई ब्रैनम, महिलाओं को किस तरह से, ओ प्रभु, अपने बालों को रखना चाहिए। फिर से बस किसी भी तरह से आप चाहते हैं। पहला तिमुथियुस 2:9, देखा, स्त्रियां संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारे। मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले वस्त्र पहनना चाहती हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रिय बहन, धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे, हमारे लिए प्रार्थना करें। और उस व्यक्ति ने उसके नाम का हस्ताक्षर किया है, शारोन, निश्चय ही बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। इसे पहने जितना ये लंबा हो सकता है बहन, यह एक छोटी सी लड़की है। परमेश्वर आपको आशीष दे प्रिय, ये ठीक बात है। आप सीधे आगे बढ़ें। दुल्हन का रैप्चर होने के बाद क्या कोई मूर्ख कुंवारी बचाई जाएगी या वे सब नष्ट हो जाएंगी? नहीं, देखो, अन्य जाति की कलीसिया के लिए सब कुछ समाप्त हो जाएगा जब दुल्हन को धरती पर से उठा लिया जाएगा। परमेश्वर का आत्मा धरती को छोड़ देता है। वह जो मलिन है वो मलिन ही रहता है, वो जो धर्मी है वो धर्मी ही रहता है, जो पवित्र है वो पवित्र ही बना रहता है। दूसरे शब्दों में, पवित्र स्थान धुंधला हो जाता है जहाँ वो वकील मामले के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा होता है। मसीह पवित्र स्थान को छोड़ देता है, उसकी बिचवाई का दिन पूरा हो गया है। रैप्चर आता है, वो पवित्र स्थान से चला जाता है आगे जाकर, और छुटकारे की किताब को लेता है और हर एक चीज का दावा करता है जिसे उसने छुड़ाया है। अब वहाँ और कोई बिचवाई का काम नहीं है। कितने लोग इसे समझ रहे हैं? मैंने इसे मोहरों में से एक पर लिया है, या उनमें से एक। जी हाँ, मोहरें। मैं विश्वास करता हूँ कि इसे लिया था कि मसीह अपने बिचवाई के कार्य का दावा करने के लिए आगे आता है। अब बस एक मिनट, क्या मूर्ख कुंवारी बचाई जाएगी? नहीं, जो कुछ भी होता है वो अभी होता है। उस समय के बाद वो उस अवस्था में होती है। अब उसे महासंकट काल में से होकर जाना होगा, और उसका कारण ये है क्योंकि उसने प्रायश्चित को उसकी संपूर्णता में अस्वीकार कर दिया है। वो एक विश्वासी है, एक विश्वासी होने का दावा करने वाली, लेकिन उसे महासंकट काल में से होकर जाना होगा। बाइबल ने कहा, और उनमें से बाकी अजगर ने उसके मुंह से पानी को उगल दिया कि जाकर और युद्ध करे। और यह क्या ही घड़ी है। वो इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा है जहां नाम मात्र की कलीसियाएं हों, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाने के लिए इतने भूखे हों। मैं मसीही बिजनेसमैन के लिए बोलता हूं, निरंतर यह प्रेस्बिटेरियन होते हैं और लूथरन, कैथोलिक और सभी होते हैं, सैकड़ों की संख्या में बैप्टिस्ट, चर्च ऑफ क्राइस्ट, नाजरीन, पिलग्रिम होलीनेस, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, उनमें से हर एक खोजने की कोशिश में जुटा रहता है, समझे। अब यह एक चौंकाने वाली बात है, कृपया इसे एक सिद्धांत के रूप में ना लें, लेकिन क्या आप समझते हैं कि वचनों ने क्या कहा कि क्या बात जगह लेगी जब ऐसा होता है? समय समाप्त हो गया था, क्योंकि देखो वहाँ 7 कुवारियाँ थी, मेरा मतलब 10 कुवारियाँ दूल्हे से मिलने के लिए बाहर निकली, और उनमें से आधे के पास उनके दिए में तेल था, उनमें से आधे के पास नहीं था। शरीर का यही वो भाग है जो मरा हुआ है, और वो भाग जो जीवित है। 5 बुद्धिमान है, जब वे पुकारते हुए आती हैं, देखो दूल्हा, उन सभी ने ठीक ठाक किया, मतलब जाग गए और अपने अपने दियो को ब्याह के भोज में जाने के लिए ठीक ठाक किया। लेकिन जब मूर्ख कुवारी ने कहा, हमें अपने तेल में से कुछ दे दो, हमारे दिए बुझे हुए हैं, समझे, हमें अपने तेल में से दो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हमारे पास बस अपने लिए ही पर्याप्त तेल है, जाकर इसे खरीद लो। और जब वे इसे खरीदने के लिए गए तो दूल्हा आ गया। जब घोषणा आगे गई, वो आदेश दूल्हा आ रहा है, हर कोई सही करना चाहता था जल्दी से। क्या यह वो घड़ी नहीं है जब दीवार पर हस्तलेख है? ओह, हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहते हैं, हम ये वो या इत्यादि चाहते हैं। लेकिन जब वे इसे खरीदने के लिए गए तो दूल्हा आ गया। बुद्धिमान अंदर चली गई और वे बाहर ही छूट गई थी, जहाँ पर रोना विलाप करना और दांतों का पीसना होगा। मेरे पास इसके साथ जाने के लिए यहाँ अब सुंदर प्रश्न है, वह मनुष्य कौन था जो वस्त्र पहने हुए था, जो भीतर आया, जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, और वे सारे प्रश्न जो सीधे इसके साथ जुड़े हुए हैं। क्या एक व्यक्ति को किसी एक व्यक्तिगत मनुष्य को दशमांश देना चाहिए या एक मसीही काम करना चाहिए? निश्चय ही उसे करना चाहिए। वही एक मनुष्य होता है जो कार्य करेगा जो एक मसीही होता है। एक व्यक्तिगत मनुष्य को दशमांश देना यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्तिगत कौन है। देखा, यह सही बात है। इब्रानियों 7 में पहली बार दशमांश के बारे में बात की गई थी, एक स्थिति में कि हम एक मिनट रुकना, मैं सोचता हूँ नंबर 2 का प्रश्न नहीं, क्योंकि भाई कहा भाई ब्रैनम के लिए 2 प्रश्न है। जब इब्रानियों के 7वें अध्याय में जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौट रहा था, मलकीसिदक से भेंट की, तो उसने उसे कुछ दशमांश दिया। वह मलकीसिदक था, शालेम का राजा, जो कि शांति का राजा है और धार्मिकता का राजा, जो कोई और नहीं लेकिन स्वयं परमेश्वर था। देखा, लेकिन जब आप दशमांश को देते हैं, वास्तव में जहां आपको दशमांश देना होता है, जहां से आपको अपना भोजन मिलता है, अपने सारे दशमांश को मेरे भंडार में ले आना, यहोवा यों कहता है। ये सही है, और मुझे साबित करे जिसमें परमेश्वर यों कहता है कि यदि मैं स्वर्ग की खिड़कियों को नहीं खोलूंगा और आशीष को नहीं उड़ेलूंगा कि तुम्हारे पास इसे लेने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं होगी। मैं किसी भी पुरुष या महिला को चुनौती देता हूँ, दशमांश को नहीं देते हैं इसे स्वीकार करें। मैं यहाँ सुबह तक खड़ा रह सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि क्या हुआ जब मैंने इसे देखा और मैं किस स्थिति में था, लेकिन बस जितना वफादार मैं कभी हो सकता था उतना रहा हूँ, मैंने दशमांश को दिया है। और जब मैंने अपना पैसा यहाँ कलीसिया से लिया है या अपने अभियानों से, मैं और अधिक लेता, मैंने दशवां अंश दिया है, तब मैं इसे सेवकों को दे देता हूँ और बाकी के सेवकों को देता हूँ। तब जब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तब जो चीज मैंने की, मैंने 10% रखा और परमेश्वर को 90% दिया। और फिर जब व्यवस्था मुझे बताती है मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे लेना होगा, और यदि मैं करता तो यह सब इसके लिए इस्तेमाल किया जाना था, तब मैं इसे लेकर और इसे विदेशी मिशनों में और आदि आदि में दे देता, और उसके बाद बस उसमें से $100 प्रति सप्ताह की मजदूरी को लेता हूँ और मैं उसमें से अपना दशमांश देता हूँ। जी हाँ श्रीमान, मैं दशमांश देने में विश्वास करता हूँ। यह परमेश्वर की आशीषों में से एक है, जो एक आशीष साबित हुई है। आप कहते हैं यह बात तो पुराने नियम की है, यह नए नियम की भी है। जी हाँ श्रीमान। प्रिय भाई ब्रैनम, यदि एक बालक का जन्म बिना विवाह के बंधन से हुआ है, तो क्या यह बालक कभी बचाया जा सकता है या रैप्चर में नहीं जा सकता है? बचाया जाना क्यों? निश्चय ही मैं विश्वास करता हूँ कि बालक बच सकता है। वो बालक इसमें कुछ भी नहीं कर सकता जो किया गया है, यह सच है। लेकिन मैं रैप्चर में जाने के बारे में, बचाया जाएगा, मैं कहूँगा हाँ। लेकिन रैप्चर में जाना यह तो पहले से ठहराया हुआ बीज होता है जो रैप्चर में जाता है, और मैं विश्वास नहीं कर सकता कि व्यभिचार से आया पहले से ठहराया हुआ बीज था। आप समझे? देखा, मैं विश्वास करता हूँ कि लोग बालक बचाया जा सकता है, इसका अपना कोई अधिकार नहीं है, यह एक भयानक कार्य और बातें हैं। लेकिन अब पुराने नियम में जब एक बालक, जो एक अवैध बालक का जन्म होता था, यहाँ तक कि यह प्रभु की सभा में 10 पीढ़ियों तक प्रवेश नहीं कर सकता, 400 और कुछ वर्षों तक, वो श्राप बहुत ही बुरा था। बस इसके बारे में सोचें, एक निर्दोष बालक, यह परपोते के 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 परपोते का परपोता है। जरा सोचें, उस बालक के परपोते के परपोते के परपोते के 10 परपोते पोते यहाँ तक कि परमेश्वर की सभा में भी नहीं आ सकते। यह सही है, लेकिन आप देखते हैं वहाँ कोई भी इतना सामर्थ्यवान नहीं था कि उस पाप को क्षमा कर सके। पुराने नियम के लहू ने पापों को क्षमा नहीं किया, इसने पापों को ढाप दिया। लेकिन यीशु मसीह का लहू इसे अलग कर देता है। यह अब भिन्न बात है। जब यीशु मसीह का लहू आता है तो यह भिन्न बात होती है। भाई ब्रैनम, हम जितना संभव हो सके आपके संदेश के समीप रहना चाहते हैं। क्या हम एरिजोना या जेफरसन विले की ओर चले जाएं? आपको अपने आप में जो उचित लगे या तो कोई एक। मैं निश्चय ही आपसे प्रेम करता हूं। मैं परवाह नहीं करता कि आप कहां जाते हैं, आप क्या करते हैं, लेकिन अब एक राय के रूप में मैं सोचता हूं कि मैं जेफरसन विले आऊं। यदि आप किसी भी तरह से जेफरसन विले जा रहे हैं तो मैं वहां पर आऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि जितना मैं एरिजोना में रहता हूं, उससे कहीं अधिक मैं यहां पर होता हूं। यह ठीक है। भाई ब्रैनम, क्या अब पापियों को प्रचार करने के लिए बहुत देर हो चुकी है? नहीं नहीं भाई, इस बात को अपने मन में ना रखें। घर को निरंतर बनाते रहें। आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो करते रहें, बस आगे बढ़ते रहें जब तक आपको दूर बुला नहीं लिया जाता है। समझे? प्रश्न संख्या दो, जो बचाए गए हैं उनको आराधना में अपने आप को पापियों से अलग करना चाहिए? क्या बचाए हुए को आराधना करने के लिए पापियों से अलग करना चाहिए? मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं कि आपका इससे क्या मतलब है। यदि आपका मतलब पापियों से है, जैसे कि बाहर आप हर जगह परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि यदि हमने ऐसा किया तो हमारे पास कलीसिया कैसी होगी? क्योंकि पापी तो सीधे कलीसिया में आते हैं और मसीही लोगों के पास ही आकर बैठते हैं। कभी भी अपने आप को पाप के अलावा किसी भी चीज से अलग ना करें, ना ही पापी लोगों को। यदि आप कर सकते हैं तो पापी को लेकर आएं, लेकिन उसके पाप को लेने वाले मत बनो। क्या एक बचाई हुई पत्नी, यदि उसका पति पापी है तो अपने आप को उसकी अपने होने से इनकार कर देना चाहिए? नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान, ये आपका पति है। आप उसके साथ ऐसा करने से पहले से कहीं अधिक परमेश्वर से दूर कर देंगी। समझे? ये सही है। भाई बहन, आपने उससे विवाह किया है, वो आपका है और आप उसके हो। भाई ब्रैनम, विवाह को अमान्य घोषित करने का क्या अर्थ है? क्या लोग विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं, या यह तलाक का एक और शब्द है? मैं इस पर कुछ जानकारी चाहता हूं। निश्चय ही वे विवाहित हैं, जब तक वे उस प्रतिज्ञा को मानते हैं, वे विवाहित हैं। बिल्कुल जैसे कि एक लड़का, यदि कोई लड़का किसी लड़की से उससे अच्छे विश्वास के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा करता है, तो वह उस लड़की के प्रति बाध्य है। वो उससे विवाह करने जितना ही मान्य है। केवल एक चीज जो कानून करता है कि ये आपको एक साथ रहने के लिए एक अधिकार की घोषणा करता है, ताकि एक साथ रहने की सामान्य विधि के पति और पत्नी होने से बचें। लेकिन जब एक पुरुष एक महिला से कहता है, प्रिय मैं तुमसे विवाह करूंगा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने के लिए अपनाऊंगा, क्या तुम अपना? वो विवाहित है। आपकी प्रतिज्ञा पवित्र है। यही है जो किसी भी तरह से आपके विवाह को लगाता है। कोई भी प्रचारक आपसे विवाह नहीं करवा सकता, कोई दंड अधिकारी नहीं या कोई भी नहीं। यह तो परमेश्वर और उस पुरुष के लिए आपकी अपनी प्रतिज्ञा है। जब आप प्रतिज्ञा करते हैं तो आप विवाहित होते हैं। देखिए, आप कहते हैं भाई ब्रैनम, क्या यह आप कहते हैं, आपने कहा था कि आप इसका उत्तर केवल बाइबल में से ही देंगे। क्या आप इस पर बाइबल चाहते थे? यदि आप चाहते हैं तो अपने हाथ उठाएं। अब हमारे पास लगभग 6 या 8 मिनट हैं, तो ठीक है। यूसुफ, उसका पति, एक धर्मी पुरुष होने के नाते उसका मंगेतर पति, वो पहले से ही उसे पति करके बुलाती थी। यूसुफ, उसका पति, एक धर्मी पुरुष होने के नाते उसने मन ही मन इस तरह से गुप्त रूप से अलग रखने का मन बना लिया था। लेकिन इससे पहले कि वे एक साथ आएं, वो पवित्र आत्मा की ओर से एक बालक के साथ पाई गई थी। देखा, और प्रभु का दूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और कहा, यूसुफ, तू जो दाऊद का पुत्र है, अपनी पत्नी मरियम को अपनाने से मत डर, पहले से ही विवाहित है। उसने पहले ही उससे प्रतिज्ञा की थी। और छोटी सी महिला, यदि तुमने उस लड़के से विवाह करने की प्रतिज्ञा की है तो तुम इसे करने के लिए बाध्य हो। यदि तुम उस बाध्यता के बाद किसी और से विवाह करते हो तो तुम अब से लेकर किसी भी तरह से तुम व्यभिचार में रह रहे होंगे। और ध्यान देना, वही बात एक लड़के के लिए लागू होती है जो एक स्त्री से विवाह करने की प्रतिज्ञा करता है। जब तक आप उस पर कायम रहना न चाहें, तब तक किसी से अपनी प्रतिज्ञा न करें। याद रखें, इसी के लिए बाइबल है। यूसुफ ने मरियम से विवाह करने की प्रतिज्ञा की और परमेश्वर ने कहा कि ऐसा था। उस पर पुराने नियम की व्यवस्था को पढ़ें। समझे? पुराने नियम की व्यवस्था, यदि आपने एक स्त्री से विवाह करने की प्रतिज्ञा की है और आप दूसरे से विवाह कर लेते हैं, तो तो आप व्यभिचार कर रहे थे और ये आपको डेरे से बाहर निकाल फेंकता है। जी हाँ श्रीमान, आपको अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना होगा। जब आप एक स्त्री से यह प्रतिज्ञा करते हैं, वो महिला एक पवित्र छोटा बर्तन है और ये बालक के जीवन को फिर से संसार में लाने के लिए होती है। इसलिए जब आप उससे प्रतिज्ञा करते हैं तो आपको उससे विवाह करना ही है। क्या जेल की सभाओं को करने के लिए बहुत देर हो चुकी है और इस तरह के गवाही देने के काम को करना जिससे कि प्राणों को बचाए जाने की कोशिश करें? क्या किसी को अपना सब कुछ बेच देना चाहिए जो अब उनके पास है? प्रभु बहुत जल्द आ रहा है। तो ठीक है, आप कैसे करते हैं? मैं आशा करता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे आप इस तरह से विश्वास करें। क्या मैंने कहा है? यदि मैंने कहा है तो मुझे क्षमा करें, मेरा मतलब यह नहीं था, समझे? केवल उन बातों का अनुमान न लगाएं, ठीक आगे बढ़ते रहें, प्रचार करते रहें, जेल की सभा को करते रहें, हर एक को लेते रहें। और ना ही यहाँ देखें, ज्यादा समय नहीं हुआ, यहाँ पर सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लगभग 50 या 60 वर्ष पहले मैंने इसे कोरियर जनरल के अखबार में देखा। मैंने इस अखबार को कहीं तो एक संदूक में रखा है, कोरियर जनरल अखबार का एक बड़ा टुकड़ा जहां उन्होंने पुराने पंखों को बाहर निकाल फेंका, जहां पर वे सेवंथ डे एडवेंटिस्ट बनने से पहले मिलराइट कहलाते थे और उनके पास यहां फ्रैंकलिन केंटकी में कोरियर के अखबार में एक पूरा बड़ा पन्ना लिखा था। जब उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और उन्होंने एक निश्चित तारीख को तय किया, इसे वचन के द्वारा साबित किया, यीशु उस तारीख पर आ रहा है, और वहाँ पर जाकर उनकी वीणा और चीजों को लिया और पहाड़ की चोटी पर बैठ गए। अगली सुबह नीचे आ गए, उसने सारे पंखों को नीचे झुका दिया था और वे पिचक कर नीचे आ गए। देखा, यह संप्रदाय और चीजें हैं। आप इसका विश्वास न करें, यीशु हो सकता है 100 वर्षों तक न आए। मैं नहीं जानता कि वो कब आ रहा है, कोई मनुष्य नहीं जानता कि वो कब आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा कि प्रचार करता रहूं और हर एक चीज को करूंगा जो मैं कर सकता हूं जब तक वो नहीं आता। यदि वो आज यहां नहीं होता है तो मैं कल उसके लिए देखूंगा, यदि वो यहां नहीं होता है इस सप्ताह तो मैं अगले सप्ताह उसके लिए देखूंगा, यदि वो अगले 10 वर्षों में यहां नहीं होता है और मैं जीवित रहता हूं तो मैं अगले 30 वर्षों में उसके लिए प्रतीक्षा करूंगा, समझे? मैं फिर भी प्रतीक्षा करूंगा। मैं नहीं जानता कि वो कब आ रहा है, लेकिन मैं उसके वचन के प्रति सच्चा और उसके लोगों के प्रति सच्चा जीना चाहता हूं और एक मसीह की तरह जीना चाहता हूं और उसके आने की प्रतीक्षा करना चाहता हूं। देखा, जेल की सभाओं के लिए प्रचार करते रहो, हर एक को बचाओ जितना आप कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि वो कब आ रहा है, कोई भी नहीं जानता है, लेकिन मैं इस एक बात को कहूंगा, यही है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप अपना खुद का अनुवाद डालने की कोशिश नहीं करें। ना ही इस व्यक्ति पर जोर से चिल्ला रहा हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे, भाई बहन, आप जो भी हैं, ये ऐसा प्रतीत होता है कि यह इस नगर के बाहर का कोई व्यक्ति है, क्योंकि यह एक पोस्ट कार्ड पर लिखा हुआ था। मैं सोचता हूं डेनवर कोलोराडो से, और हाँ, पाइक पीक कोलोराडो से, इसलिए हो सकता है किसी ने इसे डाक से भेजा हो, लेकिन यह पूरी तरह से ठीक है, उन्हें टेप पर उत्तर मिल सकता है। लेकिन आइए याद रखें, आप कुछ भी चीज को ना बदलना, केवल आपके पाप से धार्मिकता के लिए अपने तरीके को बदलें, बस अपने काम पर ही बने रहें, ठीक उसी तरह से आगे बढ़ते रहें। वे सब जो इसे स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कहें आमीन, समझे? अब ऐसा करें। भाई ब्रैनम, मत्ती 12:40 में यह कहता है, जैसा कि योना 3 दिन और 3 रात वेल मछली के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के हृदय में रहेगा। यह उस दिन कैसे हो सकता है कि वे कहते हैं, आज वे कहते हैं कि उसे शुक्रवार की शाम को कब्र में डाला गया था और रविवार की सुबह जी उठा, जो इसे केवल 2 रात और 1 दिन बनाता है। अब यदि आप ध्यान दें, इसने कहा जैसा यह था, आप समझे, उन दिनों में जब योना 3 दिन और 3 रात पेट में था, यह 3 दिन और 3 रातों के भीतर है, उस 3 दिन और 3 रातों के भीतर, क्योंकि आप वचन को झूठा नहीं बना सकते। भविष्यवक्ता ने कहा, मैं अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं दूंगा, ना ही मैं उसके प्राण को अधोलोक में छोड़ूंगा। और मनुष्य का शरीर 72 घंटों में सड़ने लगता है, जो कि 3 दिन और 3 रात होता है। तभी तो उस 3 दिन और 3 रातों के भीतर, जो कि उसे अवश्य ही कब्र से बाहर आना है, तो 3 दिन और 3 रात होने पर इसका मतलब यह नहीं है कि इसे बिल्कुल वैसा ही होना है। इसे कभी तो उस 3 दिन और 3 रातों के भीतर होना है, उसे आगे आना था, क्योंकि भविष्यवाणी को तोड़ा नहीं जा सकता कि वो सड़ाहट को नहीं देख सकता और ये सड़ जाता यदि वो ठीक उसी समय तक बना रहता। भाई ब्रैनम, यदि एक पुरुष विवाहित है और तलाकशुदा है, क्या यह बहुत ही खराब बात नहीं है? देखो, बहुत से हैं। अब मैं लोगों के विरोध में कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस यही लोगों के मन में है। निश्चय ही वे परेशानी में हैं। रैप्चर, लोग इस विषय में इतना अधिक नहीं सोचते हैं। इसके विषय में इतना अधिक नहीं था, लेकिन अब इसने संसार को बस लबालब कर दिया है और लोग इन बातों को वचन में पढ़ते हैं और लोग चुने हुए इसे देखने के लिए अंदर आ रहे हैं और वे इसे देखते हैं और वे ईमानदार हैं, वे जानना चाहते हैं। यही कारण है कि मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं, बस उतना ही समझ के साथ जितना मैं इसे आपको दे सकता हूं। वो विवाहित है और तलाकशुदा है और उसने फिर से विवाह किया है एक स्त्री से जो विवाहित है और तलाकशुदा है और फिर उससे विवाह किया है, और ये दोनों कर सकते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में विवाह कर सकते हैं। क्या वे परमेश्वर की दृष्टि में विवाहित हैं? कैसे दोनों या उनमें से कोई एक रैप्चर में हो सकता है? कैसे? मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं बता सकता। प्रश्न ये है, क्या वे रैप्चर में हो सकते हैं? तलाकशुदा, उनमें से दोनों ही तलाकशुदा हैं। उनमें से दोनों के पास एक जीवित साथी है, उसके बाद उन्होंने फिर से विवाह किया, उन दोनों ने ही फिर से विवाह किया, और अब एक ही इस स्त्री का एक जीवित पति है, इस पुरुष की एक जीवित पत्नी है, और अब उनके बच्चे और आदि आदि हैं और परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। क्या वे रैप्चर में जा सकते हैं? यह स्वर्गीय पिता के ऊपर निर्भर करेगा। मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, समझे? मैंने एक बात देखी, बाइबल ने कहा कि वे व्यभिचारी कहलाएंगे, और बाइबल ने यह भी कहा एक व्यभिचारी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, मैं जानता हूँ यह मुझे यह कहने के लिए मार डालता है, लेकिन जो वचन कहता है उसके सिवाय और कुछ नहीं कह सकता हूँ। मुझे अवश्य ही इसके साथ बने रहना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सब गलत है। बाइबल में ऐसे स्थान हैं। मैं आपको कोई राय नहीं दे रहा हूँ, कृपया मुझे आपको एक छोटा सा वचन देने दो। कृपया कृपया करके, यदि आप अपने पति के साथ खुश रह रही हैं, अपनी पत्नी के साथ खुश रह रहे हैं, तो कृपया इसी तरह से बने रहें। क्या आप ऐसा करेंगे? बस इसलिए क्योंकि मैंने आपको ये बताया है, उन छोटे बच्चों को बिना घर के और इस तरह की चीजों के बिना ना छोड़ें। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जगह जगह क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की है जिन्होंने गलतियाँ की, जिसने चीजों को गलत किया है। आपको याद है यीशु ने दाऊद के विषय में कहा, जब वो भूखा था उसने परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश किया और भेंट की रोटी खाई, जो कि केवल याजक के लिए ही उचित है और जो निर्दोष पाया जाता है। याजक भी सबत के दिन पर सबत की इष्ट निंदा करता है और निर्दोष पाया जाता है, और यहाँ सबत से भी बड़ा दिन था, समझे? वहाँ मैं आइए इसे परमेश्वर पर छोड़ दें और आगे बढ़ें और बस उसी तरह से जिए। आप केवल मसीह के लिए जिए। आइए देखें, आपके पास अंदर आने का एक मौका हो सकता है। ऐसा न करें, दो गलतियाँ कभी भी एक को ठीक नहीं करेंगी। बस आगे बढ़ें और जिस तरह से आप हैं उसी तरह से जिए। यदि आप एक साथ रहकर खुश हैं, आपके पास गलत जीवन साथी हो सकता है। मैं इस एक बात को कहूँगा, यदि आपके पास इस पत्नी में गलत जीवन साथी है, इस जीवन में आपके पास ऐसा कभी भी दूसरे एक में नहीं होगा। सारी गलतियां सही हो जाएंगी। क्या सारे फिर से जन्मे हुए विश्वासी रैप्चर में जाएंगे? नहीं, केवल शेष बचे हुए ही, ना ही सारे फिर से जन्मे विश्वासी। बाइबल ने कहा, और ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे, और फिर उन्हें जिलाया गया और अलग किया गया, भेड़ को बकरियों से अलग किया गया। ना ही सारे नए जन्मे हुए वचन के अनुसार वे नहीं जाएंगे। इसका क्या प्रमाण है कि एक व्यक्ति वास्तव में पवित्र आत्मा से भरा हुआ है? यूहन्ना 14:26 वो करेगा। जब पवित्र आत्मा आता है, देखा, तो वो आपको आने वाली चीजों को दिखाएगा। देखा, वो इसे सिद्ध करेगा। मनुष्य का बनाया हुआ इसे नहीं करेगा और वो वचन है। जब वह पवित्र आत्मा आता है तो वह खुद को आप में वचन के साथ पहचान देगा और यह सच्चा चिन्ह है कि पवित्र आत्मा आप में है क्योंकि यह वचन है। अब देखना क्या हो यदि आप अन्य जुबान में बोलते हैं। मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूं। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आता है तो वो क्या करेगा और क्या हो यदि आप अन्य जुबान में बोलते हैं, ऊपर और नीचे कूदते हैं, चिल्लाते हैं और बाकी सब कुछ करते हैं और उसके बाद वचन पर आए। और मैं आपको बपतिस्मे के बारे में बताता हूँ, आपको वचन के द्वारा साबित करता हूँ जो मेरे पास है कि बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की उपाधि का उपयोग करते हुए वचन में पूरी तरह से एक गलत फहमी है। किसी ने भी कभी इस तरह से बपतिस्मा नहीं लिया था और आप आगे बढ़कर और कुछ भी हो इसी के साथ बने रहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप में पवित्र आत्मा इस तरह की चीज को करेगा? यह भला कैसे अपने ही वचन का इंकार कर सकता है? जबकि मैं आपको दिखाता हूँ कि इस दिन में क्या बात जगह लेने वाली है, जिस तरह से मनुष्य का पुत्र खुद को प्रकट करता है और उसे क्या करना है और ये सारे वचन जो अब होते आए हैं और फिर उसे आगे नीचे आते हुए देखते हैं और इसकी पहचान देता है। और आप ठीक उस एक संप्रदाय पर बने रहते हैं और कहते हैं कि आपने फिर से जन्म लिया है, क्या आप इसका कोई मतलब निकाल सकते हैं? क्या मैं अपनी पत्नी को बता सकता हूँ कि मैं उससे प्रेम करता हूँ और दूसरी महिला के साथ मिलता रहता हूँ और यहाँ वहाँ घूमता फिरता हूँ और फिर पत्नी से कहता हूँ अपने हृदय से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ? क्या आप सोचते हैं कि यह सच्चा प्रेम होगा? क्या वह मुझे बोल सकती है कि वह मुझसे प्रेम करती है और जब मैं दूर चला जाता हूँ वह किसी और पुरुष के साथ इधर उधर भागती फिरती है? ठीक यही है जो इज़राइल ने किया। आप वहाँ बाइबल जानते हैं, उसने किस तरह से कहा, बोला इज़राइल, कहा तुमने अपने अंगों को अलग कर दिया है और हर एक पुरुष में ले लिया है जो यहाँ से आता है और तुमने मेरे साथ व्यभिचार की भूमिका निभाई है और मैं तुझे तलाक दे दूंगा। बिल्कुल सही, ये क्या है? आप अपनी ही देह के विरोध में व्यभिचार कर रहे हैं। और जब एक स्त्री बाहर जाती है और दूसरे पुरुष के साथ रहती है या एक पुरुष दूसरी स्त्री के साथ जब वे उनसे विवाह करते हैं तो वे अपनी खुद की देह को दूषित कर रहे होते हैं। और जब एक व्यक्ति कहता है कि वो एक मसीही है और वचन के सही होने का पूरी तरह से इनकार करेगा, वह उस देह के विरोध में व्यभिचार कर रहा है जिसमें वह होने का दावा करता है। देखा, इसलिए यही एक मसीह विरोधी की छाप है, इतना तक कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा दे। भाई ब्रैनम, क्या ये ठीक है कि एक छोटे बच्चे के लिए तंग पतलून और छोटे कपड़ों को पहनना? कितने छोटे बच्चे? बस आपको इसका अनुमान होने दो। यदि आप एक मसीही हैं, एक छोटी लड़की या कोई छोटा सा बालक, मैं कल्पना करता हूँ, मैं नहीं जानता, मैं केवल एक चीज जो मैं जानता हूँ, बाइबल कहती है कि यह एक स्त्री के लिए ऐसे वस्त्र पहनना घृणित है जो एक पुरुष से संबंधित है। देखा, एक स्त्री, ऐसा नहीं कहा एक बालक। लेकिन अब मैं बस आप बस उसके बारे में अपने आप को संतुष्ट करते हैं। मेरी ओर से कहता हूँ, मैं एक छोटे से बच्चे, छोटी सी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं देखता। छोटी लड़की जो 4 या 5 वर्ष की उम्र की हो, जब वे छोटे बच्चे होते हैं, आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, वे वहाँ आंगन में इधर उधर भागते हैं। यदि वो पहनती हैं जिसे आप तंग पतलून या जो कुछ भी कहते हैं, वो एक छोटी सी बच्ची है, तो मैं इसके साथ कुछ भी गलत नहीं देखता हूँ। हो सकता है, देखो मैं आपको अब बता रहा हूँ कि वचन क्या कहता है। स्त्री के लिए यह घृणित बात है कि ऐसे वस्त्र को पहने जो पुरुष से संबंधित हो। हमें अपने आप को एक साथ कहाँ इकट्ठा करना है? और आपने कहा कि अपने आप को तुरहियों पर इकट्ठा करो। मैं सोचता हूँ, क्षमा करना बहन, ये जो कोई भी है, आप वहाँ पर गलत हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि तुरहियों पर अपने आप को इकट्ठा करो। मैंने कहा इज़राइल तुरहियों पर एकत्र होता है, ना कि अन्य जाति दुल्हन। नहीं नहीं, तुरहियां, 7 तुरहियों का बजना इज़राइल को इकट्ठा करना था। कितने लोग ये जानते हैं? सारे देश भर में? हाँ, नहीं 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 नहीं, ना ही इज़राइल। तो ऐसा नहीं है कि हम तुरहियों पर एकत्र नहीं होते हैं, उसके साथ दुल्हन नहीं होती। तुरहियां पेंटिकॉस्ट के पर्व के बाद आती हैं, देखा, और रैप्चर आता है और वह अब यह सवाल नहीं है। भाई ब्रैनम, यदि आपके पास समय हो तो कृपया मत्ती 10:41 को समझाएं। मैं जानना चाहता हूँ कि एक भविष्यवक्ता का प्रतिफल क्या है। तो अब ठीक है। यीशु ने कहा, जो कोई भी भविष्यवक्ता को एक भविष्यवक्ता के नाम से ग्रहण करता है उसे भविष्यवक्ता का प्रतिफल मिलता है। एक भविष्यवक्ता का प्रतिफल भविष्यवक्ता के साथ एक मित्र होना है। जो कोई धर्मी मनुष्य को धर्मी मनुष्य के नाम से ग्रहण करता है वो धर्मी मनुष्य का प्रतिफल पाता है। क्या यह सही है? और यदि वे जानना चाहते हैं कि भविष्यवक्ता का प्रतिफल क्या है, भविष्यवक्ता का मित्र होना, देखा, यह एक प्रतिफल है, वो आपका मित्र है। शूनेमिन स्त्री की तरह यह किसी समय भी काम आ सकता है, देखा, यह उसके साथ हुआ, देखा। परमेश्वर के सेवकों पर ध्यान दें। ओह प्रभु, अब हम मुझे बस बंद करना ही है। और मित्र, मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है, लेकिन बस यहाँ पर देखो, बस देखता हूँ क्या सैकड़ों हैं। नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे यह सुनना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं इन बेचारे लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जिन्हें आज रात सैकड़ों मील गाड़ी चलाकर जाना है। ओह, वे बस वहाँ पर बहुत सारे हैं। मैं भाई ब्रैनम, मैं सहशताब्दी के विषय में जानना चाहता हूँ। क्या यह विवाह भोज के बाद होता है या यह धरती पर होगा? इसके बारे में सब कुछ बताएं। मैं इसके बारे में नहीं समझता। तो ठीक है भाई या बहन, मेरे लिए इसे स्वयं समझना कठिन है, लेकिन केवल एक चीज जो मैं कह सकता हूँ वो यह है कि विवाह का भोज सहशताब्दी से पहले आता है। अब देखिए, कोई तो, मैं जानता हूँ कि यहाँ कहीं तो मेरे पास उस पर एक प्रश्न है जिसमें यह कहा गया, भाई ब्रैनम, आप दानियल के 70 सप्ताहों में गलत हैं, वहाँ अब भी 70 सप्ताह होंगे। नहीं, मसीहा को आना था और भविष्यवाणी करनी थी, और 70 सप्ताहों के बीच में 70 सप्ताह जो कि 7 वर्ष होते हैं, उसे जीवतों में से काट दिया जाना था और बलिदान को किया जाना था। कितनों को यह याद है? तो ठीक है, कितने वर्षों तक यीशु ने प्रचार किया? मसीहा ने 3.5 वर्ष, तब वहाँ अब भी 3.5 निश्चित हैं। और प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में ये दो भविष्यवक्ता वे 1260 दिन भविष्यवाणी करते हैं। 3.5 वर्ष की अब भी इज़राइल से प्रतिज्ञा की गई है, जब अन्य जाति दुल्हन चली जाती है। कितने अब इसे समझ रहे हैं? देखा, तो अच्छी बात है। ठीक है, यह एक, मेरे पास दोपहर के भोजन का काउंटर है और अधिकांश भाग के लिए हाई स्कूल के बच्चों की सेवा करता हूँ। उजाले में आने के बाद से लेकर मैंने पिनबॉल खेल की मशीन को लिया है और जूक बॉक्स उनके पास होती है, ये बॉक्स है। युवा लोग धूम्रपान करते हैं और वे रेडियो पर रॉक एंड रोल संगीत को सुनना चाहते हैं। मैं दिन में केवल लगभग 4 घंटे ही खोलता हूँ। मैं धूम्रपान या शराब पीने का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं उस स्थान पर यह सब रखने में चिंतित हूँ। आप जानते हैं, यही एक समस्या होती है। देखा, यह ऐसी बात है कि आपको हो सकता है कि आपको जीवन निर्वाह के लिए करना पड़ता है, लेकिन आप जानते हैं यह मेरे लिए क्या करेगा? यह मुझे इतना परेशान कर देता जो मैं नहीं कर सकता। आप इसे सहन करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वहाँ आवारा लड़कों का छोटा झुंड इस तरह से आगे बढ़ता जाता है और शरारती मुझे यह पागल कर देता है। देखा, और मैं आपको बताता हूँ, यदि यह मेरा व्यवसाय होता, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं कहता, आप इसे करना बंद कर दें या यहाँ से चले जाएं। देखा, मैं एक सही प्रकार के स्थान को चलाना चाहूँगा, या तो बिल्कुल ही बंद कर दूंगा। लेकिन आप, यदि आपको इसे जीवन निर्वाह के लिए करना पड़ता है, तो मैं आपको उदास नहीं करना चाहता। भाई या बहन, मैं जानता हूँ कि इन बातों को कहना कठोर लगता है, लेकिन यह सही नहीं है, आप समझे, क्योंकि ऐसा दिखाई देता है जैसे एक प्रकार से, जैसे किसी ने आज सुबह कहा कि हमारी महिलाओं ने उनके कपड़े इतने छोटे पहने हुए हैं। हमारी बड़ी उम्र की महिलाएं, ये युवा महिलाओं के लिए एक बुरा उदाहरण है। मैं सोचता हूँ कि यह भी सही बात है, आप समझे, और मैं उसी बात को सोचता हूँ जब वे आपको वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ये सारा धूम्रपान होता है और चीजें होती जाती है और लोग आपकी गवाही को जानते हैं और ये सारे शापित और उनके चारों ओर इस तरह से छोटे बच्चों का जमघट लगाना और वे इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं और आप इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं, ये आपकी गवाही पर एक बुरी बात है। आपको वही करना है जो प्रभु आपकी अगुवाई करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको सही मार्ग पर अगुवाई करेगा। क्या कलीसिया के अंदर जाने के लिए पंक्ति में एस ए एन डी खड़ा होना केवल एक यादगार होने जा रही है। तो क्या घटित होगा यदि हम महासंकट में से होकर नहीं जाएंगे? क्या हम देखने उसी तरह कुछ कष्ट को देखेंगे यदि हमें नहीं देखना है? देखा, यह सवाल शायद यही है। मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे यह नहीं करना चाहिए, इन्हें वापस रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक स्थान होता है कि आप इस प्रश्न पर एक घंटे बने रह सकते हैं। देखा, और यह बस इसे गलत साबित करते हैं। मैं रुक जाऊंगा। देखो, लोग यह कहना चाह रहे हैं, यह सोचकर कि वो कलीसिया महासंकट में चली जाएगी। देखा, यह नहीं जाएगी, यह नहीं हो सकता। देखा, क्योंकि यह पहले ही छुड़ाई जा चुकी है। अब कलीसिया, वो जो नाम के विश्वासी हैं, जैसे लूत, वो महासंकट के समय में से होकर जाता है। देखा, और ऐसे बचाया जाएगा जैसे कि ये आग हो। नूह महासंकट के काल में से होकर गुजरा, इसके ऊपर ले जाया गया, हाम के साथ बाहर निकला, जिसने धरती को फिर से दूषित कर दिया। देखा, लूत बाहर निकला, उसकी अपनी पुत्रियां उसके साथ सोईं और उसकी अपनी पुत्रियों से बालक हुए। देखा, लेकिन अब्राहम ने शाही बीज को आगे लाया, प्रतिज्ञा के बीज को आगे लाया। हनोक महिमा में रैप्चर के लिए चला गया, बस चलते हुए और घर चला गया। वो कभी भी महासंकट के काल में से होकर नहीं गया। आप समझे, वहाँ आप हैं। देखा, ऐसा नहीं है, बाइबल नहीं कर सकती एक प्रतिछाया के द्वारा, और प्रतिछाया असफल नहीं हो सकते। देखा, यह भविष्यवाणी नहीं करती है कि दुल्हन अब कलीसिया महासंकट काल में से होकर जाएगी। अब लोग कहते हैं आरंभ के संतों के बारे में क्या है, यह तो समय काल का परिवर्तन था, यह तो सताव के नीचे था, जो कि यदि आप इस कलीसियाई युगों को सुनने के लिए यहाँ पर थे और यह देखने के लिए कि वे कैसे उस अंधकार में चले गए और उन्हें ऐसा करना था, तब यह दिखाता है कि उन्हें उस सतावट को कहाँ पर लेना था, क्योंकि कलीसिया युगों में से हर एक चीज ने दिखाना आरंभ किया कि वे और अंधकार में चले गए। इतना तक वे अंत में एक पूर्ण रूप से एक ऐसे स्थान पर चले गए कि उन्होंने उसके नाम को इनकार कर दिया और दूसरे नाम को ले लिया जिसमें वे जीते थे लेकिन मरे हुए थे, सर्दिस, और फिर इसमें बाहर आ गया थुआतीरा और सर्दिस, और उसके बाद बाहर आया, फिर यह फिलाडेल्फिया और इत्यादि में बाहर आना आरंभ होता है, और फिर दुल्हन के बुलाए जाने के समय पर आता है जिसे सारे दंड से बच निकलना था। यह इस सारे दंड और क्रोध से बचने के योग्य गिना गया जो धरती पर आने वाला है, जिससे कि आप इससे बच निकलने के योग्य समझे जाएं, ना कि इसमें से होकर जाने के लिए, इससे बच निकलने के लिए। देखा, क्या आप अब समझ रहे हैं हर एक जन? देखा, कलीसिया, गुनगुने, जो कुछ भी चुनी हुई दुल्हन के बाहर है, वो महासंकट के काल में से होकर जाएगी। वे पहले पुनरुत्थान में नहीं जी उठेंगे जब तक कि हजार वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। केवल पहले से नियुक्त हुए, पहले से ठहराए हुए चुनी हुई दुल्हन, जो परमेश्वर का अपना चुनाव है, ये कौन है भाई ब्रैनम? मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं बता सकता कि यह कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह वहाँ होने जा रहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा वे होंगे। देखा, वे ही हैं जो महासंकट से बचकर ऊपर जाएंगे, लेकिन उनमें से बाकी के शेष लोग महासंकट में से होकर जाएंगे, आगे जाएंगे, और हर एक चीज सहशताब्दी से पहले खत्म कर दी जाएगी। तब वे धर्मी जन सहशताब्दी के समय पर बाहर आकर और 1000 वर्ष जीवित रहेंगे, और 1000 वर्षों के बाद तब बड़ा सफेद सिंहासन का न्याय आता है, और फिर मरे हुए सही और गलत दोनों जी उठते हैं, और किताबें खोली जाती हैं, और जीवन की किताब खुली हुई होती है, और संत लोग, पत्नी और पति बैठकर संसार का न्याय करते हैं, और वहाँ ये कथन पूरा हो जाता है, और वो सारे राष्ट्रों का न्याय लोहे के राज दंड से करेगा। सारे राष्ट्र वहाँ उसके सामने खड़े होंगे, और वो लोहे के राज दंड से उनका न्याय करेगा। वह भेड़ को बकरियों से अलग करेगा और बकरियों से कहेगा, निकल जाओ, और भेड़ों आओ, तुम मेरे पिता के धन्य हो। अब उसके बाद वहाँ पृथ्वी के कोने कोने में संतों की एक सभा होगी, और शैतान अपने कैद खाने से बाहर आ जाता है और संतों के साथ फिर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। बिल्कुल ठीक वही जो उसने आरंभ से महिमा में किया, और तब परमेश्वर आकाश से आग और गंडक की वर्षा करता है और सारी पृथ्वी को मिटा दिया जाता है, जैसे ये तब जल जाती है और नष्ट हो जाती है और वहाँ अब और समुद्र नहीं होता है और ना ही अधिक पानी होता है और पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचता है। ज्वालामुखी छिड़काव को करेगा और फटेगा और फूंक डालेगा और सारी चीजें। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और अब वहाँ समुन्दर नहीं था। मुझ यहूना ने पवित्र नगर को परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जैसे एक दुल्हन अपने पति के लिए सजी हुई होती है, यह याद है। और इस दुल्हन में देखो परमेश्वर का भवन मनुष्यों के साथ है और परमेश्वर उनके साथ इस पिरामिड के आकार के नगर में वास करेगा जो 1500 वर्ग मील का है और नगर के ऊपर वहाँ एक उजाला होगा। आमीन। ओ उस नगर सियोन पर्वत पर एक परदेसी की नाई, फिर भी मैं इसे प्रेम करता हूँ। मैं आपसे उन युगों में मिलूंगा जब मैं पहाड़ी पर उस नगर में पहुँचता हूँ। सियोन पर्वत की चोटी पर मेमना बैठा होगा और नगर को उजाले की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मेमना उसका उजाला होता है और मेमने के ऊपर पिता होगा जो कि लोगोस है। परमेश्वर वो महान उजाला, वो अनंत उजियाला जो सियासन के ठीक ऊपर चमकेगा, और यीशु अपने पिता के सियासन पर नहीं होगा, वो अपने सियासन पर होगा और पिता पुत्र के ऊपर मंडराएगा, जो कि पिता और पुत्र एक होंगे। और जब वे अभी बोल ही रहे होते हैं, मैं उत्तर को दूंगा इससे पहले कि वे सोचें, मैं उनके लिए सोच रहा होता हूँ। यह सही है। और यीशु एक सिद्ध को सौंपेगा, सिद्ध युग को, सिद्ध जीवित परमेश्वर को सौंपेगा, जिसे उसने छुड़ा लिया है और पिता को दे देता है। क्या यह सही है? परमेश्वर पिता की ओर घूमेगा, जो कि आत्मा है, ना कि मनुष्य। आत्मा अच्छाई का सारा स्वभाव एक साथ इकट्ठा हुआ, यही परमेश्वर है। और अच्छाई में अब कोई भी चीज अच्छाई से दूषित हो गई है, वो दुष्ट है, यही शैतान का राज्य है। सारी अच्छाई परमेश्वर की है, सारी दुष्टता। और फिर परमेश्वर एक मनुष्य में भौतिक बन गया, जो कि यीशु मसीह कहलाता है, जो कि उसका पुत्र था। इस पुत्र ने अपना जीवन दिया जिससे कि वो दूसरे पुत्रों को ला सके, जिससे कि परमेश्वर वास्तविक बन सके, सब मिलाकर कार्य को करते हैं। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में, मैं तुम में और तुम मुझ में। ओ भाई, यह एक वास्तविक दिन होगा। आपको संदेश सुनने के लिए ब्रमिंगम से गाड़ी चलाकर नहीं जाना पड़ेगा, तब संदेश ठीक हमारे साथ होगा। क्या यह नहीं होगा? ओह, यह एक अद्भुत बात होगी, अद्भुत समय होगा। हम उस दिन के लिए देख रहे हैं। परमेश्वर इसके आने के लिए शीघ्र करे। वो महान नगर वहाँ बसा हुआ है, अब समझे? ऐसा नहीं, आप सोचते हैं 1500 मील ऊंचा, यही है जो बाइबल ने कहा। अब यह 1500 मील की दूरी पर सीधे इस तरह से नहीं होगा। देखा, हमारे पास एक और भौगोलिक माप है कि सारे किनारे समान होते हैं। यह एक पिरामिड है, देखा। और नगर लगभग 60 डिग्री के आसपास में आरंभ होगा, और यदि यह आरंभ होता है उसका 1500 मील, जरा सोचें कि ये कितना ऊंचा होगा, ठीक वहाँ जाने में कितना समय लगेगा। आप शायद ही जान पाएंगे कि आप पहाड़ी पर चल रहे हैं। 1500 मील ऊंचे 60 डिग्री पर आप बस लगभग इस प्रकार से होते हैं, देखा। और सारा शहर इस पहाड़ी पर है और यह उतना ही ऊंचा होता है जितना यह लंबा होता है, यह उतना ही लंबा होता है जितना यह चौड़ा होता है। ऊंचाई गहराई से चौड़ाई से यह बराबर होता है, सारी दीवारें बराबर होती हैं। एक पिरामिड में चार दीवारें होती हैं और ये चार दीवारें, अब नगर के चारों ओर की दीवारें 216 फुट लंबी होंगी, 144 हाथ की होंगी और उनमें से हर एक का एक पत्थर होता है। मित्रों, जरा इस नगर के विषय में सोचें। ओह प्रभु, हम यहाँ इस गर्म स्थान में बैठकर क्या करते हैं? हम इन चीजों का क्या करते हैं? हम इस तरह गाड़ी क्यों चलाते हैं? हम क्यों परिश्रम करते हैं? इसका हर एक इंच कीमत रखता है। ओह, मार्ग के परिश्रम कुछ भी नहीं दिखाई देंगे जब मैं मार्ग के अंत पर पहुंच जाता हूं। यह सही है। और ओह, वो क्या ही समय होगा। और वहाँ यीशु सिंहासन पर बैठा होगा और सिंहासन के नीचे से जीवन की नदी बहेगी। इन चार दीवारों से नीचे छोटे छोटे दरारों में बहती जाती है और छोटी छोटी डालियों में और एक नदी के रूप में ऊपर आती है और नीचे नगर में से होते हुए ये ठीक इस तरह से सड़कों पर से होकर जाएगी और हर एक ओर जीवन के वृक्ष लगे हुए होंगे जो कि फल लाएंगे या हर 30 दिन में अपने फलों को बदलते हैं। ओह क्या ही नगर है। और याद रखें परमेश्वर सृष्टिकर्ता जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की ठीक अभी उस नगर को तैयार कर रहा है। अब्राहम इसके लिए देख रहा था। उसने अपने घर को छोड़ दिया, उसने हर एक चीज को अलग कर दिया जो उसे प्रिय थी और उसके लिए देख रहा था। क्यों? वो एक भविष्यवक्ता था और एक भविष्यवक्ता होने के नाते वो आत्मा और आत्मा के भाग के साथ जुड़ा हुआ था और किसी चीज ने उसे भीतर ही भीतर बताया वहाँ एक नगर है और वो इसकी खोज करने लगा। कहा मैं एक यात्री हूँ, एक परदेशी हूँ, मैं एक ऐसे नगर के लिए देख रहा हूँ जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है। वो जानता था कि वो नगर कहीं तो था। ओह प्रभु, और मैं विश्वास करता हूँ कि ठीक उसी आधार पर जहाँ उसने इसके लिए देखा ठीक वहाँ फिलिस्तीन में यही है जहाँ यह ऊपर उठेगा क्योंकि यह सियोन पर्वत पर है, वहीं पर वो होगा। देखो जहाँ वह समुद्र में फैल जाएगा, समुद्र से समुद्र तक। उस 1500 मील के नगर के बारे में सोचें जो वहाँ प्रभु के पहाड़ों पर बसा हुआ है। ओह यह अद्भुत होगा। और सिंह और मेमना एक साथ बैठे होंगे, सिंह बैल के समान घास फूस खाएगा और भालू विनर्म होगा और भेड़िया शांत होगा। ये क्या ही समय होगा। कुछ भी हानि या नष्ट नहीं किया जाएगा, सब कुछ शांति और प्रेम में होगा। अब और बुढ़ापा नहीं होगा, वहाँ कोई और बीमारी नहीं होगी, अब कोई मरना नहीं होगा। मित्रों यह कोई सांता क्लॉस की कहानी नहीं है, कोई काल्पनिक चीज नहीं है, यह वचन में लिखा हुआ है और वचन कभी असफल नहीं हुआ है। और उसी प्रतिज्ञा के विषय में सोचें, न ही पहले बाइबल के दिनों में लेकिन इस दिन में जिस दिन वो परमेश्वर आज उसके वचन से बिंदु मात्र भी कभी विफल नहीं हुआ है। ओह मैं उस नगर को जाने वाला हूँ, मैं इसे पसंद करता हूँ। क्या आप नहीं करते? नहीं। अब भाई बहन यह 9:20 बता रहा है। मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ मित्र यहाँ पर कैंटेकी से हैं। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर देश के विभिन्न भागों से मेरे मित्र हैं। यदि आप सारी रात रुकना चाहते हैं तो मैं आपके कमरे का भुगतान करूंगा। मैंने आपको बताया था आपका रात का भोजन आपकी प्रतीक्षा में है और यदि आप रुकना चाहते हैं तो अपने होटल के लिए भुगतान करें और केवल एक चीज जो आपको करनी है उसे वहाँ पीछे देख लें और मैं निश्चय ही इसे करूंगा। मैं आपकी सहायता के लिए कुछ भी करूंगा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मेरा इन प्रश्नों के उत्तर देने का अर्थ वो नहीं होता है, हो सकता है कभी कभी इसके विपरीत हो। यदि आप इसका विश्वास नहीं करते हैं कि यह पूरी तरह से सही है तो मैं चाहता हूँ कि आप बस मुझसे वैसे ही प्रेम करें क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मैं आपसे उसी तरह से करता हूँ। मैं केवल इन प्रश्नों के उत्तर को देता हूँ जो मेरी सबसे अच्छी जानकारी में है। मैं उनमें से कुछ में गलत हो सकता हूँ मित्र, लेकिन यह जानबूझकर गलत नहीं होता है। यदि मेरे पास लगभग 6 या 8 प्रश्न होते हैं तो मैं बस उनके साथ बना रह सकता था और बस इसे ठीक आगे तक समझा सकता था, लेकिन मैं बजाय इसके कि उन सब में से होकर जाऊं, अब मेरे पास उनमें से कुछ विवाह और तलाक के विषय में है। मैंने बस सोचा था कि मैं उनमें से कुछ का ही उत्तर दूंगा। मैं यहाँ और अधिक नहीं देख पाता हूँ, मैं उन्हें उठाऊं, लेकिन मेरे पास यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं उन्हें आपके लिए उत्तर देना चाहता हूँ यदि मैं दे सकता हूँ। अब यदि आप यहाँ आसपास रह रहे हैं तो बुधवार को बिल्ली को फोन करें, मैं तब जान जाऊंगा कि मैं वापस आऊं या नहीं। मैं इस सप्ताह प्रार्थना करूंगा, लेकिन मेरे पास बहुत से निजी इंटरव्यू हैं। ओह इस विषय में इस तरह के ढेर लगे हैं और मेरे पास एरिजोना में लगभग बहुत से हैं कि इन दिनों में से एक दिन जब मैं कर सकूं। और ये लोग जो वास्तव में बीमार हैं उनमें से कुछ लोगों के पास समस्या है और वे बस नहीं जानते कि क्या करना है, पति और पत्नी की समस्याओं के साथ हैं। और इनमें से कुछ को यहाँ निजी इंटरव्यू में बदलना था क्योंकि मैं इसे अभी नहीं पढ़ सकता था। लोगों ने यहाँ उनके विवाह के मामले और इत्यादि के विषय में जो कहा और इस प्रकार की बातें, और मेरे साथ बिल्ली था कि तब मैं वापस जाकर और पता लगाऊं कि वे कौन हैं और उन्हें फोन करूं और उन्हें बताऊं कि हम उनके साथ बस इंटरव्यू के लिए समय रखेंगे ताकि मैं उनके बारे में बात कर सकूं। कुछ तो बहुत ही गंभीर है और यह ऐसे प्रश्न है जिनका उत्तर दिया जाना चाहिए। मैं यहाँ आपकी सहायता करने की कोशिश करने के लिए हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप मेरे बच्चे हो जिसे मैंने मसीह के लिए जन्म दिया है। मैं आप में से हर एक का दावा करता हूँ। मैं आज रात आपको दावा करता हूँ। मैं हर समय आपके लिए दावा करता हूँ। मैं हमेशा ही आपके लिए दावा करता हूँ। और यह मेरे भाई और बहन की नाई है। आप मेरे बच्चे हो। मैं सुसमाचार में आपका पिता हूँ, ना ही पिता जैसा कि यह एक याजक होता है। मैं सुसमाचार में आपका पिता हूँ, जैसा पौलुस ने वहाँ कहा, मैंने आपको मसीह के लिए जन्म दिया है और अब मैं आपकी मसीह से मंगनी करता हूँ, जो आपको मसीह के साथ एक पवित्र कुंवारी की नाई जोड़ेगा। मुझे निराश न करना, मुझे निराश न करना। आप एक पवित्र कुंवारी बने रहना। मैं इसे कैसे करूं भाई ब्रैनम? ठीक वचन के साथ बने रहें, शुद्ध और साफ जीवन जिएं, संसार की चीजों से कोई लेना देना नहीं रखें। यदि इन चीजों का प्रेम आपके हृदय में है तो कहें, ओ यीशु, कृपया इसे मुझसे दूर कर दें, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। अब मेरा मतलब यह नहीं है कि ऐसे ही कोई व्यक्ति हो जो कहने के लिए यह कह रहा हो। मेरा मतलब एक सच्चा विश्वासी होना है। यीशु मसीह पर विश्वास करें और हर दिन उसके लिए जिए, कोई बुराई न करें। अब बहुत सी बार मैं कैल्विनवादी विश्वास के लिए बोलता हूँ। अब यह न सोचें कि यह आपको कुछ भी करने के लिए ढीला छोड़ देता है, जो भी आप करना चाहें। एक दिन एक व्यक्ति, मैंने कहा, क्या आप कलीसिया गए थे? उसने कहा, मैं शिकार पर गया था। उस व्यक्ति की पत्नी मेरे पास आई और वो रविवार को कपड़े धोने वाले धोबी की दुकान से आ रही थी। और मैंने कहा, आप कलीसिया क्यों नहीं गई? उसने कहा, मैंने अपने कपड़े धुलाई को दिए थे। मैंने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, उसने कहा, मैं एक पुरानी किस्म की नियमवादी नहीं हूँ। मैंने कहा, लेकिन मैंने सोचा था कि आप एक मसीही हो, समझे? मैंने कहा, क्या आप जानती हैं कि आप किसी के मार्ग में ठोकर का कारण बन रही हैं? देखा, मैंने कहा, यह तो ठीक है। ओह, मैं इसका विश्वास करती हूँ। मुझे उन चीजों को नहीं करना चाहिए। मैं एक नियमवादी नहीं हूँ। तो देखो मेरे भाई बहन, यहाँ पर देखो, पौलुस ने कहा, यदि मांस खाने से मेरे भाई के मार्ग में ठोकर लगती है तो मैं और मांस नहीं खाऊंगा जब तक संसार बना हुआ है। और मैं सोचता हूँ यह बहुत अच्छा होगा। अब कहते हैं, भाई ब्रैनम, आप शिकार करते हैं, क्या आपने कभी रविवार को शिकार नहीं किया? मुझे आपको बताने दो। ना ही मैं इसके पीछे खुद की पीठ को नहीं थपथपा रहा हूँ, लेकिन मैं अब सबत को मानने वाला नहीं हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा हमारा सबत है। मैं ये विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि हमें उस पुनरुत्थान को एक यादगार के रूप में सम्मान करना चाहिए। यह एक यादगार है कि मैं, यदि आप किसी भी दिन को सम्मान करते हैं तो उस पुनरुत्थान का सम्मान करें। अब किसी भी निश्चित दिन को मानने पर कोई नियम नहीं है, क्योंकि आप सबत में प्रवेश करते हैं, उस शांति में जब आप उसमें प्रवेश करते हैं। मेरे पास यहाँ पर वो प्रश्न है कि शीघ्र ही उत्तर दूं। जो भी हो, यदि प्रभु ने चाहा तो इस विषय में कि सबत का दिन क्या है, मैं इसे समझाऊंगा, परमेश्वर ने चाहा तो। और अब ध्यान देना, इसे याद रखना। देखा, जब मैं एक छोटा लड़का था, ठीक यहाँ पर जहाँ पर ईचस उस रास्ते पर रहता था, मैं लगभग 14 वर्ष का था। मैं जीवन निर्वाह के लिए जानवर फंसाने का काम कर रहा था। केवल एक चीज जो मुझे अपने घर में रोजी रोटी लाने में सहायता करनी थी, वो था बिल्ली जैसा काला सफेद अमेरिकी जानवर छुछुंदर ऑपोसम को पकड़ना। मुझे फंसाना पसंद था और मुझे ये करना था। मैं स्कूल जाता तो मुझमें से एक बिल्ली जैसा काले सफेद जानवर की तरह बदबू आती और मेरे पास केवल एक जोड़ी कपड़े थे और यही था जिसे मैं पहन सकता था। मेरे पास बस इतना ही था। माँ उन्हें उतारती और उन्हें धोती, उन्हें वापस पहनता। और अब इसी तरह से मैं स्कूल गया, छोटा सा लड़का। लेकिन मैं एक रात वहाँ पर खड़ा हुआ था। मैंने कहा, मैंने वहाँ वेटन के आसपास जाल लगा रखे हैं, उसके ऊपर मैं हर सुबह लगभग 2 बजे लालटेन को लेकर इन फंदों को डालने के लिए निकल जाता, फिर स्कूल जाने के लिए समय पर वापस आ जाता। मैं एक खरगोश को पकड़ता तो मुझे इसके 15 सेंट मिलते। मैं उसमें से बारूद की गोलियों का एक बक्सा खरीदता और हो सकता है कि इससे 3 या 4 खरगोशों को मार डाले। हमारे पास बिस्कुट और खरगोश बनाने के लिए कुछ नहीं था। रात के खाने के लिए रस्सा बनाने के लिए मैं बाकी का बेच देता और शायद कुछ रोटी, कुछ आटा या थोड़ा आटा मिल जाता कि जिसके साथ रस्सा बनाए। मुझे नहीं पता कि आपको ऐसे ही जीना पड़ता था या नहीं। मैं नदी पर जाल को बिछाता, वहाँ जाकर और उन मछली को पकड़ता और उन्हें 10 सेंट प्रति पौंड के हिसाब से बेच देता। मेरे जाल को लगाता, मेरे पास कोई नाव नहीं थी। मैं लकड़ी के लट्ठे पर बैठकर उसे तैराकर बाहर आ जाता, नदी में जाता और यह अभी भी ठंडा है। मेरे चारे को बाल्टी पर डालकर और लकड़ी के लट्ठे पर रख देता और इस तरह से इस ओर चप्पू को चलाता और उस ओर चप्पू को चलाता। मेरा नंगा शरीर नदी में और इसे चलाता। मेरे पास इस तरफ एक रस्सी थी जिससे मेरी मछली को बांध देता। वे कैटफिश मेरे पैर में पंख फंसाते हुए इस तरह आगे बढ़ रही थी और मेरे चारे को उस पर डाल दिया। लेकिन देखो, बहुत सी बार रात को मैं उस नदी में 11 बजे गया हूँ और उस रेखा से चारे के हर टुकड़े को हिलाता। यदि मैं 6 दिनों में पर्याप्त मछली को नहीं पकड़ सकता तो मैं नहीं चाहता था कि 7वें दिन पर आऊँ। मैं वहाँ बारिश में खड़ा रहा हूँ। एक रात मैं देख सकता हूँ कि मैं अभी भी खड़ा हुआ हूँ वहाँ उसके सहारे। मैं एक पापी था लेकिन मैं खड़ा हुआ था, इस तरह से चौखट के सहारे खड़ा हुआ था दरवाजे पर। ओह, बारिश हो रही थी, लगभग 11 बजे थे। मैंने कहा मुझे आज रात देर हो जाएगी लेकिन मैं जा रहा हूँ और उनमें से हर एक जाल को निकालूंगा। मैं उसे सबत के दिन नहीं पकड़ूंगा। मैंने कहा मैं उन्हें जाल नहीं लगाऊंगा। परमेश्वर ने इसका सम्मान किया। मुझे वो समय याद है जब मैं हमेशा से चाहता था, मैं हमेशा ही अपने सारे जीवन में एक शिकारी बनना चाहता था। मेरे दादाजी शिकारी थे, आप जानते हैं। मेरी दादी आरक्षण स्थान से बाहर आई थी, उसे पेंशन मिलती थी। मैं बस बाहर जाना पसंद करता और मुझे याद है कि मैं हमेशा चाहता था, मैं बस अपने सारे जीवन में चाहता था। सोचा कि क्या मुझे कभी इतना पैसा मिल सकता है, इतना तक कि मेरे पास 30-30 की मेरी खुद की बंदूक हो सकती। यदि मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ, शिकार पकड़ने के फंदों को ले लेता हूँ, तो मैं पहाड़ों पर जाऊँगा। मैं बाकी के संसार को छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने सोचा हो सकता है इसी समय यदि मैं अपनी 22 बंदूक ले लूंगा और एक अच्छा निशानेबाज बनने के लिए अभ्यास करूंगा। कोई शिकारी कभी तो चाहेगा कि मैं उसके साथ जाऊं। यदि मैं बहुत अच्छा निशानेबाज हो जाता हूं तो वह मुझे अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ साथ ले जाएगा, तो मैं शिकार पर जाऊंगा। मैं अपनी दीवारों पर लटकता हुआ देखता और सबसे अच्छी बंदूकें जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं वहाँ लटकी होती हैं। इतना तक मैं शिकार पर जाने के लिए लोगों को बंदूक उधार में दे सकता हूँ। उसने मुझे पहाड़ों में जाकर और प्रचार करने दिया और दुनिया के कुछ सबसे अच्छे मार्गदर्शक मुफ्त में मुझे शिकार पर ले जाते। अद्भुत अनुग्रह कितना मधुर सुनाई पड़ता है। जब मैं यहाँ तक आज सुबह एक पुराने हिरन का शिकारी यहाँ कहीं तो था, 1.35 रेमिंगटन के साथ, मुझे वास्तव में बंदूक की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, कहा कि वह शिकार करने के लिए बहुत बूढ़ा होता जा रहा है, मैं तुम्हें अपनी बंदूक देना चाहता हूँ। मैंने जिसके बारे में सोचा था जब मैं एक छोटा लड़का था, किस तरह यदि मैंने हमेशा ही सोचा कि मेरे पास इस तरह की एक बंदूक होती, ओह प्रभु, तो यह क्या होता। और अब मैं बस सोचता हूँ, वहाँ मेरी दीवार पर लटकी हुई है बढ़िया बंदूकें, शिकार पर जाने के लिए स्थान। मुझे याद है कि मैं बाहर जाता था और लड़के आइसक्रीम कोन खरीदते थे और कभी कभी उनमें से कुछ के पास कुछ अतिरिक्त पैसा होता था और वे मेरे लिए एक खरीद लेते थे। ओह, मैं उनके लिए वापस नहीं खरीद पाता। मैंने सोचा यदि मैं, और वे कभी कभी इन्हें खरीदते थे जिसे हम मेडलार्क हैमबर्गर कहते हैं। नहीं जानता कि आप सभी को याद है या नहीं, लेकिन आप में से कुछ पुराने समय के लोग, आपको ये एक निकल के दाम पर मिलता है। इसके साथ बहुत सारे तले हुए प्याज मिलते हैं। ओह, मैं उन चीजों को पसंद करता हूँ। एक छोटा सा बच्चा, हमारे पास नहीं था, बस मक्के की रोटी और शीरा। आप जानते हैं कि यह कैसा होता है खाने के लिए। अब कोई तो मुझे उनमें से एक हैमबर्गर खरीद कर देता और लड़का, मैं अपनी उंगलियों को चाटता जहाँ से मैंने इसे पकड़ कर रखा था। ऐसा था, स्वाद बहुत अच्छा था। और मैंने सोचा, लड़के, उस व्यक्ति के लिए यदि मैं उसके लिए केवल एक हैमबर्गर खरीद कर दे सकता, और अब मैं एक कलीसिया को भोजन के लिए खरीद कर दे सकता हूँ। मुझे वे सारी बातें याद हैं। और यह कहाँ से आया? ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे याद है कि मैं यहाँ सड़क पर जा रहा था और मैं किसी से बात कर रहा था। मेरे पिताजी, आप सब इसे जानते हैं, उन्होंने शराब पी, उन्होंने विस्की बनाई और कोई भी मुझसे लेना देना नहीं रखता था। मैं सड़क पर जाता और लोगों से बात करने की कोशिश करता। मैं आज भी उन लोगों से मिलता हूँ, किसी से बात करने की कोशिश करता, यदि वहाँ पर बात करने के लिए कोई और नहीं होता है, वे खड़े होकर कहते हाँ देखा मैं एक ब्रैनम था, तो मुझे बहुत बुरा लगता और घूमकर और चले जाते। मैंने सोचा मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ, मैंने वो नहीं किया जो मेरे पिता ने किया था, मैंने अपने जीवन में कभी शराब नहीं पिया, मुझे ऐसा क्यों बर्दाश्त करना पड़ता है। और अधिक समय नहीं हुआ, मैं पत्नी को बता रहा था मुझे लगभग शहर से बाहर रहना होता है, परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छा किया है। मैंने वहाँ पर सोचा जहाँ उसने नातान को एक बार वहाँ बैठे हुए बताया था, नातान दाऊद ने कहा क्या यह मेरे लिए सही है कि मैं देवदार के घर में रहूँ और अपने परमेश्वर का संदूक एक तंबू के नीचे ढका हुआ हो। वह नातान उस भविष्यवक्ता ने कहा दाऊद जो कुछ तेरे हृदय में है कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। भविष्यवक्ता ने एक गलती की, ना ही इच्छा से उस रात प्रभु भविष्यवक्ता के पास आया, कहा जाकर मेरे दास दाऊद से कहो, मैंने उसे उस भेड़शाला से ले लिया, उन कुछ भेड़ों को वहाँ चरा रहा था, और मैं उसे महान मनुष्य के जैसे ही नाम को देता हूँ जो धरती पर है। कभी नहीं कहा कि उसने उसे सबसे बड़ा नाम दिया है, उसने बस उसे महान लोगों के समान नाम दिया है जो धरती पर थे। दाऊद, मैंने यह सारी चीजें तुम्हारे लिए की हैं, जहाँ कहीं भी तुम गए मैंने तुम्हारे शत्रुओं को काट दिया है, मैं तुम्हारे साथ साथ रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी असफल नहीं किया है और मैं तुम्हें असफल नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें नगर को बनाने नहीं दे सकता। मैंने इसके बारे में सोचा, अब एक ऐसे स्थान के बारे में जहाँ परमेश्वर ने मेरी सहायता की है और मुझे बड़े बड़े लोगों को जानने दिया है, मुझे संसार भर में जाने दिया और संसार भर के लोग उनके लिए प्रार्थना करने को मुझे बुलाते हैं और बीमार लोगों के लिए, और वे आपके साथ कुछ मिनटों के लिए रहना चाहते हैं, जहाँ कुछ ही वर्ष पहले वे मुड़कर देखते भी नहीं होंगे, वे मुझे सड़क पर देखकर अपना सिर घुमा देते थे, और अब व्यापारी लोग उन लोगों के द्वारा फल फूल रहे हैं जिन्हें मैं शहर में लाता हूँ और यहाँ पर होते हैं, उनके भोजन और उनके होटल के बिलों के जरिए से और इस तरह की चीजों के द्वारा होटलों में जाते हैं और सारे शहर भर में और इस तरह की चीजें। लोग जो लोगों ने मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं किया, किसी को भी मुझसे कोई काम नहीं था, और अब परमेश्वर की सहायता के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि मैं यीशु मसीह की दुल्हन को निर्देशित कर रहा हूँ। ओ अद्भुत अनुग्रह, कितना मधुर सुनाई पड़ता है। यह कहाँ से आया? मेरी शिक्षा से? मेरे पास कोई शिक्षा नहीं है। यह कहाँ से आया? मेरे व्यक्तित्व से? मेरे पास कुछ नहीं है। क्या यह मेरे धर्म शास्त्र के ज्ञान से आया है? मेरे पास कुछ नहीं है। यह किस से आया? परमेश्वर के अनुग्रह ने मुझे बचा लिया। यह अनुग्रह है जिसने मेरे हृदय को डरना सिखाया। यह अनुग्रह है जिससे मेरा भय दूर हो गया। कितना आनंदित किया वो अनुग्रह प्रकट हुआ जिस घड़ी मैंने पहली बार विश्वास किया। बहुत से खतरों, परिश्रम और फंदों में से होते हुए मैं पहले ही आ चुका हूँ। यह अनुग्रह है जिसने मुझे यहाँ तक सुरक्षित लाया। यह अनुग्रह मुझे घर ले जाएगा। और जब हम उस नगर में 10,000 वर्षों से रहते आ रहे हैं, यह सूर्य से भी अधिक उज्ज्वल है, हमारे पास उसकी स्तुति गाने के लिए कम समय नहीं होगा जब हमने पहली बार आरंभ किया था। ओह, मैं यीशु से कितना प्रेम करता हूँ। वह सुंदर नाम जिसने मुझे बचाया जब मैं एक पापी था, जिसने मुझे चंगा किया जब मैं बीमार था, जो मुझे उस नगर में एक घर की प्रतिज्ञा को देता है। मेरे पास उस चट्टान में एक घर है। अब और कुछ भी महत्व नहीं रखता है सिवाय परमेश्वर के सारे बच्चों को एक साथ लाने और कहने के लिए आओ चलें। वो घड़ी मध्य रात की आरंभ हो रही है या आपके सोचने से भी अधिक देर हो गई है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, एक सिद्ध दिन की समाप्ति, जब हम पहाड़ की चोटी पर खड़े होंगे और सूर्य को देखेंगे, जब लाल रंग की धारियां उस ओर के बड़े पश्चिमी पहाड़ों के ऊपर आती है, जब बड़ी आंख अपने आप से बंद हो जाती है, तो पक्षी घोंसले की ओर अपने राह को बनाना आरंभ करते हैं। यह रात आ रही है। हमने एक और बड़े आत्मिक दिन को देखा है जबकि पवित्र आत्मा इन प्रश्नों के उत्तर देने में हमारी सहायता कर रहा है। अब हम अपने घोंसले की ओर जा रहे हैं। प्रभु, हमारा ख्याल रखना। प्रभु, कोई भी चीज हम पर प्रहार न करने पाए। हमें रात के सर्पों और दुष्टों से बचाए रखें। होने पाए। परमेश्वर हर समय हमारे समीप रहे, हमारी रक्षा करते हुए और हमारी सहायता करते हुए। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता कि आप हरेक को आशीष देंगे जो सभा में रहे हैं, वे जो नहीं आ सके, वे सारे जो टेप को सुनते हैं, होने पाए प्रश्न बहुत कठोर ना हो। और यदि मैंने कोई गलती की है प्रभु, आप मेरे हृदय को जानते हैं, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, यदि वहाँ कुछ भी गलत है तो आप कभी नहीं, इसे कभी भी आगे नहीं जाने देंगे। होने पाए टेप रुक जाए, मैं किसी को भी धोखा ना देने पाऊं। प्रभु मुझे आपका सच्चा सेवक होने देना, क्योंकि यही मेरे पूरे हृदय की इच्छा है। चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, चाहे मैं रुके रहूं या चाहे मैं आगे बढ़ूं, चाहे मैं सोऊं या चाहे मैं जाग रहा हूं, जब वो आता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंतिम दिनों में वह इस धरती पर खड़ा होगा। और भले ही खाल के कीड़े इस शरीर को नष्ट कर दें, फिर भी मैं अपने देह में परमेश्वर को देखूंगा। वो भविष्यवक्ता अय्यूब था जब उसने प्रभु के आगमन को देखा। और प्रभु आज आपके सेवकों के रूप में हम आगे की ओर देखते हैं और आपके आगमन को देखते हैं, इसलिए ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता प्रभु, कब कैसे कहाँ। हम केवल आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, हम आपके हाथों में हैं। प्रभु हमें बनाए रखें जब तक सूर्य उदय न हो जाए, इसे प्रदान करें और तब हम सब सियोन की ओर बढ़ेंगे, जहां वो नगर है जहां पर मेमना वो उजाला है। प्रभु मेरे प्रिय छोटे बच्चों, जो मैंने आपको बाइबल के मेल बंद में से होते हुए उत्पन्न किया है, वे इस वचन के फल हैं। वे मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूं, और मैं जानता हूं कि आप हम सबसे प्रेम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमें अपने वचन के साथ इस तरह से गर्भवती करेंगे कि हम केवल उसे ही देख सकें। इसे प्रदान करें प्रभु, होने पाए हम उसके वचन से इतने भरे हुए हों कि आत्मा हमें कहीं भी किसी भी स्थान पर उपयोग कर सके, किसी भी वचन को जाहिर करने के लिए जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है। इसे हम सबके लिए प्रदान करें, यहाँ इस श्रोतागण के ऊपर, यहाँ ये मेरा भाई जैक्सन अब वापस जा रहा है, वहाँ बहुत दूर दक्षिण अफ्रीका के अंदर, उसके और उसकी पत्नी के साथ जाइए, उनके साथ होना प्रभु, उनकी यात्रा पर उनका मार्गदर्शन करें। यहाँ भाई लीवेल लिख रहे हैं, मेरे द्वारा कहे हर एक शब्द को लिख रहे हैं, किताब को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ओ परमेश्वर भाई वेल और बहन वेल की सहायता करें। यहाँ पर ये भाई अरकनसास से हैं और मार्टिन भाई लोग और ये सारे दूसरे भाई लोग, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनमें से हर एक के साथ होंगे। भाई नेविल के साथ होना, भाई कैप्स, भाई रुडेल, भाई जैक्सन, सभी के साथ। ओ परमेश्वर वहाँ बहुत से हैं, वे जॉर्जिया से, अलबामा से और राज्य भर में और दुनिया भर से आए हैं। हम इस गीत के बारे में सोचते हैं, ओ वे पूर्व और पश्चिम से आते हैं, वे दूर दूर देश से आते हैं हमारे राजा के साथ भोज करने के लिए, उसके अतिथि की नाई भोज करने। उसने उन्हें स्वयं में भागीदार होने के लिए आमंत्रित किया है। ये यात्री कितने धन्य हैं, उसके पवित्र चेहरे की ओर निहारते हुए, जो दिव्य प्रेम के साथ जगमगाता है, उसके अनुग्रह के धन्य भागीदार, उसके मुकुट में रत्नों की नाई चमकने के लिए। ओ परमेश्वर होने पाए हम उसके मुकुट में रत्नों के समान चमकें, जिससे कि दूसरे देख सकें और उसकी सेवा करने की चाहत रखें। इसे प्रदान करें प्रभु, मार्ग में उनकी रक्षा करें, हर एक को आशीष देना। और पिता आपके नियत समय पर मैं आपका दास हूँ, यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे अगले सप्ताह जारी रखूं या उन इंटरव्यू को दूं, मुझ पर प्रकट करें प्रभु, और मुझे अभी और बुधवार के बीच में बता दें, जिससे कि हम समझ सकें। इसे प्रदान करें पिता, सो लोग आ सके। और मैं इस आशीष के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी सहायता करेंगे और हमारे साथ फिर से यहां हमारी अगली सभा के समय पर भेंट करेंगे। भाई नेविल के साथ होना और ये लोग जो वहाँ दूर टेक्सास में वचन को ला रहे हैं और बाहर अरकनसास में और विभिन्न स्थानों में, बस उनके साथ होना पिता। भाई पेरी ग्रीन और वहाँ का सारा झुंड, और बस उन सभी के साथ होना प्रभु। वे आपके छोटे बच्चे हैं, संसार भर में हर कहीं वे आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारी सहायता करें पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जैसा कि हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। यीशु के नाम में हमें उपयोग करें, आमीन। मुझे वो गीत पसंद है, वे पूर्व और पश्चिम से आते हैं, कितने से जानते हैं मैं नहीं जानता, जैसा कि मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं गीत के एक पद को जानता हूँ, आप इसे ले सकती हैं बहन? मैं नहीं जानता कि वे इसे ले सकते हैं या नहीं।
Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our king, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Bless partakers of his grace as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet him up in the air.
क्या आप इसे पसंद करते हैं? आइए इसे फिर से कोशिश करें।
Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our king, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, bless partakers of his grace as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, or sorrow and deep despair, when our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. How many wants to meet him up there? Oh my.
कितने वहाँ पर उससे मिलना चाहते हैं? ओहो प्रभु, अब अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप तुरही की आवाज को सुनते हैं।
Our troubles will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air.
आप इसे पसंद करते हैं? पैट, एक अच्छे साहसी बने। यह आपके लिए इन सुबहों में से एक सुबह, एक दिन को आरंभ करने जा रहा है। मैंने नहीं देखा कि यह कहाँ गया, लेकिन ये अच्छा लग रहा था। आमीन। आपके पास एक लंबा लंबा समय होता है भाई, यह वापस आ जाएगा, और जैसे पानी पर रोटी, किसी दिन तुम्हारे लिए वापस आ जाएगी। यह सही है, तो ठीक है। ओह, आप उससे प्रेम करते हैं?
Around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day. Oh, why sorrow's fears away? Oh, let me from this day be holy. Don't you love that?
क्या आप इसे पसंद नहीं करते?
When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart.
बहन विल्सन, आपको लगभग 33 या 35 वर्ष पहले याद होगा, एक छोटे से घर की सभा में हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। मैं जानता हूँ कि आपको यह याद है। ओ, आइए अब हम उस तक पहुँचकर और किसी का हाथ पकड़ लेंगे। क्या आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं? छोटे बच्चों, एक दूसरे से प्रेम करो। आप उससे प्रेम करते हैं, क्या वो अद्भुत नहीं है? आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने आसपास जाकर एक दूसरे से कुछ तो कहें, कहें परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे बहन। वे आज रात नदी के उस पार हमारी बात को सुन रहे हैं। बहन विल्सन, मैं बूढ़े भाई सेवार्ड को फर्श पर चलते हुए अपने हाथों से ताली बजाते हुए देख सकता हूँ। मैंने अपने भाई को वहाँ पीछे उसके चेहरे पर दाढ़ी के साथ देखा है, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए। मैं भाई रियान के बारे में सोचता हूँ, किस तरह से वो वहाँ पुराने आराधनालय में इस तरह से अपनी लंबी दाढ़ी के साथ बैठा करते थे। वो आज रात महिमा के द्वार पर सुन रहे हैं, एक प्यारा बूढ़ा संत, क्या वो अद्भुत नहीं है?
Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go. Precious name. Jesus with you. What for? As a shield from every snare. What happens? When temptations round you gather, breathe that holy name in prayer. Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet.
Oh, how sweet.
ओ यीशु, उनकी सहायता करें। मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें चंगा करें प्रभु यीशु में। क्या यह आपका भी है? ये आपकी छोटी लड़की है, वो प्यारी है। इंटरव्यू के लिए बिल्ली ने कहा कि अब और बुधवार के बीच के समय पर इंटरव्यू के लिए उसके साथ मिलें, या बुधवार से लेकर शनिवार तक होने वाले इंटरव्यू के लिए। चाहे यदि हमारे पास बुधवार के बाद की सभाएं नहीं होती है, तो बिल्ली के साथ बात करें। आप लोग जिन्हें इंटरव्यू लेना है, आप में से कुछ वो नहीं जानते कि आपसे कैसे मिला जाए, इसलिए वे सब जो अब इंटरव्यू को लेना चाहते हैं, बिल्ली के साथ बात करें। आप उससे प्रेम करते हैं तो ठीक है। अब जब तक हम नहीं मिलते, परमेश्वर आपको आशीष दे। हम अपने सिरों को झुकाना चाहते हैं, और मैं अपने अच्छे निष्ठावान मित्र से कहने जा रहा हूँ जो अब समुन्द्र पार जाने वाले हैं, वहाँ दूर अफ्रीका में, जहाँ मैंने एक बार प्रभु के नाम में मिशनरी के काम को किया था। भाई सिडनी जैक्सन, वो और उनकी पत्नी, हम उन्हें इन अंतिम कुछ सभाओं में अपने साथ पाकर बहुत ही खुश हैं। परमेश्वर ने उन्हें किस तरह से आशीषित किया है। और मैं भाई सिडनी जैक्सन से कहूंगा कि क्या वे इस सभा को प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। भाई जैक्सन, यदि आप करें।